نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير بارہ قرآن 2021 آج ہم اس کے پارہ نمبر 29 میں ہیں تبارک الذی تبارک کی بات ہے ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے وقت میں ہماری فہم میں ہمارے فہم میں ہمارے عمل میں برکت عطا فرما اور اس پارے کو پڑھنے کے دوران ہی ہم حقیقت میں اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوں کہ اللہ نے اپنی نعمت دے دی اور ہم اس نعمت کو اب دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے بھی بن جائیں کل پارے کی تکمیل کا انتظار کیے بغیر اسی پارے پہ اپنے پیاروں کو بلا لیا ہوگا اپنے یقیناً اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہ آخری دو پارے کسی کو ہدایت کے سفر پر اس طرح جوڑ دیں کہ پھر وہ باقی بھی سننے پہ مائل ہو جائیں تو اس بارے میں ہدایت کے طالب کے لیے کیا پیغام ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کیونکہ جب انسان ہدایت کی طلب کے ساتھ قرآن سنتا ہے نا تو بڑا خوف آتا ہے شروع میں انذار 29 پارے میں بھی آپ کو اس کا کچھ رنگ دکھے گا لیکن گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہمارا دین بیلنس دین ہے آپ کو مجھے کوئی بھی چیز سننے کے دوران اگر بوجھل لگی مشکل لگی اور لگا کہ اٹس ویری فار فرام می آئی کینٹ آئی ول ناٹ ڈو دس اٹس ویری ہارڈ تو پھر آج کا پارہ سن لیجیے آج ہماری مرکزی آیت سورت نوح کی آیت نمبر 13 ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ سے وقار کی امید نہیں رکھتے اتنا خوبصورت لفظ ہے اور جملہ اور اس کی آپ دیکھیں تو مختلف طرح سے اس کے ترجمے کیے گئے مجھے اس میں یہ سمجھ آتا ہے دو تین رنگ سے کہ ایک تو یہ کہ آج تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں ساری عزت ملنی ہے تو اللہ کو چھوڑ کے ملنی ہے اور تمہاری زندگی کی خوشیاں صرف تبھی تک خوشیاں جب تک تم اللہ کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت نہیں دے گا پیار نہیں دے گا محبت نہیں دے گا کیا ہو گیا تمہیں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو غلط کرتے ہو تو پہلی بات تو اس پر یہ لکھ لیجئے کہ آپ نے میں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات پہ غور کرنا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ دین میں عزت ہے ہدایت سے دور کرنے والی چیزوں میں ایک بہت بڑی یہ سوچ ہوتی ہے کہ نہیں دین پہ چلے گئے تو ناکام دین پہ چلے گئے تو پتہ نہیں عزت ہی نہیں رہنی اور پتہ نہیں اللہ کی باتیں مان کر تو ہم دنیا والوں کو آنکھ نہیں دکھا سکیں گے اور دنیا والوں کو تو شکل نہیں دکھا سکتے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر اب اتنا کانفیڈنس آ رہا ہوگا اور نہیں آیا تو آگے جا کے آئے گا انشاءاللہ کہ جس کے بعد آپ محسوس کریں گے اس بات کو کہ میری عزت میرے دین میں اور اس کی گواہی آپ ان لوگوں سے لے لیجئے جو اللہ کی مرضی کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ پھر بھی پورے نہ چل پڑے اور ان کو یقین ہے کہ جتنی عزت اللہ کی بات ماننے میں ملتی ہے اتنی اس کی نافرمانی میں نہیں ملتی لیکن چونکہ پرسپشنز بدل چکے ہیں حالات دنیا کے بدل چکے ہیں تو لوگ پھر ایک دوسرے کے طرف رہتے ہیں اور وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید دین کی بات کرنے سے ہم پیچھے ہو جائیں گے دنیا کی طور پہ ناکام ہوں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں نا کہ میں اپنے مالک اپنے رب اور اس کی نظروں میں جچ جاؤں تو مجھے کسی اور کی پرواہ ہی نہیں ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا ایک گلہ ہے تمہیں کیا ہو گئے پیار کو بھی محسوس کیجئے اس میں تھوڑے سے غصے اور سختی کو بھی محسوس کیجئے گا کہ تمہارا رب تمہیں کیا دینا چاہتا ہے اور تم کس پہ کھو گئے ہو بچہ ہے نا ماں کے ساتھ اڑی کرتا ہے ضد کرتا ہے سٹبن ہو جاتا ہے تو ماں کہتی تمہیں کیا ہو گیا تمہیں میرا اعتبار نہیں میں تمہاری دشمن ہوں تو اپنے دل کو کہیے کہ اللہ 28 پارے پڑھنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ اگر عزت ملے گی تو تیرے دین پہ عمل کر کے ملے گی سر اٹھا کر جینے سے ملے گی اور انفرادی طور پہ مجھے اپنے خاندان میں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں عزت ملے گی تو تیرے ساتھ ہی تعلق بہتر کر کے ملے گی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے امید اور رجا کہتے ہیں اس عربی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث چینڈ پہ ہم پوری پڑھیں گے آج کی حدیث کے نام پہ اس کے دو جملے یا دو لفظ یاد کر لیجئے یعنی اس کا ایک سینٹینس الایمان بین الخوف والرجا اس کی پوری سنت آگے آ رہی ہے، اس لیے گھبرائیے نہیں. ایمان خوف اور امید کے بیچ کا نام ہے. خوف اور امید کے بیچ ایمان کیسے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ کہ امید ہی وہ راستہ ہے جس پہ ایک انسان اپنی ہدایت کا سفر شروع کرتا ہے. ایمان کے ہی راستے پہ چل کر، امید ہی کے راستے پہ چل کر انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں بھی طے کرتا ہے، اپنی اصلاح بھی کرتا ہے. اگر امید نہ ہو تو اس دنیا کا کام ہو ہی نہ پائے. دنیا میں کچھ لوگ بڑے ہی بے امیدے ہوتے ہیں، میں اس کو لکھتی ہوں نیگیٹو مائنڈڈ. اگر آپ پازیٹیو انسان ہیں، آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ پازیٹیو ہے، یعنی آپ مثبت طرز فکر رکھتے ہیں، آپ کا مثبت طرز سوچ ہے، تو آپ بہت پر امید شخص ہوں گے. کسی کو اگر مارنا ہے نا تو اس کی امیدیں ختم کر دیجیے، کیونکہ جب امید مر جاتی ہے تو پھر بندہ بھی مر جاتا ہے. آج بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، جس مریض کی ول پاور ختم ہو جاتی ہے وہ وقت سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. تو امید ہمارے دین کا ایک سیکنڈ ہاف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امید کی ڈوری کے ساتھ آپ کو مجھے باندھ کر یہ بتا دیا کہ تم اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا رکھو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہی وہ کیفیت ہے جو بندے کو رب تک پہنچنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. آپ دین اور ایمان پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس امیدیں نہ ہوں. آج آپ دیکھیے کہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف شہوت ہے، دنیا کے معاملات ہیں، شبہات ہیں، منکرات ہیں، تو امید کے دامن کو تھام لیجئے اور پھر آپ پھر اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے طلبگار دل کو پر امید کرتا ہے. تو آپ نے میں نے اپنی امیدیں نہیں توڑنی. الایمان بین الخوف والرجا کیا بتاتا ہے؟ کہ ایمان کی دو آنکھیں ہیں، ایک امید والی اور ایک خوف والی. جتنا زیادہ آپ امید کے لفظ کو اپنی آنکھوں میں بچھائیں گے نا، تو آپ کو سمجھ آنے لگے گا کہ میں بیلنس رہوں گی. آج دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمیں دین کے نام پر بھی دکھتا ہے، وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ صرف امیدیں دلاتے ہیں اور وہ جھوٹی ہوتی ہیں، کیونکہ امید اور آس کبھی رجا بول کر اس سے خوف مراد لیا جاتا ہے، اور رجا سے قلب انسانی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کرنا اور اس کے فضل و کرم سے فرحت اور راحت محسوس کرنا ہوتا ہے. یعنی آج امبیلنسڈ ہیں چیزیں. آج لوگ عموماً امید اور یاس دونوں کا فرق نہیں پاتے، اور کچھ لوگ گناہوں کے ساتھ بھی اللہ کی جنت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور کچھ نیکیاں کر کے بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ملنا، کچھ پلے ہی نہیں ہے. اللہ کے جو بھی نبی دنیا میں بھیجے، اور اس میں ہمارے اپنے پیارے نبی کو اگر آپ دیکھ لیجئے، تو آپ کی دو آپ کو حیثیتیں سورت الاحزاب میں بھی ملی اور پیچھے بھی آپ نے دیکھا تھا، اور آپ کیا تھے؟ بشیر و نذیرا. تو بشیر بشرا بشر سے ہے. یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک، گیو گلیڈ ٹائیڈنگز. لیکن کیا جھوٹی امیدوں میں جی کر گناہ کرتے رہے، غلط کام کرتے رہے؟ تو آج کے اس پورے پارے میں سے آپ کو انشاءاللہ جو بنیادی طور پہ چیز ملے گی وہ امید ملے گی. لیکن امید لفظ کے لیے عربی زبان میں تین لفظ آتے ہیں، ایک ہے عمل. تو ہم دیکھیں گے امید، تمنا اور ارمان. اردو میں اگر بول دوں نا تو امید، تمنا اور ارمان، یہ تین لفظ ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں. عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ آتے ہیں نا، وہ رجا اور امنا اور عمل. تینوں کا فرق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک میں آپ کو یہ فرق ملتا ہے. عمل کہتے جھوٹی آرزوؤں کو. میرے حساب سے یہ ان لوگوں کی آرزوئیں ہیں کہ جو گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، سب پتہ بھی ہے اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے ابھی تک، لیکن توبہ کا دروازہ کھولنا نہیں چاہتے اور وہ اسی میں جی رہے ہیں. تو جھوٹی تمناؤں کو عمل کہتے ہیں. ایسی آرزو اور امید جو بظاہر غیر متوقع ہو اور دیر سے وقوع پذیر ہونے والی ہو. جب لفظ عمل آتا ہے نا تو اس میں مدت اور انتظار کا تصور پایا جاتا ہے. قرآن میں پڑھ کر آئے ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، کہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بھی کیا ہے، بہت اچھی ہیں، اور امید لگانے کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں. پھر اسی طرح جب امنا کا لفظ آتا ہے، اسی سے امنیتن واحد اور جمع کا فرق ہے، تو یہ جھوٹی اور باطل آرزوؤں کے لیے آتا ہے. امانی جمع ہوتی ہے، आरजू करना उर्दू में कह लें, इसको अगर आप आरजू के लफ्ज में देख लीजिए, बातिल और झूठी उम्मीदें। और शैतान ने जो कहा था वो यही कहा था, वला उदिलन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, सूरत निसा की आयत 119 में ये आता है कि मैं इन इंसानों को गुमराह भी करूंगा और उम्मीदें भी दिलाता रहूंगा। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि अल ईमान बैनल खौफी वल अमल, ये नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि अल ईमान बैनल खौफी वल अमनिया, बल्कि क्या कहा, अल ईमान बैनल खौफी वर रिजा। तो रिजा क्या होती है? रिजा रजू किनारे को कहते हैं। अरजाई हाज के बारे में हम ये लफ्ज भी पढ़ेंगे, क़यामत के दिन फरिश्तों के और अल्लाह ताला के नज़ूल की बातों में आएगा। उम्मीद लगाना, और इसमें मुद्दत भी होती है और इंतजार भी होता है, लेकिन रिजा ऐसी उम्मीद को कहते हैं जिसके पूरा होने का जन्ने गालिब होता है, यानी यू आर वेरी मच होपफुल। आप कह लीजिए कि इसकी जिद या इसका अपोजिट यास है, नाउमीदी को कहते हैं ना उर्दू में भी बोलते हैं, और कुरान में ये लफ्ज भी आता है, वला तहिनु फिब्तिगाल कौमी इन तकूनु तालमून फइन्नहुम यालमून कमा तालमून वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून। कहा कि अगर तुम भी उम्मीदें रखते हो तो वो भी रखते हैं, तो क्या पता चला कि रिजा एक ऐसी उम्मीद है जो जरूर पूरी होगी। तो अल्लाह ताला ईमान के साथ इस लफ्ज को जुड़वाकर नबी की जुबान से आज आपको मुझे एक उम्मीद दिला रहे हैं कि अगर तुम हकीकत में महसूस करते हो ना कि कुरान पढ़ने के बाद अब तुम्हें अपनी जिंदगी में काफी कमी बेशियां दिख गई, तो डोंट वरी, तुम मुतमईन हो। अल्लाह के नबी ने एक शख्स को बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे पूछा था कि दिल की क्या कैफियत है, तो उसने यही बात कही, तो आपने उसको कहा था कि अंता मोमिन। तो क्या पता चला कि आज हम उम्मीदों वाली बातें करेंगे। हकीकत है कि उम्मीद के लिए आपको अगर समझना है तो किसान को जहन में ले लीजिए। काश्तकारी के इब्तदाई मरहले से लेकर इंतहाई मरहले तक, यानी कुफार से जुर्रा होने के बीच का जो वक्त होता है ना, उसको रिजा कहते हैं। किस उम्मीद पे किसान बीज डालता है? अपने हाथ से पैसों से खरीद कर पैसे डालकर फिर उम्मीदें लगाता है, और आप देखिए थोड़ी देर के लिए तो वो बीज सारे मिट्टी में दब जाते हैं ना। इमेजिनेशन में लाइए जरा इस एनालॉजी को, बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि कैसे किसान पहले अपने हाथ से बीज को मिट्टी में दबाता है, बल्कि मेहनत भी करता है, मिट्टी को नरम भी करता है, और उसमें भावड़े से लाता है, और फिर जब बीज खरीदे में कितने हजारों का नया दाना खरीदा या पिछले साल में से कितना जमा कर दिया कि अगले साल रखूंगा, और फिर उसको मिट्टी में दबा देता है। अकल तो नहीं मानती इस बात को। देखिए जिस तरह एक किसान की इस कैफियत को आज अगर अकल से पूछे तो अकल कहेगी जो बीज हाथ में वो खा लो, पता नहीं मिट्टी तुम्हें देगी कि नहीं देगी। लेकिन उम्मीदों से बंधा हुआ किसान और फार्मर वो कहता है कोई बात नहीं, आज एक लगा रहा हूं, कल 700 नहीं 7000 मिलेंगे। आप सूरह बकरा की आयतें याद कर लीजिए कि एक में से 700 दाना मिल जाता है। यही काम एक मोमिन का भी है। आप और मैं आज इस दुनिया में कुछ अपनी उम्मीदों के बीच, कुछ ख्वाहिशों के बीच, कुछ तमन्नाओं के बीच आखिरत की जमीन में दफन करेंगे, फिर आप देखेंगे कि उसके बाद आपको कल आखिरत में वो खेती मिलेगी तैयार शुदा, कि जिसको आप कह सकते हैं कि आज दुनिया में कर लो कल वहां कर लो। सूरत शुरा में भी आप पढ़ के आ रहे हैं हर सद दुनिया और हर सल आखिरा। तो किसान के मंजर को आज आप अपनी जहन में रख लीजिए। आज थोड़ी सी कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी और थोड़ा सा इंतजार है, बस इधर आंख बंद होनी है मेरी या आपकी, तो हमें अपनी जिंदगी की खेती वहां तैयार मिलेगी। किसी ने तो उस खेती में झाड़ झंकार उगाया होगा बेकार और लघवियात, और लघवियात की सूरत में सिर्फ जिंदगी जाया कर दी। कुछ की आखिरत में सिर्फ अंदराइन होगी, किसी ने सिर्फ करेले कड़वे उगाए होंगे, और कुछ की वो फसलें होंगी कि जिसको देख कर इंसान की आंखें ठंडी हो जाएंगी। अल्लाह के नबी की वो बात याद आ रही है कि जब इंसान मर जाता है तो इनकते अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब एक शख्स वत हो जाता है तो उसके अमाल मुनकते हो जाते हैं मगर तीन चीजें बाकी रहती हैं, और उसमें एक सदकतन जारी है, अपनी जिंदगी में ऑन गोइंग चैरिटी में कोई काम कर गया, और फिर वलदन सालेहुन नेक औलाद छोड़ गया जो उसके बाद भी अच्छे काम करती है और उसकी दुआएं करती है, और इसी तरह से फिर कोई ऐसा काम जिससे इंसानों को फायदा हो गया کوئی خیر کثیر کا کام تو اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, اور اس میں آپ نے میں نے جو آج اس دنیا میں کرنا ہے, جو تیسرا بڑا کام اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, علم ينتفع بعده, علم کی کوئی بات, علم علم علم. تو علم کی بنیاد پہ جو کھیتیاں لگیں گی اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں لے کر دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کیسے ان ساری چیزوں کے لیے تیار کرتے ہیں. تو آج کے بعد آپ نے اپنا نام ایک کسان رکھ لینا, میں کسان بنوں گی اور میں انشاءاللہ اس چار دن کی دنیا میں کسان کی طرح محنت بھی کروں گی. صبح جلدی اٹھتا ہے کسان, پھر آپ دیکھیں اس کی نظریں ہمیشہ آسمان پہ لگی رہتی ہیں, کبھی بارش ہونے کے انتظار میں اور کبھی بارش نہ ہونے کے انتظار میں. اور اسی طرح سے جب کھڑی فصل آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کسان کس طرح اللہ پہ نظریں ڈالتا ہے کہ اللہ بارش نہ ہو. اسی طرح ایمان والا ساری زندگی ایمان اور خوف, امید اور خوف کے بیچ میں رہتا ہے, نیکیاں بھی کرتا ہے پھر پریشان ہے, کبھی نیکیاں نہیں بھی ہوتی پھر پریشان ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. تو آپ کو مجھے ایک کسان بننا ہے انشاءاللہ تعالی. کاشتکاری کے مراحل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے میں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے. اب سوال یہ کہ امیدوں کے پورے ہونے کے عوامل اور اسباب کیا. آپ میں چاہتے ہیں کہ میری دنیا ضائع نہ ہو, چند جملے لکھ لیجئے پہلے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ضائع نہ ہو. تو نمبر ایک, پہلے یقین رکھیے کہ آپ میں اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل کی حیثیت کاشتکاری والی زمین کی ہے. آپ نے میں نے اپنے اس دل کے اندر ایمان کے پودے لگانے ہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ, اور پھر دیکھ بھال بھی کرنی ہے. الا من جا بالحسنا, یہ نہیں کہ نیکیاں کر کے چھوڑ دی, اب رمضان کی نیکیاں عید کی پارٹیوں میں اور عید کے کنسرٹس میں ضائع نہیں کر دینی, پھر دیکھ بھال کے ساتھ اس کو سینچنا بھی ہے, پھر پانی دینا پڑتا ہے نا کھیتی کو. تو آپ نے میں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد, آپ اور میں کیا دیکھیں گے اس کے اندر کہ پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مستقل پانی کا انتظام رکھو. تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں گے, آپ کا دل جو دھلا ہے صاف ہوا ہے وقت پہ ساتھ اس پہ مٹی بھی آئے گی, سب کچھ ہوگا. اور پھر جب ہلکے ہلکے پودے آپ کو اپنی زندگی میں دکھے نا, آپ کوئی نیا عمل کر رہے ہیں جو پچھلے اس رمضان سے پہلے نہیں کرتے تھے, تو اپنے کندھے تھپ تھپائیں. کسان کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹی سی کومپل اگتا دیکھتا ہے, پھر گڈائی کرتا ہے, پھر خود رو گھاس کو نکالتا ہے. تو آپ سے میں نے اپنے تزکیہ کے عمل کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے تاکہ آپ کی میری زندگی اب ضائع نہ ہو. پچھلی سے چلی گی جانے دیجیے اس کی فائن. پھر مومن کا حال کہتا ہے کہ اپنے دل سے ہر طرح کے شبہات اور شہوات کو نکالتا رہتا ہے. یہ جڑی بوٹیاں ہیں آپ کے میرے دل کی, کبھی دین پہ یا دین والے پہ ذرا سا غصہ آئے یا شبہ آئے یا شہوت آئے تو اعوذ باللہ پڑھ دیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ تو پھر بھی چلو اتنے کاموں میں کوئی ایک انہوں نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہوگی, لیکن اللہ مجھے بھی توفیق دے. اور پھر عبودیت اور بندگی کے پانی سے سینچتے رہیے, کل آپ کی کھڑی فصل ایسی خوبصورت ہوگی جس کو آپ پہچان نہیں پائیں گے. پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ کسان جو ہوتا ہے نا وہ بنجر زمین میں کچھ ڈال دے تو ضائع ہو جاتا ہے, لیکن جب دل کے اندر خباثت ہوتی ہے, نفاق ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے, تو ایک بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے. پھر اس میں ڈالے ہوئے نیکیوں کے بیج اور فلاح و بہبود کے کام اور حقوق العباد کے نام پر جو کام ہوتے ہیں نا وہ فائدہ نہیں دیتے. تو بالکل ایک بندہ امید اور خوف کے بیچ میں رہتے ہوئے اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں. آپ کو پر امید رہنا چاہیے, یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا, آپ نے 28 بارے سن کے آج 29 بھی کھول لیا, باوجود کہ آپ کو لمبا لگا, باوجود کہ آپ کو مشکل لگا, لیکن آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. آپ کو اور میں خاص طور پہ یہاں پاکستان انڈیا کے جو میرے ساتھی ہیں ان کو سلام دوں گی کہ آپ سب اپنی افطاری کے وقت کے قریب اس دورے قرآن کو سنتے ہیں نا, کیونکہ ٹائمنگ کا ڈفرینس تو رہے گا. میں تو یہاں کہوں گی کہ اگر آپ کا گھر میں کوئی پرابلم ہو تو آپ آخری حصہ نہ سنا کرے لائف, اس کو بعد میں سب کھلا پلا کے آرام سے رات کو سونے سے پہلے سن لیجیے تاکہ آپ بھی رہیں مطمئن اور گھر والے بھی پریشان نہ ہو. لیکن آپ جتنی قربانیاں دے رہے ہیں نا یہ ضائع نہیں جائیں گی. ساری زندگی آپ نے میں نے جس راستے پہ گزار دی, اب تو بالکل ہماری زندگیاں اس لیول پہ پہنچنے والی ہیں کہ ہم اس کی فصل کاٹنے والے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ دو قدم پیچھے منزل رہے اور ہم چھوڑ دیں اور ہم پیچھے ہو جائیں. اعوذ باللہ پڑھ کر ہم ان چیزوں کو لے چلیں گے. جب زندگی سے بیکار قسم کی چیزیں نکلتی ہیں نا تو قرآن کا اثر جلدی سے جلدی ہونے لگتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ آپ نے میں نے جو اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ کیسی ہیں اور کس طریقے سے ہیں. سوری तो पहली बात तो यह है कि बंदे के अपने ऊपर अल्लाह ताला के फजलो करम की याद दहानी आती है। आप जब भी कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक जोड़ते हैं ना, तो आप पुरउम्मीद हो जाते हैं, तो आपको अल्लाह ताला की वो नेमतें याद आती हैं जो आज तक बिन मांगे मिल गई। आपने कुछ मांगा भी नहीं था, अल्लाह ने आपको इतना कुछ दे दिया, अब तो आप मांगने लगे हैं ना। तो चार चीजों में से पहली चीज क्या है कि बंदा जब ये बात सोच लेता है ना कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें पहले भी तो दी हैं, तो नाउमीदी खत्म होती है। दूसरे लफ्जों में कह ले कि नाउमीदियों से निकलने के लिए क्या करूं, अल्लाह की नेमतों को महसूस करूं कि अल्लाह ताला ने मुझे पहले भी दिया, अब भी देगा। फिर दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने जो अजर व सवाब की याद दहानी दी है ना, तो ये भी उम्मीद दिलाती है। आज अगर कोई काम मुश्किल लगे ना, तो सवाब की उम्मीद पे उसको करने लग जाइए कि अल्लाह मैं तुझसे उम्मीद रखती हूँ, तू मुझे इस काम पे अजर देगा। यानी जिंदगी में डिप्रेशन की कोई जगह नहीं है। वो लोग दुश्मन है आपके मेरे जो आपको नाउमीद करते हैं, जाना ही आग में, जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होना, ऐसे ही है बस, झूठी बातें हैं। नौज बिला लोग तो मुंह खोल के कहते हैं कोई जन्नत नहीं है, कोई आखरत नहीं है, दीवाने का ख्वाब है। और वो बाबर बैश कोश के जहां दोबारा नीस, वो बातें याद रखिए। तो नहीं, आप अल्लाह के अजर की उम्मीदें रखेंगे, आपकी नाउमीदियां उम्मीद में बदलेंगी। फिर अल्लाह ताला ने आपके ऊपर जो नेमतों की और नवाजशों की बारिश की हुई है ना, इसको आम तौर पर देखे, मसल जुबान, दिल, कान, हाथ, औलाद, बच्चे, यश के सामान सर से पौन तक कापर में इसमें ढके हुए हैं। तो जिस रब ने मुझे इतना दे दिया, क्या मुझे वो आगे नहीं देगा? और इसी तरह से फिर आप अल्लाह ताला की वुसअत रहमत को याद रखें। कितनी वसी रहमत है उसकी, वो रहमान है, वो रहीम है, वो गनी है, वो करीम है। आप अल्लाह ताला के नामों पर गौर करेंगे ना, तो आपका दिल पुरउम्मीद हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने बंदे को पुरउम्मीद रखा है। और आपको पता है कि जब किसी के अंदर उम्मीद होती है तो उसकी अलामत क्या है? फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, वो दुखी नहीं रहता। कुछ लोग दुनिया में इतने कड़वे, कसैले, जले, कुट्टे, हर वक्त माथे पे तेवरी, सर पे दुपट्टा भी बांध लिया, मेरी तो किस्मत खोटी, मैं तो ऐसी, वल्लाह ही ऐसे लोगों से दूर हो जाए। कुछ दिन के बाद आप भी उसका शिकार हो गए, क्योंकि ये पेंडेमिक है, ऐसी चीजें बड़ी जल्दी आती है। अब किसी ना शुक्रे बंदे के पास और ना उम्मीद बंदे का थोड़ी देर बैठकर उठे, आपको अपनी जिंदगी बुरी लगने लग जाएगी। तो अल्लाह से अफो दरगुजर की उम्मीदें रखिये। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह से उम्मीदें रखेंगे तो मिलेगा क्या? तो इसके बहुत सारे फवायद हैं। यानी आज आपने खुद भी पुरउम्मीद होने और दूसरों को भी उम्मीदें दिलानी है। सबसे पहली बात तो जो आपको अल्लाह ताला से उम्मीदें लगाकर मिलने वाली है, वो क्या है कि फिर आपकी इबादत में दिल लगने लगेगा, पाबंदी के साथ करेंगे। क्योंकि इंसान है ना, अपनी कोशिशों का बदला देखता है ना, तो उसको खुशी होती है। इबादत में दिल ही तब लगता है जब उसके बाद कुछ मिलने की उम्मीद होती है। ये ऐसे ही कि जैसे काम से पे मिलने की उम्मीद है, तो काम करने वाला मेहनत से काम करता है। किसी वर्कर को अगर हल्का सा शक पड़ जाए ना कि मुझे पे नहीं मिलनी, तो उसका दिल ही नहीं लगता। फिर इसी तरह से दूसरी बात है कि इबादत में लज्जत महसूस होना भी उम्मीद और रजा के फवायद का इजहार करता है। आपको अपनी नमाज में मजा आने लगे, जितना ज्यादा आप उम्मीदें लगाते जाएंगे अल्लाह से, आपकी नमाज अच्छी होगी, आपको रोजे में मजा आएगा। और आप देखेंगे कि इसके बाद आप महसूस करेंगे, इब्ने कय्यम ने बड़ी प्यारी इसकी मिसाल दी है जो इंशाल्लाह बाद में कभी बताऊंगी। वो कहते हैं ये एक कायद है जो बंदे को तेज रफ्तारी से रास्ते तय करने की रग़बत दिलाता है। यानी बंदा नमाज में ऐसे गुनगुनाता है जैसे सवारी पे सवार शख्स रास्ते में अपने जानवर को तेज चलाने के लिए कभी हदी खाता है, कभी कुछ करता है, तो आपकी इबादत खूबसूरत होगी। फिर इसी तरह से तीसरी चीज कहे कि अल्लाह के लिए अबूदियत का इजहार भी रिजा का मजहर है, कि आपको अल्लाह ताला के लिए झुकने के लिए अपने आप को अल्लाह के करीब होने में मजा आने लगा है। कोई तकलीफ आई, कोई हाजत है, कोई फाका है, उस वक्त आपकी नजरें अल्लाह पे चली गईं। मान लीजिए कि आप एक पुरउम्मीद इंसान है, जितना ज्यादा अल्लाह पे नजरें लगती जाती हैं, ये इस बात का इजहार है कि अल्लाह ने आपको पुरउम्मीद कर दिया है। मायूसी की तो इस दुनिया में जगह ही नहीं है। सब मायूस लोगों को बता दो कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, दुनिया की भी उम्मीदें अल्लाह ही पूरी करेगा, आखिरत की उम्मीदें भी अल्लाह ताला ही आपकी मेरी पूरी करेगा। और इसी तरह से आप देखते हैं कि जब ये कैफियत इंसान की जिंदगी में आती है, तो खुद सुपुर्दगी होती है। फिर आप कहते हैं मेरे सारे मामले मेरे अल्लाह के हवाले हैं। और उसके बाद फिर आप दुआ जैसी अहम तरीन इबादत के लायक हो जाते हैं। दुआ मांगना उम्मीद है कि आज मैंने हाथ उठाए हैं, मेरा मालिक मुझे खाली नहीं लौटाएगा। फिर इसके बाद आप अल्लाह के गजब से निजात मांगेंगे, यानी जब उम्मीद हो जाती है ना, आप बड़े से बड़ा गलत काम कर चुके हैं, कोई बात नहीं, मेरा रब तो है ना, मुझ पे गुस्सा नहीं करेगा, मेरे से वो नाराज नहीं होगा, और आप वाकई उसका कुर पाएंगे। इवन गुना करने के बाद भी एक उम्मीद लग जाएगी कि अगर मैं अभी भी तौबा कर लूंगा या मैं तौबा कर लूंगी तो अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमा देगा, और इसी तरह से फिर अल्लाह की मार्फत मिलती है। आहिस्ता आहिस्ता आप अल्लाह ताला का मिजाज समझने लगते हैं, और वो कैसे, अस्माओ सिफात के जरिए। जितना आप अल्लाह के नामों पे गौर व फिक्र करते जाते हैं, आप अल्लाह से पुरउम्मीद होते हैं। जो लोग शाम में हमारे साथ अल्लाह अस्माउल हुस्ना सुन रहे हैं, मेज़ पे अल्लाह अस्माउल हुस्ना, तो वो खुद गवाही देते हैं कि हमारी जिंदगी बदल गई। कैसे इन दिनों ने जो शॉर्ट कोर्स की सूरत में हमने किया और अभी स्टिल कर रहे हैं, कैसे अल्लाह ताला ने इसमें हमें पुरउम्मीद कर दिया। और एक और फायदा लिखिए कि अपने मकसूद और मतलूब तक रसाई पालेंगे आप। जी, जब हुस्ने जन का रिश्ता अल्लाह ताला के साथ आपका उस्तवार हो जाता है तो आपको आस लग जाती है, आप तवक्कुल करने लगते हैं, आप कहते हैं मेरा रब मुझे मायूस नहीं करेगा, हालात जो भी हैं, लोग जो भी कहते हैं, जो भी है, क्वारंटाइन है या कोरोना वायरस है या मुश्किलात है, लेकिन मेरे दिन जरूर फिरेंगे, कोई बात नहीं, देखना मेरा कारोबार चलेगा। इसी तरह कोई बीमार हो जाता है तो वो कहते नहीं, देखना मुझे सेहत मिल जाएगी, और देखना ये होगा वो होगा, और इस तरह से जिंदगी में निखार आता है और चेहरा खिला रहता है। लिखिए, आज के बाद आपने अपने चेहरे पे शिकने नहीं लानी, आपने चेहरे को स्माइल देना है, खुश रहना है, आपने अपना टेस्ट अच्छा करना है, काम करना है। अभी एंड पे बताती हूँ कि झूठी उम्मीदों से बचना है। और एक और फायदा आपको होगा, आपको दिन ब दिन अल्लाह से मोहब्बत महसूस होगी। वो जो अल्लाह से भी लोगों ने बदगुमान कर दिया ना, अल्लाह मारेगा। बच्चे को माँ कहती है ना ना करना, अल्लाह मारेगा। भाई अल्लाह उस बच्चे को क्यों मारेगा? तीन लोगों में से एक है वो बच्चा जिससे कलम उठाए में है, अच्छे बुरे उसके तो नहीं लिखे जा रहे। तो बचपन से हमें नेगेटिव तरीके से अल्लाह ताला का तारुफ कराया जाता है ना, उस बेला कि अल्लाह ताला तो बड़े ही गुस्से वाले होते हैं। और इसी तरह एक और चीज याद रखिएगा कि शुक्र आ जाएगा जिंदगी में, आप उम्मीद वाले बन जाइए, आप पर उम्मीद हो। हम कहते हैं ना, हम उम्मीद से हैं, मोमिन हमेशा उम्मीद से होता है, फिर आपकी उम्मीदें बर लाती हैं, फिर आपके दिल में एक ऐसा अबूदियत का जज्बा आता है, आप सजदों में जाते हैं, आप कहते नहीं है मेरे मालिक, अब मैं भी अपनी जिंदगी को जाया नहीं करूंगी, और थोड़ी सी नेमतों में भी आप ज्यादा चारा देने वाली गाय की तरह दूध देंगे घास खाकर। हम बड़ी बड़ी नेमतों पर रोने धोने वाले हो जाते हैं, और फिर इसका एक और जो फायदा आपको होने वाला है ना, फिर आपकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहेगी, हर वक्त अल्लाह का नाम जुबान पे, सुबहान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाह अकबर, कभी अल्लाह ने दिया। और इस तरीके से फिर आप देखेंगे कि आप अल्लाह पे नजरें रखेंगे, फिर जिंदगी का कोई मामला हो, जॉब चाहिए मिल जाएगी ना, अल्लाह देगा ना, बीवी चाहिए अच्छी बीवी मिल जाएगी, शादी होगी बच्चा चाहिए है ना, मेरा रब मुझे देगा, बच्चा हो गया हाय अब ये बिगड़ जाएगा। आज लोग कहते हैं हाय सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, खराब है, नहीं नहीं अब और बच्चे नहीं पैदा करने, हम इस दौर में बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते, गलत बात है। देखिए, फौज ही नहीं तैयार करेंगे तो कल अगले फितनों से निपटने वाली वो अच्छी फौज क्या होगी? खूब बच्चे पैदा कीजिए और उनकी खूब अच्छी तरबियत कीजिए, और अल्लाह ताला उनको अता फरमाए जिनको नहीं दिया, और फिर उनको उनकी अच्छी तरबियत की तौफीक दे। तो खुलासा क्या निकला इतनी बात का, मोमिन अपनी जिंदगी के शब और रोज उम्मीद में गुजारता है। जी, पूर उम्मीद होता है, खुश रहता है, एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है मोमिन के चेहरे पे, एक सकीनत होती है, दिल में भी खुशी, बाहर भी खुशी, अंदर भी खुशी। और इस तरीके से एक इंसान अपने आप को अल्लाह की नजरों में जमा लेता है कि देखना मेरे साथ अच्छा ही होगा, फिर आप दुनिया में भी अच्छे होंगे और आखिरत के नाते से भी अच्छा ही सोचेंगे। ये भी नहीं कि सारी उम्मीदें काट दो, कुछ लोग हैं यकीन करें कि वो रिश्तों को काट लेते हैं, उनके रिश्ते कभी नहीं जुड़ते, लिख ले, ना उम्मीद शख्स कभी लोगों के साथ खुश नहीं रहेगा और उसके साथ भी लोग खुश नहीं होंगे, लोग उसके घर जाना पसंद नहीं करेंगे, वो बुलाएगा भी तो कहेंगे नहीं टाइम ही नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि आप परेशान हैं, आपको उससे मिलकर ना उम्मीदी होती, कोई कहता है तुम्हें क्या हो गया, और कुछ लोग है ना बात ही कड़वी करेंगे, मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो, रंग काला हो गया, आज क्या लगा दिए मुंह को, आज ये कपड़े तो नहीं तुम्हें सजे, छोड़ दे ऐसे लोगों को, मत मिले उनको, वो आपका मोरल डाउन करेंगे, तुमने नहीं बदलना, तुम नहीं सुधरोगी, ये जुमले बोल। और यकीन करे रिश्तेदार ये जुमले बोलते हैं जो बचपन से आपकी बहती नाक को अभी तक भूले ही नहीं है, जिनको बचपन का आपका कोई वाकया याद होता है ना, वो वक्त के साथ साथ आपकी, आप जितने मर्जी अल्लाह के हुक्म से आगे अच्छे बन चुके हो या इज्जत या आपको शोहरत मिल जाए, वो आपकी कोई बैड बात करेंगे, ये भी एक जेलसी होती है। तो इन सारी चीजों से बचते हुए एक इंसान हमेशा खुशी का इजहार करे, मेरा रब बड़ा प्यारा है और मैं उसके साथ अच्छी उम्मीदें रखती हूँ। फिर उसके बाद एक और सवाल है कि गुनाहों के बावजूद तौबा करना और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाना, ये क्या है? बेहतरीन बात है। मेरी जिंदगी में गुनाह थे, हजरत मूसा याद कीजिए, हाँ हाँ मेरे से हुआ था कत्ल, जब मैं ना समझता, मैं जाहिलों में से था, मुराद ये कि अनजाने में कत्ल हो गया, कत्ल खता हुआ। तो शर्माए नहीं, फिरौन के इस ताने के ऊपर उन्होंने अपने आप को कोसा नहीं कि हाय हाय मैंने दीन का काम नहीं करना, मैं तो इतने बुरे काम करती थी, मेरी दोस्तों को सब पता है, मैं तो क्या क्या महफिले से जाती थी, मैं तो गुनाहों के प्रोग्राम अरेंज करती थी, अब मैं नेकियों के करूं, मैं अपने घर में दर्श रखूं, तौबा तौबा लोग कहेंगे इनको क्या हो गया, छोड़ दीजिए। यस, तौबा के बाद उम्मीदें लगाइए अल्लाह की रहमत की, इसको पॉजिटिव उम्मीद कहते हैं। यानी अगर आपने अपनी जिंदगी में गुनाहों में कुछ वक्त गुजार दिया है तो डोंट वरी, अल्लाह सुबहान तआला ने आपके लिए बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें रखी हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। वो जो हमारे यहां मारूफ है ना, 900 चूहे खा के फुलां फुलां, इतना दीन का मजाक है। एक तो हज का मजाक, क्या बिल्लियां हज करती हैं, और 900 चूहे खाकर बिल्ली के वे बुरा होने का मजाक, ऐसा ना कीजिए। यस, किसी लम्हे पलट के आइए, तौबा कर लेंगे गुनाहों के बाद, तौबा के बाद रहमत की उम्मीद बहुत प्यारी है। और यही आप पढ़ कर आए हैं ना सूरत ज़ुमर में, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। और ये हिम्मत पता कौन तोड़ते हैं, जब भी खुद गुनाह नहीं छोड़ना चाहते, वो कहते हैं नहीं नहीं तुम बदल गए फिर मुझे भी बदलना पड़ेगा, नहीं नहीं आप छोड़ देंगे फिर ये होगा, हाय मैंने ये छोड़ दिया फिर क्या होगा। बार दफा तो इंसान का रिस्क लगा होता है कुछ कामों के साथ, अब उससे तौबा करनी तो और भी मुहाल होती है। लोग कहते नहीं नहीं पहले कुछ और कर लो फिर नया काम शुरू कर लो फिर छोड़ना, ना ना। अरब लोग एक बहुत प्यारा मुहावरा बोलते हैं कि गुनाह की मिसाल दूध पीते बच्चे की जैसी है। माँ ने अगर दूध छुड़ाना है ना, एकदम छुड़ा दे, थोड़ा सा रोएगा ना फिर बहल जाएगा, और अगर हर दफा रोने के बाद दोबारा उसको वो दूध दे और फिर बॉटल का दूध देगी, नहीं पिएगा बच्चा। तो गुनाहों के सारे मामले, सारे दरवाजे यक तक काट, कैंची लीजिए तौबा की और सारे गुनाहों के चक्कर काट दीजिए, फिर इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में इतना हुसन आ जाएगा कि आप वाकई अपने आप को खुश महसूस करेंगे। कुछ और मिला ना मिला, आपको दिल का सुकून और दिल की खुशी जरूर मिलेगी, ये मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ। फिर याद रखिए कि बास लोग जो होते हैं ना, वो मौत या दुनिया से रुखसत होते वक्त क्या कैफियत रखते हैं, उनको इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें भी आपको मुझे चंद बातें अपने लिए नोट करने की हैं। लिखिए, सिर्फ इस बात पे रहकर कि मैं गुनाहों के बावजूद तौबा की उम्मीद करता हूँ। एक बंदा दुनिया से जा रहा है, मौत का वक्त है, उसके बारे में क्या हुक्म है? हुस्न-ए-ज़न रखिए, आप भी उसके लिए, वो भी हुस्न-ए-ज़न पे रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जिसे कुदसी है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, यानी जो गुमान करेगा मैं उसके साथ वही करूंगा, अच्छा गुमान करेगा तो अच्छा करूंगा, बुरा करेगा तो बुरा करूंगा। तो मौत के वक्त अगर आपके सामने कुछ सारी जिंदगी का गुनाहगार भी, अब क्योंकि वक्त खत्म हो गया, अब कोई है नहीं है गुंजाइश, कोई नया काम आप कर नहीं सकते, ऐसे ही मेहमान आ गए, अब जो पकना था पक गया, रिलैक्स रहिए, खाना पूरा होगा, अब उस वक्त हॉल रहे और पतीले रखे नहीं, कुछ और पका लूं कब ना। जब अमल का वक्त जो खत्म हो गया तो अब इसके बाद क्या होगा? तो पहली कैफियत आपको क्या लिखा रही हूँ, अल्लाह से उम्मीदें लगाने की, गुनाह है तो अब अभी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मौत आ गई है तो मौत के वक्त में अब बस खत्म, जो होना था हो गया, अब दुआ के अपने भी, आप ही दुआ करें उसके लिए। तभी तो कहते हैं मैयत को सबसे ज्यादा फायदा दुआ से होता है, ठीक है, इससे होगा। दूसरी बात है कि एक शख्स अभी गुनाहों में मग्न रहा, यानी एक सेकंड पर्सनल नोट कीजिए कि गुनाहों की कसरत है अभी, अब क्या उसको उम्मीद दिलाएं? जी, गुनाहों की कसरत पे ना उम्मीदों को उम्मीदें दिलाइए, क्योंकि वो गुनाह ऐसे ही है जैसे एक ढेर के अंदर एक बंदा फंसा हुआ निकल नहीं रहा, और वो कहते हैं मैंने कौन सा बख्शे जाना है, मैंने तो इतने गुनाह किए। यहाँ एक बड़ा प्यारा वाक्य हदीस में आता है, एक औरत हजरत अबू हुरैरा के पास आई और उसने कहा मैं बुरे गलत काम करती थी, तो कहने लगी कि मैंने जिना भी किया ये भी किया, लेकिन आज मुझे अल्लाह का खौफ आ रहा है, तो क्या मैं बच जाऊंगी? कहने के तू कहाँ बचेगी, इतना बड़ा कबीरा गुना। तो वो औरत वहां खड़े होकर अपने जिस्म को मुखातिब करके कहती है, ऐ जिस्म तुफ है तुझ पे, तू आग में जाएगा, और रोती हुई वहां से चली गई। फिर क्या हुआ उसके बाद? वो नबी सल्लम जब आए तो अबू हुरैरा ने वाकया बता दिया, आपने कहा अबू हुरैरा जा उस औरत को ढूंढ, तूने उसको अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कर दिया। اور ابو ہریرہ ڈھونڈتے جا رہے ہیں اور اس عورت کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیے خدا کے لیے. یہ دین آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں چار لفظ پڑھا دیے کہ آپ چھریاں بن کر لوگوں کو بچائیں. گناہ میں پڑے ہوئے شخص کو امیدیں دلائیے کہ کوئی بات نہیں, کم آن, آئی ول ٹیک یو. آپ امیجینیشن میں ایک تصویر لائیے کہ ایک شخص کسی گڑھے میں گر رہا ہے اور کنٹینیوسلی اسٹرگل کر رہا ہے اور پانی ہے جو اس کو گرا رہا ہے اس میں, تو آپ اس کا ہاتھ پکڑیے نہ کہ اس کو چھوڑ دیں تاکہ وہ اور گرے. پھر ایک اور جملہ لکھیے, ایک تھرڈ پرسن لکھیے کہ خوشحال ہے. خوشحالی میں خوف اور خشیت کا پہلو امید پر غالب رکھنا چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے, نعمتیں بہت ساری ہیں, اللہ نے تکیہ دیا, بستر دیا, آرام دیا, اچھی گاڑی دی ہے. اب کیا کہیں لوگوں کو کہ اب تم تو جہنمی ہو, تم چونکہ پیسے والے بڑے ہو اس لیے آگ میں جاؤ گے, اور امیر لوگ تو ہوتے ہی برے ہیں, اور لینڈ کروزر میں پھرنے والے جہنمی ہیں. غلط بات ہے. یاد رکھیے شیطان ایسے بندے کا سٹیرنگ اپنے ہاتھ میں لے گا, چلو پھر اور موج کر لو اور مستی کرو. تو پیسے میں موجود لوگ بہت سارے جن کو اللہ نے دولت دی, اب ان کو اور امیدیں دلائیں. جیسے اللہ کے نبی کے پاس کسی نے آ کر کہا اللہ کے نبی پیسے والوں کے پاس پیسہ بھی بڑا ہے اور وہ صدقے بھی کرتے خیراتے کرتے, ہم تو بیچارے اپنی ضروریات کے بعد تھوڑا بہت دے بھی دیں تو ان کا مقابلہ تو نہیں ہم کر پاتے, تو وہ تو جنت میں جلدی چلے جائیں گے. دیکھیے ذرا اس دور کی سوچ کیا تھی. اللہ کے نبی نے کہا اچھا تم ایسا کرو, یہ اذکار پڑا کرو, تم بھی ان کا اجر پالو گے. تھوڑے دن بعد پیسے والوں کو بھی انہیں باتوں کی خبر ہو گئی اور نتیجہ کیا ہوا اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, کہ انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. تو پھر کیا ہوا, اللہ کے نبی نے کہا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. تو کیا پتا چلا کہ گناہوں پر خوف الہی پیش نظر رکھنا چاہیے. خوشحال بندوں کو مایوس نہ کیجئے. پھر نیکسٹ دیکھیے کہ گناہ سرزد ہوتے وقت کیا ہو, اس وقت اللہ کا خوف رکھیے. یہ ہے نیگیٹو بات. ایک بندہ گناہ کر رہا ہے, اللہ کے غیظ کو غضب کو دعوت دے رہا ہے, اب آپ اس کو جا کے کہ کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے, غلط ہے, یہ باطل امید ہے, اس سے بچانا ہے آپ نے. اس کو ڈرائیے, اس کو وارن کیجئے, پیار سے کیجئے, ٹون اچھی رکھیے. لیکن آج مسئلہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں پر گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر امید اور رجا پر تکیہ بھی کیے بیٹھتے ہیں. حماقت ہے, یہ ایسا نہیں کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں پھر گناہوں پہ ڈٹائی کر دیتی ہیں. تو آپ کو مجھے اپنے ارد گرد اگر کسی شخص میں کوئی ایسا عمل دکھتا ہے تو پیار سے محبت سے ہاتھ پکڑ کر, اگر محرم ہے یا اگر آپ کی دوست ہے, اگر غلط کاموں میں, تو آپ اس کو بتائیے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اس سے آپ محسوس کریں گے کہ یہ اچھی چیز ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہونے کی حالت میں خوف الہی کی یاد دہانی جب آپ کراتے ہیں نا, تو ایسا شخص بہت جلدی اللہ تعالی کی طرف آتا ہے. آپ اصل میں کچھ حصہ کچھ وقت جان گزار چکے ہو نا اگر ان چیزوں میں, تو پھر آپ سمجھ جائیں گے ان چیزوں کو. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ امید اور رجا کی کچھ قسمیں بھی ہیں, مختلف قسم کی ہیں, جس میں میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتا بھی دی ہیں لیکن کچھ صرف خلاصے میں بتا دیتی ہوں. کہ ایک اس شخص کی امید ہوتی ہے جو اللہ کے نور بصیرت کی روشنی میں اللہ کا بننے کی نیت کر لیتا ہے کہ بس آج کے بعد ختم, بس ختم. جیسے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جنت تھے, معروف نام تھا جن سے نکل گیا, نعتیں بھی پڑھتے تھے, کیا نام تھا ان کا, جنید جمشید صاحب. جب ان کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ تبلہ سرنگی تو دل میں نفاق لائے گا, ایک ہاتھ سے توڑ دیا, اللہ نے پھر عزت بھی دے دی. تو لکھیے وہ شخص جو توبہ کی نیت کرے فوراً آگے آ جائے. اسی طرح یوسف اسلام کیٹ سٹیون سے یوسف اسلام میں آگے. پھر اسی طرح ایک وہ شخص ہوتا ہے جس نے گناہ کا ارتکاب تو کر لیا, پھر توبہ کی توفیق مل گئی, پھر توبہ کے بعد اللہ اسے اللہ کی مغفرت کی امید اور آس لگی ہوتی ہے, تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے, اسے درگزر کرے. تو ایسے شخص کو بھی امید دلانی چاہیے, یہ بھی قابل تعریف رجا ہے. ایک رجا مضموم ہے, وہ آسی اور نافرمان شخص جو نافرمانی اور خطاؤں میں حد سے بڑھ جائے اور اس انتہا تک پہنچ جائے کہ وہ پھر بالکل پیچھے ہوتا جائے, ایسے شخص کو برا کہیں گے. یعنی گناہ نہ چھوڑنا اور اپنے آپ کو آگے رکھنا. تو خلاصہ کیا ہوا ان ساری باتوں کا, کہ گناہوں پہ توبہ ہے تو امید اچھی ہے, گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا ہے تو امید اچھی ہے, صرف ایک ہی بری ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ گناہ چھوڑ نہیں رہے. جتنا زیادہ آپ گناہوں میں اپنے آپ کو پھنسائے رکھیں گے اتنا ہی ہوگا, اور پھر آپ ان درجات کو طے کرتے جائیں. ایک انسان جب امید لگاتا ہے نا, پھر اس کو ایک ایک لمحہ ایک ایک سٹیپ اوپر آنا پڑے گا. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ بس جہاں کھڑے تھے آج, کل آپ آگے جائیے, پھر چیک کیجئے कि क्या मैं सिर्फ उम्मीदें तो नहीं लगा के बैठा हुआ। फिर आप सदका कीजिए, रोजे रखिए, आप अल्लाह की रजा पे राजी रहिए, शुक्रगुजार बनिए, यानी फिर दिन ब दिन आप बेहतरीन तरीके से ले। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने गुनाह छोड़ने लग जाते हैं, ये पहला दर्जा होता है उम्मीद और रजा का, ये पहली किस्म कह ले। फिर दूसरा क्या होता है कि वो मनपसंद चीजों को छोड़कर मुजाहिदा नफ्स में आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ठीक है जो भी है ये भी सही, ये भी बहुत प्यारा दर्जा है। लेकिन आप कहता है कि आखिरी दर्जा फिर क्या होता है उम्मीद और रजा का, कि बंदे को एक ही फिक्र लग जाती है कि मैंने अपने रब से मुलाकात करनी है। फमन का नजर जुलका रबी फलयामलन सालेहन बोला युशरिक भी वाजी रबी ही अहदा, सूरह काहफ की आखिरी आयत है 110। ये बंदा खुशबख्त है, फिर उसको दुनिया से सिर्फ और सिर्फ रब की मुलाकात चाहिए। ये आज हमारी दुआ भी है। इस उम्मीद को रिजॉय लिखया कहते हैं और ईमान की असल बुनियाद ही है। खुलासा ये है, दुनिया में जितने आबिद जाहिद गुजरे या रियासत करने वाले गुजरे ना, वो हमेशा अल्लाह पे नजरें लगाते हैं, वो कहते हैं कि बस मुझे अपने रब को राजी करना, रब राजी तो जग राजी। और फिर ऐसी कैफियत में एक इंसान अल्लाह का बनता है, और कहते हैं ना कि रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मदई के वास्ते दारो रसन कहाँ। आपकी जिंदगी में अगर ये लग गया ना कि अल्लाह मैं तेरा चेहरा चाहता हूँ, मैं तेरी खुशी चाहता हूँ, मैं कल जब तुझे मिलूं तो मेरा वो दिन खुशी का हो, अल्लाह मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन वो जिस दिन मैं तुझे मिल जाऊं, फिर वो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हा अल्लाह की मुलाकात के शौक में गुजारता है। फिर वो मौत को देखकर खुश होता है और उसकी रूह उछलती भी बाहर आ जाती है कि आज दोस्त से मुलाकात है, आज अपने प्यारे रब से मुलाकात है। फिर वो दुनिया की नेमतों राहतों से ज्यादा जन्नत की नेमतों को देखता है। आप गज़वा उहद के वाक़यात अगर अर-रहीक मख्तूम में पढ़ें तो मेर बिन हिमाम का किस्सा आता है, खजूरें खा रहे थे, काला के नबी मैं जन्नत में जाऊंगा जिसका आपने तस्करा किया है कि सारी ला जन्नत व मग़फ़िरा है, सारी ला मग़फ़िरत व जन्नत अर्दुहा, कहा हाँ सहाबी तू जाएगा जन्नत में। एक खजूर खाई फिर दूसरी खाई, फिर कहने लगे मैं कैसा हूं जो अपना वक्त जाया कर रहा हूं, और खजूरों का थैला फेंका और मैदान उहद में गए और शहीद हो गए। ये हैं वो लोग जिनको वाकई यकीन आ जाता है ना कि अल्लाह से मुलाकात होनी है, फिर उनका दिल इस दुनिया से ज्यादा ऊपर आता है। ये बड़ा आला दर्जा है, थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन आ जाता है अगर आप चलते रहते हैं चलते रहते हैं, और फिर एक दिन आप अल्लाह के सामने होंगे। अल्लाह करे कि हम उस दिन हो जाए, गुनाहों को छोड़ते जाएं, नेकियों को अपनाते जाएं, फिर नेकियां भी दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। ये भी लिख लीजिए, इनफिरादी नेकियों को इज्तमाई नेकियों में बदलिए, अपनी जाती निफली इबादत जो होती हैं या नफलों की सूरत में, या आप अपनी इबादत को या अपने कुरान के गिनती के सफ़ों को बढ़ने से ज्यादा साथ साथ दूसरों की हिदायत की तलब रखते जाएं, तो अल्लाह ने कह दिया वमन अहसन कौल मिम्मन दा इलल्लाह वामिला सालेहन, वो है बेहतरीन शख्स के जो खुद भी अल्लाह को जो अल्लाह की तरफ बुलाए और फिर अमल भी करे और फिर अपना नाम मुसलमान रखे। सारे सबको लाखों से हटाकर अल्लाह ताला के सामने पहुंच जाइए और फिर उम्मीदें करें, दुआएं भी कीजिए। अल्लाह ताला से जितनी दुआएं मांगेंगे जितनी उम्मीदें रखेंगे अल्लाह ताला आपको देगा। हदीस में आता है क़यामत का दिन होगा, मोमिन को अल्लाह अपने करीब बुलाएगा और उसको बिल्कुल अपनी चादर में छुपा लेगा, फिर उसको कहेगा कि मैंने दुनिया में तेरे ये गुनाह थे, वो कहेगा जी ये भी है। करीब है कि बंदा परेशान हो जाए कि हाय अल्लाह को तो सारे मेरे गुनाह पता है, तो अल्लाह ताला कहेगा जाओ मैंने जैसे दुनिया में तेरे गुनाह माफ किए थे आज भी माफ करता हूँ। छुपा लेगा अल्लाह उसके गुनाहों को अपनी चादर में। तो जब आप अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखते हैं तो दुनिया में भी तो कोई आपके मेरी उम्मीद को नहीं तोड़ता ना। एक उम्मीद पे तो फकीर बेचारा किसी अमीर के दरवाजे पे जाता है तो वो उसको खाली हाथ ना लौटाए, तो क्या आपका रब मुझे लौटा देगा आपको लौटा देगा? नहीं, उम्मीदें रखे, सवाली बन के उसके दर पे आ जाए, सुस्तियां छोड़िए, काहली छोड़िए, मसलतें छोड़ दीजिए और उम्मीद को थाम लीजिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक एक करके आपकी जिंदगी में मामला दुरुस्त होंगे। फिर एक और सवाल है कि दुनियावी उम्र में भी अल्लाह से उम्मीदें लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। बच्चे बड़े होंगे, अच्छे बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, इनकी शादियां होंगी, बिल्कुल लगाइए उम्मीदें। और किससे लगाएंगे? क्या आप इसलिए बच्चे पैदा करें कि नकम्मे और नखट्टू रह जाएं, या अल्लाह ना करे पैदा उसके जवान होते ही मर जाएं? अच्छी उम्मीदें लगाइए, बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक। बीमार ठीक हो जाएगा, बेहिदायत हिदायत पे आ जाएगा, तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाएगी, सही उम्मीदें लगाएं। अब ये नहीं हो सकता कि आप दिन ब दिन जवान होती जाएंगी और आप 20 साल की लड़की बन जाएंगी, ये तो नहीं होगा। हाँ ये मांगिए कि अल्लाह जिस्म ताकत वाला रखना, हिम्मत देना, बुढ़ापा अच्छा हो, जिस समय दर्दें ना हो। तो लिखिए जिंदगी में दुनियावी कामों में भी उम्मीदें लगाइए। और वो हदीस इस वक्त कोट तो नहीं कर रही, सिर्फ रेफरेंस के बगैर बताती हूँ कि इबादत की हालत में होता है वो शख्स जो इंतजार अल फर्ज करता है। अच्छे दिनों का इंतजार इबादत की बेहतरीन किस्म है, और ये ईमान के साथ मिलता है। क्या हाल है, बीमार? नहीं नहीं ठीक हूँ, नहीं अब मैं ठीक हो रहा हूँ, बस वो डॉक्टर मिल गया, वो कह रहा है अब तुम ठीक हो जाओगे। ये टोन अगर आपने किसी भी बीमार की सुनी हो ना, तो ये है पुरउम्मीद। मोमिन हर वक्त अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखता है, नेकियों की सूरत में और दूसरे में। इसी को जब आप बदल लेना तो ये तवक्कुल में ढलता है। लिखिए, उम्मीद तवक्कुल में ढल जाती है। और तवक्कुल क्या है? खुद सुपुर्दगी है, मुकम्मल भरोसा अपने रब के ऊपर। मेरा मालिक मुझे मायूस नहीं करेगा, मेरा मालिक मेरी मदद करेगा, मैं खुद कुछ नहीं हूँ, वही कठपुतली वाली मिसाल रखिए। और अल्लाह ताला की जात पे तवक्कुल और एतमाद ही ईमान की जड़ और बुनियाद है। खुद किसी काम से आजिज आ जाना और इसका इजहार करना कि अल्लाह मुझसे नहीं होता, आप करिए। बच्चा बड़ी मेहनत कर करा के देखता, फिर कहता मामा मुझसे नहीं, ये तस्मा डाल रहा, आप डाल के दें। ये है तवक्कुल। और दूसरे पे मुकम्मल एतमाद। अपना बच्चा उठाकर माँ को दिया, मामा पकड़े इसको, अब मैंने शादी में एंजॉय करना है। और वो जो एक अंदर सुख का सांस है ना कि माँ को दे दिया, वो नहीं इसको कुछ करने होने देगी, ये तवक्कुल है। और फिर एतमाद करते करते आप अल्लाह ताला के साथ ऐसे बढ़ जाते हैं कि जाहरी असबाब इख्तियार करते हुए नफे और नुकसान के लिए अल्लाह पर सच्चा और पक्का एतमाद करते हैं, तो आप मुतवक्किलीन में शामिल हो जाते हैं। और एक जुमला लिखाऊं, शायद आपको फायदा दे। उम्मीद और रिजा जो है ना, ये तो मौत के बाद भी जारी रहती है जी। एक बंदा जब अल्लाह ताला से मिलता है और उससे मुलाकात करता है, इस दुनिया से जाता है ना, तो वहां भी उसकी उम्मीदें होती हैं। अहदीस हमें मिलती हैं, कब्र में मोमिन का दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, और वहां जाकर उसको पता चलता है कि उसके बच्चों की नेकियां या उसके पीछे वालों की दुआओं से उसको खैर मिली है। तो कब्र में जिस बंदे ने अल्लाह को पुकारा होता है, वो वहां भी खड़ा होता है और वो वहां अल्लाह से अच्छी उम्मीदें लगा रहा होता है। उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत की हवाएं आने लग जाती है, और वहां आवाज आती है कि नम कनो मतिल रूस, आज सो जाओ, अब बस पीछे देखना जो होगा। इसके बरक्स न शुक्र और कुफार की कब्रों में घबराहट और खौफ होता है, वो ना उम्मीद होते हैं। काफिर ना उम्मीद है, मोमिन कभी ना उम्मीद नहीं होता। तो आपने इंशाल्लाह इस पूरे दौरे कुरान में जितना कुछ सुना पड़ा है, उसके बाद अब आपके ऊपर मेरे ऊपर उम्मीद का रंग गालिब हो, इस्लाह करते जाइए। ऐसे ही कि डॉक्टर पे पहुंच गए, तशखीस हो गई, सारे टेस्ट हो गए, काफी चीजें खराब निकली, कुछ ठीक भी हैं, और अब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। अगर इलाज गोली से होता है तो गोली से कर लीजिए, कैप्सूल खाना पड़े तो कैप्सूल से खा लीजिए, ऑपरेट कराना पड़े तो कर दीजिए। ये जो हराम छोड़ना होता है ना, ये ऑपरेशन है, एक दफा छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए क्या आपको सेहत कितनी मिलती है। अल्लाह आपको हजरत अय्यूब की तरह दोबारा जवान कर देगा, आपको लंबी उम्र देगा, बीवी बच्चे वापस मिलने लग जाते हैं, नेमतों पर नेमतें मिलती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी जात पर तवक्कुल करने वाला और हक के रास्ते पर गामजन रहने वाला बना दे। क्योंकि जब आपकी उम्मीदें अल्लाह से टूटती हैं ना, तो फिर शिर्क शुरू हो जाता है। ये जितना शिर्क है ना, असल में ये अल्लाह से उम्मीदों का हटकर बुतों पे और दूसरे इंसानों पे लगना है, और ये शिर्क है। हम अपने रब पे इतने पुरउम्मीद हैं कि अला यालमु मन खलक, आज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि उसी को ना पता होगा जो जिसने पैदा किया, तो दूसरों को तो बताना पड़ता है। तो अल्लाह ताला में हर तरह के जाहरी बातनी शिर्क से बचाते हुए पुर उम्मीद इंसान रखे, और हम बेहतरीन तरीके से इस बारे का हक अदा कर सकें। आइए आज की दुआ पे, बहुत प्यारी दुआ है, और वो दुआ जरा सी तवील है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कितनी उम्मीदें हैं जो एक ईमान वाला अपने रब से लगाता है, और अल्लाह भी फिर जाया नहीं करता। اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي اللهم واسالك خشيتك في الغيب والشهاده واسالك كلمه الحق في الرضا والغضب واسالك القسط في الفقر والغنى وَسَلُكَ نَعِيمَ اللَّهِ يَنْفَدُ وَسَلُكَ قُرَّةَ عَيْنِ اللَّهِ تَنْقَتِيُ وَسَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَى وَسَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَسَلُكَ لَزَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ. یہ ہے وہ امید رجائے لقیا کہتے ہیں اس کو. اس کے لیے آپ کو یہ دعا دی ہے. اپنی امیدوں کا دکھ چھوٹا نہ رکھیے. کم چیزوں پہ تو راضی رہنا ہی نہیں. ابھی ترجمے میں آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیا چیز مانگ لی. لذت النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان وجعلنا هداة مهتدين. صحیح روایت ہے, نسائی میں بھی ہے 1306. ترجمہ دیکھیے گا. اے اللہ, تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ. اب تو جینے کا مزہ آئے گا. دیکھیے تو صحیح, اب امیدیں لگی ہیں اور اب آپ نے اپنی اصلاح کی نیت کی ہے نا. اصل زندگی قرآن کے بعد ہے. اور اکثر قرآن سبیل الجنہ جوائن کرنے کے بعد ساتھی کہتے ہیں کہ اب پتہ چلا جینا, کہ اب تو دل کرتا ہے اللہ زندگی دے, کیونکہ اب تو مزہ آنے لگا ہے. آپ پہلے تو پتہ نہیں ہم کدھر تھے. آپ اپنے لیے جینے لگ جاتے ہیں قرآن کو سمجھ کر. تو آپ کیا کہتے ہیں, اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے, اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے. اے اللہ, اور میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتا ہوں. رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتا ہوں. محتاج کی اور غنا میں میانا روی کا سوال کرتا ہوں. نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں, نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں. یعنی یہ نہیں کہ کبھی کبھی ہمارے آنکھیں ٹھنڈی ہو, ہر وقت ہی ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہے. اور نیکیوں سے مومن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, اپنی اور اپنی اولاد کی آنکھیں. اپنی اور اولاد کی نیکیوں کو دیکھ کر آنکھوں میں پانی آتا ہے اور آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں. موت کے بعد اچھی زندگی کا طالب ہوں. تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں. تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں, بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے. اے اللہ, تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسا ہی کرے. اور آج کی حدیث لے لیجئے, حضرت انس سے روایت ہے, سلسلہ صحیحہ میں ہے. اللہ کے نبی ایک نوجوان کے پاس گئے, وہ موت اور حیات کی کشمکش میں تھا, یعنی اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھا. آپ نے پوچھا اس ساتھی سے کہ اپنے آخرت کے اجر اور ثواب اور عذاب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو, یعنی واٹ آر یو فیلنگ. اس نے کہا, اللہ کے رسول, میں اللہ کے بارے میں پر امید ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں. آپ نے فرمایا, جس آدمی کے دل میں اس قسم کے وقت پہ, یعنی جان کنی کے وقت میں, یہ دو چیزیں یعنی خوف اور امید جمع ہو جائیں, تو جس چیز کی اسے امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کر دیتا ہے, اور جس چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ اسے امن دلا دیتا ہے. اللہ ہمارا بھی یہی حال کرے موت کے قریب, کہ ہمیں اللہ کی رحمتوں کی امید ہو. آگے چلتے ہیں پارے میں دل, 29th پارے کے اندر انماء القلوب میں. پہلے ہے القلب المریض, سورت مدثر کی آئے 31 میں. پھر مدثر ہی کی سورہ مدثر کی آئے 38 میں کسب القلوب ہے, یعنی دلوں کی کمائیاں کیا ہوں گی. اور ہدایت سے متعلق 5 آیتیں ہیں اس بارے میں, سورت ملک کی آئے 22, سورت جن 12 آیت نمبر 2 اینڈ 13, مدثر میں سورت مدثر میں آئے 31, اور سورت الانسان جس کو سورت دہر بھی کہتے ہیں آیت نمبر 3. مثلا کیسے, علی وجہہ یہدی کے لفظ ہیں سورت ملک میں, یہدی الی الرشد کے لفظ ہیں سورت جن میں, اور سمعنا الہدی آمنا بہ سورت جن 13, اور سورت مدثر 31 میں آتا ہے ویہدی من یشا, اور سورت الدہر آیت 3 انا ہدیناہ السبیل. اللہ راستے دکھا دیتا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سورت ملک شروع کرتے ہیں. بہت ہی پیارا پارا ہے سورت ملک, اللہ تعالیٰ کی کنگڈم کے تذکروں سے شروع ہوتی ہے. ترتیب کے اعتبار سے 67 نمبر کی سورت ہے, 30 آیات ہیں, اور اللہ کی بے مثال قدرتوں کی مثالیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کی لا محدود اختیارات اور دنیا اور آخرت میں ظاہر ہونے والی اس کی مختلف قدرتیں اس میں آپ کو بڑے جامع انداز میں ملیں گی. اور ان 30 آیتوں کو رات کو پڑھنا قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی اشارے ملتے ہیں ہمیں. آیات کا تجزیہ دیکھیں تو پہلی 5 آیتیں قرآن کا تصور خالق, कायनात और इंसान। आयत 6 से 14 में अहवाले आखरा हैं। आयत 15 से 23 में अल्लाह ताला की बेमिसाल कुदरतें और नेमतें हैं। 24 से 27 में नेमतों का हिसाब तो होकर ही रहेगा। और 28 से 30 मुनकरीने हक के लिए दावत गौर फिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। पहली पांच आयतें अल्लाह तआला की अज़मत व बड़ाई भी हैं, सिलसिला मौत व हयात की हिकमत भी है, और दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फन प्लेक्स, ये दुनिया एक कोई पार्टी का नहीं है, इसका मजमून है। आइए पढ़ते हैं। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है, और जो हर चीज की कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुमको आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है, जिसने सात आसमान ऊपर तले बनाए। तो देखने वाले अल्लाह रहमान की पैदाइश में तो कोई बेजाबतगी न देखेगा, दोबारा निगाह डालकर देख ले क्या कोई शगाफ भी नजर आता है या रहा है। यह है ऑप्टिमिज्म, पुरुमीद रहे ईमान तो उसको अल्लाह ताला ऊंचा देखना सिखाता है, उसकी निगाह बुलंद होती है। फिर दोहरा कर दो दो बार देख ले तेरी निगाह तेरी तरफ जलील और आजिज होकर, तेरी निगाह अजीज जलील और आजिज होकर थकी हुई लौट आएगी, यानी तुझे अल्लाह की इस तख्लीक में कोई भी ऐब नहीं दिखेगा। बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों से आरास्ता किया, और इन्हें शैतानों के मारने का जरिया बना दिया, और शैतानों के लिए हमने दोजख का जलाने का अजाब तैयार कर दिया। क्या पता चला कि ये कायनात अल्लाह की बनाई हुई कायनात है, अल्लाह ने एक मकसद के साथ बनाया। आप और मैं गुड्डी गुड्डे के घर वाले खेल में नहीं है, एक संजीदा हकीकत है ये दुनिया। यहाँ अल्लाह ताला आपको मुझे आजमा रहा है, आप देखिए कि लिया ब्लुवाकुम अय्युकुम अहसनु अमला की बात हुई है, ये नहीं कहा कि तुम में से कौन ज्यादा काम करता है, बल्कि अहसन कौन करता है। तो यहाँ जुमला लिखिए, ज्यादा करने से ज्यादा क्वालिटी को बेहतर बनाते जाइए तो अल्लाह के यहाँ कबूलियत ज्यादा होगी। अल्लाह ताला के यहाँ क्वालिटी चलती है, क्वांटिटी नहीं चलती। बाज दफा हम क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश कर जाते हैं। हेड काउंट नहीं है इस्लाम में। हक बात कीजिए, सच बात कीजिए, चाहे बहुत थोड़े लोग आपकी बात सुनने वाले रह जाए। और इसमें आप देख रहे हैं कि दुनिया को एक कमरा इम्तिहान से भी तशबीह दिया गया। आप और मैं इस दुनिया में आने के मकसद को अगर अपना समझ लेना तो जीने का अंदाज बदलता है। एक शख्स पार्टी में जाए, क्या मूड होता, क्या पहनूं, कैसा लगूं, मेकअप कैसा, जूते कैसे, बाल कैसे, ड्रेस कोड कैसा, वहां क्या खाएंगे, फन पहले से ही दाल टपकती है ना। इसके बरक्स एक बच्चा इम्तिहान देने जा रहा है, एक लड़की का पेपर है, आप कहते बेटा क्या पहनोगी, ज्वेलरी निकाल दूं, आओ तुम्हारा मेकअप करा दूं, वो कहेगी मॉम व्हाट आर यू डूइंग, मुझे तो अभी दो सवाल याद करने हैं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है इन चीजों का। बस ये है सोच, दैट इज द थॉट पैटर्न वी नीड टू चेंज। आज के दौर में इंसानों का और अपने प्यारों का ये सोच बदलना है। आप अपने बच्चों की सोच बदल दें कि बेटा इस दुनिया में हम पार्टी में नहीं है, तो वो सारा फन एंड फ्रॉलिक एंड हंटी डम्टी ये सब खत्म हो जाएगा। संजीदा सोच दीजिए, तरबियत में संजीदगी होती है तो बच्चे माँ बाप के लिए चैलेंज नहीं होते, उनके कद के बढ़ने के साथ साथ चैलेंज भी बढ़ता जाता है। वादे अलस्त लेकर अल्लाह ने आपकी मेरी रूहों से जो वादा लिया था, दुनिया में आकर उसी वादे को जगाया जाता है, और आपको मुझे बताया जाता है कि तुम इस दुनिया में इस दुनिया के लिए नहीं आए, तुम वो दो मौतों के बीच की एक जिंदगी से गुजर रहे हो जो अर्जी है, और कल तुम फिर दोबारा कब्र में ले जाए जाओगे और वहां से निकलोगे। वही बात वकैफ तक पोरो न वकुन तुम अमवातन फाहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम है। कल हमने अपने बच्चों की क्लास फातिहा से नास में ये आयत की है, इसलिए मुझे याद भी आ गई। तो आप मैं इस दुनिया के अंदर मुख्तसिर रहने को समझ लें कि ये दुनिया एक कमरा इम्तिहान है, कहते हैं ना कमरा इम्तिहान है। अब देखिए हमारे वक्त में तीन घंटे होते थे, आज जिंदगी के भी तीन ही घंटे हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा। फिर कमरा इम्तिहान में हमेशा वक्त की कमी का एहसास होता है, जिंदगी भी कमी की है। फिर आप देखिए ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं और कोई कंपलसरी है, तो फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम में कंपलसरी भी है और साथ ऑप्शनल भी है। हमेशा एंड पे पेपर छीनना ही पड़ता था उनको, जैसे आखिर में आपको भी वक्त पूरा ही होता हुआ दिखता नहीं और मुझे बस भागना पड़ता है। यानी हमेशा और खूब से खूब करने की बात है। और इस सारे पैगाम को अलामा इकबाल की जुबान से सुनिए, कुलज़म हस्ती से तुबरा है माने दे खबाब, इस यहाँ खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। यानी एक बुलबुले जितनी जिंदगी लेकर इंसान तो इस दुनिया में आया है और इम्तिहान दे रहा है। यहाँ बैठकर अच्छे से पेपर तय कर लीजिए, वहां खुम फीहा खालिदुन लहू फीहा मा यद्दाउन लहू फीहा मा यश्तहून, पूरा कुरान आपको उम्मीदें दिला रहा है। तो आपके मेरे लिए पारे में से अमल की बात क्या निकल गई कि इस दुनिया को रब चाही कर लो और आखिरत तुम्हारी मन चाही होगी। वहां जो मर्जी पहनिएगा, जो मर्जी खाइएगा, जो ऐश जो तईश, बस वहां लफ्ज गुनाह नहीं होगा लेकिन नफ्स की इश्तहा का हर वो जुमला होगा। देखिए दुनिया में कई गुनाहों को बंदा अल्लाह की रजा के लिए छोड़ता है, दिल चाहता है लेकिन नहीं नहीं बन के फिरना, नहीं अपने आप को सजा के इस तरह फिरना फिराना, कोई बात नहीं। वहां जाके एक जन्नती वाला 70 हुल्ले पहनेगी और उसमें से भी जिस्म दिखेगा। सी थ्रू कपड़े छोड़ दीजिए यहाँ, टाइट्स छोड़ दीजिए यहाँ, अल्लाह वहां आप जो चाहे अपने शौहर के सामने आप पहन के फिरें, आपको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। और अल्लाह की तख्लीक जो कि नक्शे पाक है, आपने आयत 3 से 5 में देखा, तो अल्लाह की ये शरीयत भी तख्लीक से, अल्लाह ताला का ये कुरान, ये शरीयत, ये भी नक्शे पाक है। जिस तरह कुरान में कोई होल नहीं दिखता, मुझे तो इन 29 पारों में कुछ ना दिखा और अगले में भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफा पढ़ा। इस तरह आसमान पे चिराग है ना, इसी तरह दुनिया में वो लोग जो अल्लाह की मर्जी के साथ जीते हैं और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं, वो इस दुनिया के स्टार्स हैं। हम दुनिया के सितारों के और स्टार्स के पीछे भागकर कभी कभी बहक जाते हैं। असल बनना है तो ये बनिए कि आप एक ऐसा सितारा बन जाए कि लोग आपके पीछे चलकर आग में नहीं जन्नत में पहुंच जाए। तो किसी अच्छी चीज को अपनी जिंदगी में जगह दे लीजिए, अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे। आगे देखिए आयत 6 से 12 में, मुनकरों को अजाब और ईमान लाने वालों को अजर अजीम की खुशखबरियां दी जा रही हैं। और साथ ही साथ 6 से 9 में जहन्नुम का जोश और गजब भी दिखेगा। वलिल्लज़ीन कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबीसल मसीर, और अपने रब के साथ कुफर करने वालों के लिए जहन्नुम का अजाब है, वो क्या ही बुरी जगह है। जब इसमें ये डाले जाएंगे तो इसकी बड़े जोर की आवाज सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, करीब है कि भी गुस्से के मारे फट जाए। जरा महसूस तो कीजिए गुस्से को, दुनिया में गुनाह करता है इंसान, इतना ही गुस्सा आता था अल्लाह को जितना वहां गुस्सा आएगा जहन्नुम को। करीब है कि भी गुस्से के मारे फट जाए, जब कभी इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा, इससे जहन्नुम के दारोगे पूछेंगे, आप जहां रुकिए, आज अपने आप से पूछ लीजिए, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्वेश्चन मार्क है आपके मेरे पास, कुरान आपके मेरे सामने नज़ीर की सूरत में है, कुरान बताने वाले मौजूद हैं, बुलाने वाले मौजूद हैं, दावते देने वाले मौजूद हैं, अपने घरों में सजा के संवार के आपको दावते दे रहे हैं कि आइए कुरान सुनिए, फिर कल क्या होगा? वो जवाब देंगे कि बेशक आया था, आया था, इनकार नहीं कर सकेंगे उस दिन लोग। आज इनकार करें ना करें, आज तो चिढ़ते हैं ना, क्यों बताते हैं, क्यों बुलाते हैं, कह जो दिया में नहीं आना, हम बड़े मसरूफ हैं, हम बड़े बिजी हैं, हम दुनिया में फंसने गए, हम भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप हमें क्या समझते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। यहां तो गुस्सा आता था लेकिन वहां अफसोस होगा, हाँ लेकिन हमने इसे जुटलाया और हमने कहा कि अल्लाह तला ने कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया, नऊसु बिल्लाह। तकब्बुर में लोग कहते हैं कुछ निकालना नहीं, ये मौलवी कहते हैं, ये टोन थी, तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। यानी ये सब दीनदार होते ही गुमराह, ये भटके में, पता नहीं अल्लाह ने इनको कहाँ डालना, ये हमारा जीना धोबर करते हैं, हमारे रंग में भंग डालते हैं, हर जगह ही पहुंच जाते हैं ये, पता नहीं लोग इनको बुलाते क्यों है, हम भी नहीं खुल के फिर इंजॉय कर पाते इन जगहों पे। और फिर कहेंगे, ये अगला जुमला भी लिख लें आइंस्टाइन का, और कहेंगे अगर हम सुनते होते या अकल रखते होते तो दोस्तियों में शरीक ना होते। वलौ कुन्ना नस्मऊ नाकिलु मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, आज रोने को दिल करता है इस बात पे, आज सुनना ही तो मुश्किल है, शैतान सुनना ही मुश्किल करता है। कुरान पढ़ाना बड़ा आसान है, सहेलियां कुरान खानी पे बुलाती हैं, चार चार पारे भी पढ़ाएंगे हम, और वही सहेली अगर कुरान सुनने के लिए बुलाए तो 100 में से 10 लोग भी आ जाएं तो बड़ी बात है। आज भी लिख लें, कुरान पढ़ना आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल है। जैसे ये दौरे कुरान बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है कि अल्लाह पूरा हो जाए, अब शुरू जो कर लिया, अब हाईवे पे चढ़ चुके हैं। तो लौ कुन्ना नस्मऊ नाकिलु मा कुन्ना फी असहाबिस सईर कहने वालों को आज दुनिया में अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं कि आज सुन लो और फिर उसके बाद क्या होगा, بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، کنفیس کیا انہوں نے، اب یہ دوزخی دور ہوں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہر بہت بڑا ثواب ہے۔ کیا بنا، وہ کہتے ہیں نا، کہاں گرا انسان، کتنی محرومی ہے۔ تو کیا پتہ چلا، بینگ آپٹومسٹک پرسن، پر امید رہتے ہوئے، سنیے کیا ہوگا، نہ مانے، کون کہتا ہے آپ کو مانے، آپ کی مرضی۔ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں کہ ضروری ہے اس کو ماننے لگے، اتنی ریسیپی بکس آتی ہیں کہ آپ سارا کھانے دیکھتے ہیں، ساری ویڈیوز میں سے آپ کو کوئی کھانے کی ترکیبیں ملتی ہیں تو سارا کچھ پکاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ قرآن تو سن لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے یہ جوش اور غضب دکھا کر ہمیں بتا رہا ہے، وہاں بات تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آج بال از ان یور کورٹ، کل تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ تو ہدایت پانے کی دو صورتوں میں سے ایک صورت یہی تھی کہ دنیا میں پا لیتے، اور دوسری کیا کہ وہاں جا کر پانا چاہیں گے لیکن وہاں فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آگے آیت 13-14 میں اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھیے گا کہ خالق کو مخلوق کی ہر بات کا علم ہے، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا۔ وَأَسْرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ ماں کا پیار دکھ رہا ہے اس میں، ماں کہتی بتاؤ کیا بات ہے، نہیں ماما کچھ نہیں، نہیں کچھ تو ہے۔ جو عقل مند مائیں ہوتی ہیں نا، اپنے بچوں کے دل کی باتیں جان جاتی ہیں، ان کے چہرے مہرے کو دیکھ کر پہچان جاتی ہیں۔ تو جس نے ماں دی وہ نہ پہچانے، وہ 70 کے 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا نہ پہچانے، اگر اس حدیث کو ٹھیک بھی سمجھ لیں ہم۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے امیدیں اچھی رکھیں اور پھر اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جھانک لیتا ہے۔ آپ ہدایت کی طلب میں ہیں لیکن آپ ہیں ہی فورتھ لین میں، ابھی آپ کو کئی لینز کراس کر کے ایگزٹ لینا ہے گناہوں کی زندگی سے، کوئی بات نہیں، گو ہیڈ، سٹارٹ تو کیجئے۔ لیکن اگر حال ہمارا اس شخص جیسا ہو جائے کہ جو امتحان سے متعلق چیزوں میں اتنا کھو جائے کہ امتحان ہی بھول جائے۔ دیکھیے ایک طالب علم ہے نا، پیپر دے گا، پڑھے گا تو پیپر دے گا، تو وہ قلم جمع کرے، کاغذ ڈھونڈے، کپڑے پہنے، تیار ہو، کس گاڑی میں جاؤں گی، گاڑی لے کر آئے، اور پھر ساری رات بیٹھ کے خواب ہی دیکھتا رہے کہ اچھا کیسے کیا کرنا ہے، اور صبح جب وقت آئے تو سو جائے، تو اس کی محرومی ہے نا۔ وہ کہے گا ہائے کاش پڑا ہوتا، اللہ آپ کو مجھے اس دنیا میں آنے کا مقصد سجھا دے۔ آگے آیت 15-23، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں سے کچھ سوال ہے، اور خاص طور میں اس میں سب سے پہلے آیت 15-18 میں زمین کی خوبصورتیاں دیکھیے گا۔ آپ کے میرے لیے زمین اللہ کی قدرت کا ایک کیا نشان ہے، اس کی قدرت بھی اور رحمت بھی ہے اس میں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ، اس کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کر جانا ہے۔ آج میں اور آپ زمین کے کندھوں پہ، جس کو کہتے ہیں نا چنگاڑے چڑھنا، فی مناخ کی بھی منقب کہتے ہیں کندھے کو، شولڈر کو کہہ لے جی، ہم جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض، تو آپ اور میں اس وقت زمین کے کندھوں پہ سوار ہیں اور ایک دن اس کے پیٹ میں ہوں گے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے، یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسائے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمٹے ہوئے یا سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا، بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے میں پڑ گئے۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا جو اپنے منہ کے بول اوندھا پڑا ہو، لکھیے گا اس کو بھی نوٹ کریے، بڑی اہم آیت ہے۔ کیا وہ شخص جو زیادہ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پاؤں کے بل راہ راست پر چلا ہو؟ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کام شکر گزاری کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پہلے تو زمین کی باتیں کر دی، کیسے زمین ताबे है हमारे, इतना मनो टनो वजन है इंसानों का, बड़े इत्मीनान से चलते हैं, ना इतनी नरम फॉर्म की तरह के अंदर ही घुसते जाएं, और ना इतनी सख्त के ठीकरी की तरह पांव हम ऊपर रखें और उछाल के फेंक दें, और दिन रात इस जमीन से फायदा उठाते हैं, इसी के अंदर से हमारी फसलें हैं और इसी के अंदर हमने जाना है। यानी जमीन की जिंदगी में हैसियत को देखे, कभी नंगे पांव चल के देखे आपको कितना मजा आता है। और फिर जमीन में जलजले भी जहमत बनकर निकल आते हैं कभी, और आसमानों से भी अल्लाह ताला चीजों को लाते हैं। और फिर इसी तरह अल्लाह ने आपको मुझे आयत 19 में बता दिया, सबको मैं उठाए हुए हूँ। कभी परिंदों को देखा? आप कहते हैं कि कुछ परिंदे ऐसे छह छह महीने का सफर करके एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं, रस्ते में ना खाते ना पीते और ना रास्ता भूलते। कौन है? मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। तो कहें अल्लाह जो तू परिंदों को थाम लेता है मुझे थाम ले। किसी की बड़ी प्यारी बात के वो जात जो टहनियों पर लेट सोए हुए परिंदों को गिरने ना दे, वो आपको मुझे मुश्किलात और तकलीफों में भी थाम लेगा। तो तवक्कुल करिए अल्लाह पे, उम्मीद रखिए उस पे, हर मुश्किल में कहा करें अल्लाह मुझे थाम ले, मैं फिर गुनाह में जा रही हूँ, अल्लाह मैं फिर बिगड़, मेरी नमाजें फिर ढीली हो रही हैं, मेरा फिर कुरान से ताल्लुक टूट रहा है, मेरी छुट्टियां हो रही हैं, मेरी क्लास फिर पीछे हो रही है, अब मैंने अपनी रेगुलर क्लास को तो पता नहीं किधर डाल दिया, अल्लाह मेरी हिकमतुल बालिगा किधर गई, हाय उसके होमवर्क किधर गए। वापस ले आइए अपने दिमाग को अपनी रेगुलर क्लासेस पे। दौरे कुरान जो इतना बड़ा एक मरहला था अल्लाह ने गुजार दिया, अब मैं खुद जहनी तौर पे और आप सबको भी ये देखती हूँ कि अब इंशाल्लाह हम अपनी क्लासेस जो रेगुलर चल रही थी उनकी तरफ हैं, और जो नए साथी हैं वो तो नए रास्ते इंशाल्लाह पाएंगे ही। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे कि हम अपनी कमिटमेंट्स को आसन दर्जे पे निभाने वाले बने। वो फराइज होते हैं, ये सुन्नतें हैं, नवाफिल में पढ़कर फराइज को हमने नहीं भूलना। फिर आप देखिए 20 से 21 में बातिल माबूदों की बेबसी और लाचारगी देखी हमने, कि जब अजाब आते हैं, जब पकड़ आती है, तो फिर ये तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं समझते कि ये तुम्हें फायदा नहीं देंगे। और फिर आयत 22, इंसान वही है जिसका कोई मकसद जिंदगी हो। यहाँ आपने देखा है कि मोमिन और मवाहिद की बात है। अगर आप देखें अलावज की अहदा की एक सूरत में आपको बताया जा रहा है कि एक मवाहिद जो अल्लाह को एक मानता है, और एक मुशरिक, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं बराबर हो सकते? क्योंकि मवाहिद की राह सीधी और साफ होती है। अल्लाह को एक मानने वाले के पास वाज़े हिदायत और इल्म की रोशनी मौजूद होती है। इसके अलावा मुशरिक तारीकी और जलालत की राह पर गामजन होता है। इसके बस इल्म की रोशनी की बजाय महज ओहाम और क्यासात होते हैं, वहमी होता है। इंसान की जिंदगी जानवर की जिंदगी से बहुत फर्क है। जानवर का मकसद कोई नहीं होता, खाया पिया नस्ल बढ़ाई और कुछ दिन जिंदगी से गुजार के चला गया। तो आला तरीन मकसद वो है जो अल्लाह के नबी का था, मजलूमों की मदद करना, दुनिया से जुल्म और इस्तेहसाल का खत्म करना निजाम, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। इसी को आप भी दोहरा लीजिए कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। दरअसल इंसान वो है जो हैवानी तकाजों को पूरा करने के साथ साथ किसी भी आला मकसद को जिंदगी में जगा दे, और उसके लिए फिर तन मन धन की बाजी लगा दे। और याद रखिए, जितना मकसद ऊंचा होता है उतना इंसान का किरदार ऊंचा होता है। अक्सर ये जुमला साथी सुनते हैं जुबान से कि जो हमारे गोल होते हैं वही हमारे रोल होते हैं। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा रोल। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। और आयत 23 में इंसान पर अल्लाह का एहसान अजीम भी था कि अल्लाह ने इंसान को इल्म की दौलत दी, अकल सहफमत दी। अब आगे आयत 24 से 27 में क्यामत के दिन मुनकरीन की सूरतें बदल जाएंगी। देखते हैं इसको, बड़े डर के साथ पढ़िए और दुआ कीजिए कि वो लोग जो अभी तक गुनाहों में पड़े और तौबा भी नहीं कर रहे, अल्लाह ताला उनको तौबा की तौफीक दे। जो अभी तक शिर्क में है, अल्लाह ताला उनको शिर्क से निकाल कर तौहीद की तरफ ले आए। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुख़शरून। कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और इसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। काफिर पूछते हैं कि वो वादा कब जाहिर होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ। आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, मैं तो सिर्फ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। जब ये लोग इस वादे को करीब तर पा लेंगे, इस वक्त इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसे तुम तलब किया करते थे, जो तुमने मांगा तुम्हें मिल गया। हकीकत यह कि इंसान बड़ा ही नाशुक्र है, खुद अपनी जिंदगी को जाया करके कहता जो होगा देखी जाएगी। तो अल्लाह कहते उस दिन सूरतें बदल दूंगा, होश गुम हो जाएंगे और फिर तुम्हें लग पता जाएगा कि मनमानियां करने का नुकसान क्या है। तो ये है वो लोग जो गुनाह करके तौबा भी नहीं करते, फिर भी अल्लाह की रहमत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो ये कौन सी रिजा है? रिजाए मजमूम, मजम्मत वाली रिजा है। अल्लाह आपको मुझे ऐसी उम्मीदों से बचाए। छोटी उम्मीदों से निकलिए और हकीकी उम्मीद पे आइए। और आगे आखिरी आयतें पारे सूरत की 28 से 30, सूरत का खात्मा, अल्लाह की कुदरत किसी को सजा दे या रहम करे। दूसरे लफ्जों में आप कह लीजिए कुफार के लिए दावतें गौर व फिक्र है इन आयात में। कुल अरअयतुम इन अखलकनी अल्लाहु मम मई और रहमना, आप कह दीजिए अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हलाक कर दे या हम पर रहम कर दे, बहर सूरत ये तो बताओ कि कुफार को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। आप कह दीजिए वही रहमान है, हम तो इस पर ईमान ला चुके और इसी पर हमारा भरोसा है, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि सरीख गुमराही में कौन है। आप कह दीजिए अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हें तुम्हारे पीने का पानी उतर जाए यानी जमीन में वापस चला जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ पानी लाए। बोलिए कोई नहीं लाएगा। अल्लाह ताला अपनी नेमतों को अगर छीन ले तो आप और मैं नेमतों को वापस नहीं ला सकते। तो क्या पता चला सूरत मुल्क इन 30 आयतों में, अगर एक एक आयत करके भी रोज याद करना शुरू कर देंगे तो एक महीने में ये पूरी सूरत याद हो जाएगी और इसको याद करने के बाद गौर व फिक्र आसान भी होगा। और उस दिन जो बात पता चलेगी अगर आप आखिरी आयत पे गौर करें ना कि फसतालमूना मन हुआ फी दलाल मुबीन, सेकंड लास्ट आयत है, तो पता क्या चला कि हकीकत में कौन गुमराह था और कौन हिदायत पे था ये वहां जाकर पता चलेगा। और सोल सर्चिंग क्वेश्चन आए 30 में, ऐसा सवाल जो सोचने पे मजबूर कर दे। और ये इधर ना सोचिए कि टूटी खोल के भूल जाते हैं कि चावल भी गिर रहे हैं और पानी भी जाया हो रहा है। जरा मक्का के माहौल में, अरब के सहराओं में और पहाड़ी इलाकों में खड़े होकर इस आयत को सोचिए कि जहां सारे निसार पानी पर हो कि जिसको दूर से मटकों में और घड़ों में लाना पड़े, वहां ये आयतें सुनकर दिल को क्या चोट पड़ती होगी। तो पानी की कदर कीजिए, पानी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। ये सूरत पूरी सूरत जो थी ये तौहीद के गिर्द घूमी, आपने भी देखा। और पिछले साल का दौरे कुरान देख लें तो पूरे पारे का आपको गोत्रू कराया करती हूँ हर साल कि पहली सूरत तौहीद अल्लाह के हकूक की है, तो अगली सूरत रिसालत से मुतल्लिक है। ये पूरे पारे में एक फितरी सी बांट है कि सूरत 30वां पारा दायत दावत इल्लाह का पारा है, क्योंकि अब आपको मुझे यही सिखाया जा रहा है कि तुम्हें अपने आप को कैसे लेना है। तो सबसे पहले जो मौजू लोगों से डिस्कस किया जाए वो सूरत तबारक है। नए लोगों को सूरत तबारक का तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तफसीर सुना दें। अब आगे सूरत कलम, जिसको सूरत नून भी कहते हैं, ये सूरत बुनियादी तौर पर रिसालत के गिर्द घूमती है। नबी सल्लम की अजमत और मुखालिफीन की जिल्लत का बयान भी है और उनके पस्त होने का तस्करा है कि फिर वो कैसे पीछे हो गए। 68 नंबर की सूरह, 52 आयात हैं इसमें। आयात का तजिया देख लेते हैं। 1 से 7 में अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, 8 से 16 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की खिबासत का बयान है, 17 से 33 में बाग वालों का किस्सा बतौर इबरत है जो अल्लाह के नबी के दुश्मनों को सुनाया जा रहा है, 34 से 41 में मुखालिफीन के बातिल तसव्वुरात की नफी है, और 42 से 47 में मुखालिफीन के बुरे इंजाम का जिक्र है, और फिर एंड पे 48 से 52 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई है। यानी अल्लाह के नबी की जात के गिर्द घूमती हुई सूरत। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल कलम वमा यस्तुरून मान तबी नेमति रब्बिक बिमजनून وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم। पहली 9 आयत, 1 से 9 नबी सल्लम का बुलंद मर्तबा और आपके अखलाक पर आला तरीन अखलाक पे होने का तस्करा खास तौर पे शुरू की 4 आयतों में। नून कसम है कलम की और इसकी जो कुछ वो फरिश्ते लिखते हैं तो अपने रब के फजल से दीवाना नहीं है, और बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है, बेशक तू बहुत आला यानी उम्दा अखलाक पर है। बस अब तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे कि तुम में से कौन फितने में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को खूब जानता है और वो राह याफ्ता लोगों को भी बखूबी जानता है। बस तू झुटलाने वालों की ना मान, वो तो चाहते हैं कि तू जरा सा ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाए। वद्दुलो तुदखिनु फयुदखिनुन। क्या पता चला कि पहली 4 आयात में नबी सल्लम का तذکرہ किस तरह हुआ? असल में अल्लाह के नबी पर जब पहली वही नाजिल हुई और आप गारे हिरा से घबराए हुए घर की तरफ आए तो मक्का वालों ने मशहूर कर दिया कि आप पर नऊज़ बिल्ला किसी जिन का साया हो गया और आप तो मजनून हो गए। तो अल्लाह ने आपकी दिलजोई की कि नहीं, कलम और इसके जरिए लिखी हुई जाने वाली पूरी तारीख इंसानी की तहरीरें गवाह हैं कि आप मजनून नहीं। क्या मजनून ऐसी बातें करते हैं? 28 पारे तो पूरे कर ही लिए ना। आपको लगा ये कलाम किसी मजनून की जुबान से या उसके दिल पे नाजिल किया गया और उम्मत को दिया गया? आज तक इल्मी और अदबी लोग इसका मुकाबला ना कर सके। 4 दफा चैलेंज था कुरान में, लेकिन एक भी कोशिश ना उनकी कामयाब होती दिखी। तो फिर मजनूओं के अखलाक ऐसे होते हैं कि इन्ना कलाला खुलुक नजीम। तो याद रखिए, अल्लाह के नबी को मजनू कहलाना पड़ा, आप में अगर थोड़े से दीवाने कहला दिए गए तो कोई बुरी बात नहीं। नजर रखिये, इन्ना लकला जुरन गई रमनून। ये है उम्मीद, रिजा, ये है तवक्कुल अल्लाह। आप ऐसे काम कीजिए कि आपके लिए अजरे ना खत्म होने रहे अजर हो। ये कब होता है? आप एक एक्सपीरियंस कीजिए, 2 मिरर लें, एक मिरर के सामने दूसरा मिरर एक ऐसे एंगल से रखें कि आपको मिरर दर मिरर कितने ग्लास दिखेंगे। ये है अजरन गैर मनून। हर नेकी में से एक और नेकी फूटे, एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट, आपने एक साइन किया दूसरा उस पर तीसरा, यानी एक से एक नेकियां आपकी बढ़ती जाएंगी और फिर आप देखेंगे कि आखिरत में फिर चश्मों की तरह और नहरों और दरियाओं की तरह बहते हुए और जन्नत की नहरों वाले नेकियों के आपके लिए ढेर लगे होंगे। शर्त है कि आप सीख कर घर न बैठ जाएं, बल्कि आप इस सफर को आगे से आगे रखें। जैसे डॉक्टर पढ़ने के बाद कोई प्रैक्टिस ना करे ना तो उसको कुछ भूल जाता है, इसी तरह हमारा भी यही मामला होता है। और जितना इंसान बाद में अंसारुल्लाह बनकर सीखता है, मुझे यकीन है कि उतना स्टूडेंट बनके नहीं सीखा जाता। पहली दफा तो ग्रिप ही नहीं बनती, कुरान समझ नहीं आता, ऊपर से गुजरता है, ऐसे लगता है हम किसी नई दुनिया में। लेकिन बार बार का सुनना, बार बार का सुनना आप सबको फिर अल्लाह ताला की बात को ज्यादा समझने के काबिल कर देता है। और आपको तो फिर क्या होगा, फिर अल्लाह हमारे दिलों को आपकी मोहब्बत की खुशबू से मुअत्तर करेगा, नफ्से मोहब्बत होगी, आपकी अजमत का एहसास तुम्हारे दिल को मुजय्यन करेगा और हम अल्लाह के नबी के अदब और एहतराम का ख्याल रखेंगे, ना कि बाअदब बने बगैर बेअदब बनेंगे। और फिर एक वक्त आएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम भी समझ में आने लग जाता है। अल्लाह ताला की रजा में रहने वाले लोग, अल्लाह सुबहाना ताला को मानने वाले फिर नबी के मुकाम को भी पा लेते हैं। फिर आयत 5 से 7 में आपने देख लिया कि भटका हुआ वो है जो सीधी राह को छोड़कर गुमराहियों में आ जाए। और आयत 8 से 9 में आपने एक बात लिख ली अपने दिल पे कि बातिल के साथ समझौता नहीं हो सकता। मक्का वालों ने तंज किया, तशद्दुद किया, लालच दी, ताने दिए, सब कुछ किया, सौदेबाजियां की, लेकिन वद्दुलखिनून की उनकी जो ख्वाहिश थी अल्लाह के नबी ने उसको बिल्कुल ना समझा। आपके मेरे लिए भी यही अमल है। आपको हक के मुकाबले में जितना मर्जी बातिल पेश किया जाए, हलाल के मुकाबले में जितनी मर्जी हराम कमाई हो, आप पीछे कर दीजिए, क्योंकि हक के साथ थोड़े से बातिल की आमेजिश हो जाएगी तो वही होगा जो बातिल के साथ होगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहेंगे कि बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। शिरकत में आना है, हक को बातिल ना कर कबूल। जमजम के एक ग्लास में एक कतरा कीचड़ वाला पानी आएगा तो जमजम भी नहीं पियेंगे आप। कीचड़ में जितना मर्जी जमजम भर दें, यह है हक और बातिल का आपस में ताल्लुक। अल्लाह आपको मुझे बचाए। आगे आए 10 से 16 में अहले बातिल का एक खबीस किरदार है जो नबी सल्लम का मुखालिफ किरदार था। और तो किसी ऐसे शख्स का भी कहना ना मान जो ज्यादा कस्म खाने वाला, बेवकार, कमीना, बदगू, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला गुनाहगार, गर्दन कश, फिर साथ ही बेनसब हो। इसकी सरकशी सिर्फ इसलिए है कि वो माल और बेटों वाला है। जब इसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है कि ये तो अगलों के किस्से हैं, हम भी इसकी सूंड यानी नाक पर दाग लगा देंगे। ये कौन था? ये किरदार था वलीद बिन मुगीरा, इसका नाम था। नबी सल्लम को बातिल पर सौदेबाजी के लिए माइल करने के लिए दबाव डाल रखा था, अल्लाह ने उसको बेनकाब कर दिया और उसका नसब तक झूठा था। उसकी जितनी बातें से एक चंद आयतों में आपने देख ली, इससे पता चलता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाबला करेगा अल्लाह उसको दुनिया में भी नीस्तो नाबूद कर देगा। अब एक वाकया है आगे 17 से 27 में बाग वालों की दास्तान बतौर इबरत। असल में ये नशुक्री और उसकी सजा का वाकया है। आयत 17 से 33, इन्ना बलौ ना हम कमा बलौ ना अस्हाब अल जन्ना, बेशक हमने इन्हें इस तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था जबकि उन्होंने कस्में खाई कि सुबह होते ही इस बाग के फल उतार लेंगे और इंशाल्लाह ना कहा। नोट कीजिएगा, बस इस पर तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ घूम गई और ये सो रहे थे, बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। आज सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सवेरे ही चल पड़ो। फिर ये सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मिस्कीन तुम्हारे पास ना आए, और लपके हुए सुबह सुबह गए, समझ रहे थे कि हम काबू पा गए। जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे यकीनन हम रास्ता भूल गए, यानी बाग तो बिल्कुल बदल चुका था, वो पहचान ही ना पाए कि हम अपनी ही जगह पे खड़े हैं। नहीं नहीं बल्कि हमारी किस्मत फूट गई, इन सब में जो बेहतर था इसने कहा, मैं तुमसे ना कहता था कि तुम अल्लाह की पाकीज़गी क्यों बयान नहीं करते। तो सब कहने लगे हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम थे। फिर एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में मलामत करने लगे, कहने लगे हाय अफसोस, यकीनन हम सरकश थे, क्या अजब कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदला दे। हम तो अब अपने रब से ही आरजू रखते हैं, यूं ही अजाब आता है और आखरत की आफत बहुत बड़ी है, काश इन्हें समझ होती। दुनिया के बाग से आखरत का बादशाह दिला दिया। वो लोग जो सारी जिंदगी नाफरमानियां करके अल्लाह से रहमतों की उम्मीद लगाते हैं, उनके उम्मीदों के बाग भी इसी तरह क्यामत के दिन जले हुए दिखेंगे। तो नियत कीजिए झूठी उम्मीदें नहीं लगानी, तौबा करके इस्लाह की कोशिशों के साथ फिर अच्छी उम्मीदें लगानी है। और फला फूला बाग कैसे अल्लाह ने नीस्तो नाबूद कर दिया, और ऐसे लोग जो हकीकत में गरीबों से अपने अल्लाह की दीवी नेमतों को छुपा लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। अल्लाह ने आपको जो नेमत दी है उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, वरना ये नेमतें खत्म हो जाएंगी। और इसमें हम सबको सबक सीखने की दावत दी गई है कि दूसरों को इल्जाम देने की बजाय जब भी कभी कोई तकलीफ आए तो अपने ऊपर ही नजरें लगाइए। बाग का उजड़ना असल में जिंदगी का जाया होना है। कल अल्लाह ना करे कि आपकी मेरी जिंदगी का बाग जल जाए, अल्लाह आपको मुझे दुनिया में तौबा करके अपनी इस्लाह की तौफीक दे, और फिर अल्लाह से अच्छी अच्छी उम्मीदें लगाएं। पिछले गुनाहों पे अल्लाह आपको मुझे नहीं पूछेगा इंशाल्लाह। आगे 34 से 47 है, मुत्तकी और मुजरिम क्या बराबर हो सकते हैं? सवाल के साथ बता दिया है कि बराबर नहीं होते। इन्ना लिल्मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, परहेजगारों के लिए इनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं, क्या हम मुसलमानों को मिसल गुनाहगारों के कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? देख रहे हैं आप ये सवाल का अंदाज इस बारे में, थॉट प्रोवोकिंग, सोल सर्चिंग, क्योंकि अब बस खत्म। जब सारा सबक उस्ताद पढ़ा चुका होता है ना, तो फिर सवाल जवाब में दोहराई कराता है। मुझे ये दो बारे सिर्फ रिवीजन लगते हैं, जो कहना था कह दिया, जो सुनना था सुन लिया, जिसने मानना था मान लिया, जिसने नहीं माना अल्लाह उसको भी मानने की तौफीक दे दे। तुम्हें क्या हो गया? कैसे फैसले कर रहे हो? फिर अपनी जिंदगी के लिए गलत फैसले करोगे? फिर तुम अच्छे फैसले करके फिर पलट जाओगे, नहीं 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 अभी नहीं, साल नहीं, अगले साल, अभी नहीं कर सकती, अभी मेरे हालात ठीक नहीं। तुम्हें क्यों शैतान धोखे देता है? याद रखिए, जब कोई नेकी की नीयत करेंगे, और खास तौर पर कुरान पढ़ने की नेकी, हर साल स्पिलुल जन्ना में जो स्टूडेंट्स आते हैं बाद में वो शेयरिंग करते हैं कि कितनी मुश्किलात से निकलकर हमने साइन अप किया था। फॉर्म फिल करना ऐसे मुहाल हो जाता है जैसे निकाह नामे पे साइन करने मुश्किल हो। वहां तो बंदा कर ही देता है, रोते धोते करे या खुशी से करे। हालांकि मैं अक्सर सोचती हूँ कि आप नियत तो कीजिए, और मैं सब साथियों को कहूंगी कि जिनको अभी भी स्पिलुल जन्ना मुश्किल लग रहा है, लॉन्ग कमिटमेंट, लंबी है, फुलां है, दिन नहीं सूट करता, वक्त सूट नहीं करता, करके तो देखिए क्या होगा, बाद में डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लेकिन एक दफा एक सीढ़ी के ऊपर एक दो कदम रखे, आजमा तो ले लें, पर प्रोवे कर लें, आप लोग आजमा के देख लें, कल मुश्किल हुई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छोड़ दीजिए। चले कल कह तो सकते हैं कि अल्लाह कोशिश तो की थी, और अगर आपको कोई बुलाए और आप उठाई ना, कोई बात करे आप जवाब ना दे, तो ये तो शर्मिंदगी है, ये तो बहुत बड़ा ढीठपन है। अल्लाह कहेगा तुम्हें इतना सुनकर भी ये सास हो भी गया, फिर तुम डर रहे हो? तो इफ्स एंड बट्स में ना पड़िए, डोंट थिंक टू मच। जो सोता है वो खोता है, जो सोचता है वो पीछे रह जाता है। तो अल्लाह ताला ये अंदाज दे के आपको मेरे शौहर को बेदार करे, क्या हो गया, कैसे फैसले करते हो? और यहां बात क्या हो रही है, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि इसमें तुम्हारी मनमानी बातें होंगी, या तुमसे हमने कुछ कस्में ले ली हैं जो क्यामत तक बाकी रहेंगी कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ है तुम अपनी तरफ से मुकर्रर कर लो? सवाल समझ रहे हैं आप? यानी मनमानी बातें कर रहे हो तो इसकी दलील तो दिखाओ, कोई किताब, कोई इल्हामी, कोई नकली, कोई असली रिवायत मौजूद है तो नहीं है? तो फिर जवाब में खामोशी। इनसे पूछो तो कि इनमें से कौन इस बात का जिम्मेदार और दावेदार है, क्या इनके कोई शरीक हैं? तो चाहिए कि अपने अपने शरीकों को ले आए अगर ये सच्चे हैं। अब क़यामत का मंजर जरा ज़हन में लाइए, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा ना कर सकेंगे, निगाहें नीची होंगी और इन पर जिल्लत और ख्वारी छा रही होगी, हालांकि ये सजदे के लिए उस वक्त भी बुलाए जाते थे जबकि सही सलामत थे। बस मुझे और इस कलाम को छुटलाने वाले को छोड़ दे, यही चैलेंज दे रहा अल्लाह कि अब तुम पीछे हो जाओ, मैं निबटता हूँ इनसे। हम इन्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि इनको मालूम भी ना होगा और मैं इन्हें ढील दूंगा। यहां देखिए वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, अल्लाह अपनी तरफ निस्बत लेते हुए बोल रहे हैं, मैं इन्हें ढील दूंगा, बेशक मेरी तदबीर बहुत मजबूत है, मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या तो इनसे कोई उजरत चाहता है जिसके तावान से ये दबे जाते हों, या क्या इनके पास इल्मे गैब है जिसे वो लिखते हों? पूरा पैसेज जो पढ़ा है ना इसमें, बस ऐसे लगता है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहां मक्का वालों के मन घड़त अखली ख्यालात और उनके बातिल अकायद की नफी थी, यहां आज उम्मत मुस्लिमा के हालात को देख लीजिए। मुसलमान हो गए, इस्लाम मिल गया, अल्लाह ने शऊर दिया, नबी के उम्मती बना दिया, इतनी सहूलतें दे दी, आसानियां दे दी, किताब घरों में आ गई, रसूल का पैगाम घर घर पहुंच गया, फिर भी तुम नहीं छोड़ते अपने मनमाने तरीके, तो अल्लाह कहते फिर मैं तुमसे खुद निबट लूंगा। आप देखिए कि इससे पता चलता है कि क्या हालात है। और फिर आगे खास तौर पर आयत 42 से 43 में जानबूझकर नमाज छोड़ने वालों की जिल्लत, कल अल्लाह सब तजल्ली फरमाएंगे क़यामत के दिन, तो सब लोग खुद बहु सजदे में चले जाएंगे। ये ऐसे ही जैसे कोई बहुत बड़ा बाइज़्ज़त शख्स आ जाए तो लोग फौरन खड़े हो जाते हैं या सीने पे हाथ रख के झुकते झुकते हैं, अल्लाह को देखते ही लोग सजदे में जाना चाहेंगे, ये एक ऑनर भी होगी। लेकिन वो बदनसीब जो दुनिया में सजदों से महरूम थे, वो वहां अकड़ जाएंगे, उनकी तख्ते बन जाएंगी कमरे, शर्म के मारे निगाहें झुकी होंगी, जिल्लत होगी, स्याही होगी, क्योंकि दुनिया में सही सालम थे और सजदों में नहीं झुकते थे। तो आज वो लोग जो सब कुछ करते हैं, घर के काम भी करते, भागते दौड़ते, नमाज के लिए बैठ जाते और सजदा तो करते ही नहीं। दुआ करें आज अपने लिए, जिंदगी के आखिरी दम तक मैं झुक के सजदा करूं, जमीन पे सजदा, मेरी पेशानी हो और जमीन हो, इसी से जौक और शौक और खुशी और खुदू आएगा, फिर फायदा होगा। तो अपने आप को सदनों से महरूम करने वाले फिर आहिस्ता आहिस्ता आजजी से दूर होते हैं। कुरान की आयतें आ रही हैं, गुजर रही हैं, उनको परवाह नहीं, जैसे थे वैसे, कोई हाल हुलिये में नहीं तब्दीली आई। अपने आप को जैसे पहले पेश करके बाहर निकालते थे वैसे ही पेश करते हैं। सर्दियों में बहुत चीजों को अल्लाह ने हमारे लिए झुकाने और ढकने छुपने का जरिया बना दिया, गर्मी आएंगी देखिएगा फिर लोग हमारा क्या कुछ देखेंगे। अल्लाह तजल्ला मिनहुम, ऐसे ना हो कि बारिश पड़ी और भीगे और जब बारिश खत्म तो हम सूखे के सूखे रह गए। अल्लाह ऐसे सख्त दिल हमें ना बना दे। और फिर आपने हक को झुटलाने वालों का बुरा अंजाम 44 से 47 में देखा, तो यहां दुआ कर लीजिए कि अल्लाह हक सुनने और सुनाने के बाद इस पे अमल की तौफीक दे। अब आगे पारे के पारे बार बार मुंह से निकल रहा है, आयत की सूरत की आखिरी आयतें देखिएगा, आयत 48 से 51। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबर की तलकीन है एक और नबी की कहानी सुनाकर, फसबिर लिहुक्म रब्बिक वला तकुन कसाहिबिल हूत, बस तो अपने रब के हुक्म का सबर से इंतजार कर और मछली वाले की तरह न हो जा, हजरत यूनुस की तरफ इशारा, जबकि उसने गम की हालत में दुआ की, अगर इसे इसके रब की नेमत ना पा लेती तो यकीनन वो बुरे हालों में चटियल मैदान में डाल दिए जाते, उसे उसके रब ने फिर नवाजा और उसे नेकुकारों में कर दिया। करीब है कि काफिर अपनी तेज नजरों से आपको फिसला दें, जब कभी कुरान सुनते हैं और कह देते हैं ये तो जरूर दीवाना है। हजरत यूनुस की मिसाल है नबी सल्लम के सामने, मक्का वालों ने आपको बहुत सताया तो करीब था कि आप भी कहीं उनको धमकी देकर निकल ना जाए मक्का से, अल्लाह ने कहा ना यूनुस से ये खता हो गई थी आप ना कीजिएगा, वो आजमाइश में जरा से जल्दी करके बाहर निकले तो मछली ने निकल लिया, आप नहीं निकले। क्या पता चला कि एक इंसान मिशन पर जम जाए, और ये जो लफ्ज है ना फजतबाहु रब्बहु, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है, बल्कि मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बता देती हूँ, आयत नंबर 50, फजतबाहु रब्बहु फजालहु मिन सालिहीन, ये है उम्मीद वाली आयत। लुक जाइए इधर, जिंदगी में अगर आप वाकई बहुत पीछे थे, एक दिन फजतबाह रब्बुहु जरूर होगा, अल्लाह आपको इसी दीन और इस्लाम से भी वही इज्जत देगा जो गुनाहों में मिली थी। ये बात है इसमें, तो डोंट लूज हार्ट, बी ऑप्टोमिस्टिक, होपफुल रहिए, और अल्लाह ताला आपको मुझे हमेशा अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। और आयत 52 में खास तौर पे अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि कुरान ने पाक अहले आलम के लिए एक नसीहत है। आखिरी दो आयतों को जरा देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी ये बात। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, दर हकीकत कुरान तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत है। कैसे नसीहत है ये कुरान? आप नसीहत लेना चाहेंगे, अल्लाह आपको नसीहत देगा। ये बताइए कि क्या वाकई इतना कुरान सुनने के बाद आपके मेरे दिल में इसकी मोहब्बत जाग चुकी है? तो ये कुरान आपको मुझे नसीहत कैसे देता है? आज कुरान के पढ़ने के अंदाज बदल गए। हमारी जिंदगियों में कुरान के ये अंदाज कब बदलते हैं? जब हम इसकी सोच बदल देते हैं। किस रंग में? कल तक लोग हिदायत के लिए पढ़ते थे तो सोच के पढ़ते थे, समझ के पढ़ते थे, और अल्लाह ने ये कुरान इसीलिए दिया। आपको भी इसका यकीन आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर एक बार आपके सामने सबीलुल जन्ना का फ्लायर है ओस्लो वालों के लिए। अल्लाह ताला ने आपको मुझे कुरान सीखने के लिए एक खूबसूरत जगह दी, आप उस जगह पर अपने आप को फिट करते हैं। कितने लोग हैं जो आज इस बात के लिए मचल रहे हैं कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस की मुसीबत से अल्लाह ने निजात दे दी है काफी हद तक, और सुन भी रहे हैं कि अगले दिनों में बेहतरी हो रही है। और अगर बिलफर्ज किसी किस्म की मुश्किल हुई इस कोर्स के शुरू होने से पहले, तो आप में जितने लोग हैं रजिस्टर्ड, उनको ऑनलाइन पे पूरी फुल सपोर्ट दी जाएगी। अल्लाह ताला आपको मुझे कुरान को नसीहत के लिए और जिक्र के तौर पर समझने वाला बना दे। जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो nrq.no से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर मजीद कुछ क्वेश्चन है, किसी को ये टाइम सूट नहीं करता आप में से, हो सकता है, तो आप नंबर जो दिया हुआ फ्लायर पर वेबसाइट पे, उस पर कॉल करके बाकी वीकेंड और शाम और बाकी बच्चों और बड़ों की क्लासेस का भी पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ जोड़ दे और हम सारी जिंदगी इसी के लिए अपने आप को खपा दें। आगे है सूरत अल हक़, आखरत का जिक्र मुअस्सर असलूब में, यह है टॉपिक इसका। आप देखेंगे कि आखिरत के अहवाल अब शुरू हो रहे हैं और यहां से क्या आगे तीसरे पारे में तो बहुत ही ज्यादा जन्नत और जहन्नम का तस्करा होगा। 69 नंबर की सूरत है, 52 आयतें हैं, छोटी छोटी। क्यामत के नामों में से एक नाम है अल हक़। आयत में 1 से 12 तक इनकार आखिरत का इबरतनाक अंजाम है। 13 से 37 अहवाल आखरा है और 38 से 52 अजमत कुरान है। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाक़तुम अल्हाक़ा वमा अदराकुम अल्हाक़ा, पहली 12 आयत 1 से 12, क्यामत को झुटलाने वालों के वाक़ियात इबरत हैं, जिसमें पहली 5 आयतों में कौम समूद की हलाकत का तस्करा है। साबित होने वाली क्या है और तुझे क्या मालूम कि वो साबित शुदा क्या है? इस खड़का देने वाली को समूद और आत ने झुटला दिया, जिसके नतीजे में समूद तो बेहद खौफनाक और ऊंची आवाज से हलाक कर दिए गए और आत बेहद तुंदो तेज हवा से गारत कर दिए गए, जिसे इन पर 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह ताला ने मुसल्लत रखा। बस तुम देखते कि ये लोग जमीन पर इस तरह गिर गए जैसे खजूर के खोखले तने हो, क्या इनमें से कोई भी तुझे बाकी नजर आ रहा है? फिरौन और इसके पहले के लोग और जिनकी बस्तियां उलट दी गईं, उन्होंने भी खताएं की और अपने रब के रसूल की नाफरमानी की, बिलाखिर अल्लाह ने इन्हें भी जबरदस्त गिरफ्त में ले लिया। जब पानी में तुगयानी आ गई तो इस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया, यानी फिर हमने तुमको कश्ती में चढ़ा लिया ताकि इसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें और ताकि याद रखने वाले कान इसे याद रखें। आज तक याद रखवाया अल्लाह ने ये वाक़या। तो क्या पता चला कि पहले कौम समूद की हलाकत की बात करके क्यामत का यकीन दिलाया गया कि वो कौम आद और समूद पे हलाकत थी, जो आपको आयत 6 से 8 तक में आद का बयान चलता है, उनके ऊपर तो क्यामत आ गई ना, कुछ ना बाकी रहा। फिर आयत 9 से 12 में आले फिरौन, कौम लूत और कौम नूह पर अजाब की झलकियां हमने देखी कि छोटी छोटी क्यामतें बरपा करके अल्लाह ने इंसानियत को बता दिया कि सबको इकट्ठा खत्म करना भी अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और अब आगे आयत 13 से 37 तक قیامت کا نقشہ اور اعمال ناموں کی پیشی ہے, جس میں خاص طور پہ آپ کو 13 سے 18 تک قیامت کی آنکھوں دیکھی جھلکیاں دکھیں گی کہ کس طریقے سے لوگ الٹتے پلٹتے دکھ رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں آج ہی اپنے آپ کو اس ساری معاملات ساری چیزوں سے پاک کرنے والا بنا دے, جو قیامت کے دن ہمیں شرمندہ کر دیں گی اور شرمندگی کا ذریعہ بن جائیں گی. آج دنیا میں بہت آسان ہے, جیسے کہ جب کسی کو غلط بس پہ کوئی سوار کروا دے اور اس کو یقین آ جائے نا کہ میں غلط بس پہ بیٹھ گیا ہوں, فوراً چھلانگ لگا دے گا, فوراً وہاں سے پلٹ جائے گا. ورنہ آپ کو پتا کیا ہوگا, وہی ہوگا کہ پھر وہ انسان غلط جگہ پہ پہنچے گا. قرآن کے اس پارے تک پہنچتے پہنچتے اگر آپ کو یقین ہو گیا نا کہ میں غلط بس پہ بیٹھی تھی, بس چھلانگ لگا دیجیے اور کچھ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو واقعی اس سے نکال دے گا اور آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی. تو اپنے لیے دعا کیجئے کہ اے میرے مالک, مجھے بس اب آگے جانا ہے اور تیری رضا کی امیدوں کے ساتھ دنیا سے جانے والی ہوں, اور اے میرے مالک تو میری مدد فرما دے. سنیے گا ذرا, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, بس جب کے سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزا ریزا کر دیے جائیں گے. اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا, اس دن بالکل ہی سست ہو جائے گا بودا, اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے, اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے کھڑے ہوں گے, اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جبکہ تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا. سوچئے ذرا اس کو, اللہ اکبر کبیرہ. آج جو مرضی چھپا کے دلوں میں رکھ لیں اور پتہ نہیں وہاں کل کتنی شرمندگی ہوگی, جو مرضی دیکھ لیں, جو مرضی سن لیں, بول لیں, وہاں سب کھل جائے گا. تو جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا, لو میرا اعمال نامہ پڑھو, مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے. بس ایک دل پسند زندگی میں ہوگا, بلندوں والا جنت میں ہوگا, جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے. ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے. یہاں تک ایک کردار پورا ہوتا ہے. سوچیے ذرا, ایک طرف تو قیامت کی ہال نہ کیا, زمین بھی ہل رہی اور آسمان بھی ہل رہا اور کوئی ابھار نہیں, کوئی ٹلا ٹبا نہیں, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے جلوف میں آ رہے ہیں, کیا حالات ہوں گے. اور پھر آیت 19 سے 23 تک آپ نے کیسے نیک بندوں کے بہترین اعمال کو دیکھا, کیسے آپ محسوس کرتے ہیں, بلکہ 24 تک بھی یہی بات ہے. اچھے لوگوں کا انجام 19 سے 24 میں, جو چاہو لے لو, یہ تھا اچھی امیدیں رکھنے والوں کو اللہ کا تحفہ, اللہ کا انعام. بتائیے کیا یہ اچھا کہ برا ہے؟ بچہ فرسٹ آ جائے نا تو باہر سے رپورٹ کارڈ ہاتھ میں, بلکہ آنکھوں کے سامنے رکھا پیپر, ماما دیکھو ماما دیکھو, اور اگر خدا ناستہ ایک پیپر میں فیل ہو گئے تو وہ خود ماں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کدھر ہے میں سائن تو کروں. کیسی زندگی چاہتے ہیں پر میں, ہاؤ مکرو کتاب یہ والا انجام چاہیے یا پھر اس سے اگلا برا انجام. دیکھیے گا اس کے اپوزٹ آئی 25 سے 29 مجرموں کی چیخو پکار دکھے گی آپ کو ان آیتوں میں. افسوس, گلٹ, خرابی, ہائے میں مر گیا, میں نے یہ کیا کر دیا, کاش میں ایسا نہ کرتا, ویسا نہ کرتا. دیکھیے گا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ماغنانی مالیا حلقانی سلطانیا. لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ یہ حساب کیا ہے, کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی, میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا, میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا. حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو, پھر اسے توق پہنا دو, پھر اسے دوزخ میں ڈال دو, پھر اسے ایسی زنجیروں میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے جکڑ دو. بڑی بڑی زنجیریں, بڑا کھلا پھرتا تھا نا, آج اس کو جکڑو. بے شک یہ اللہ عظیم عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھانے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا, بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے, بس زخموں کا دھون. نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا. کیا سمجھ آتا ہے؟ کون سا انظام اچھا ہے؟ کیا چاہتے ہیں میں اور آپ؟ دایاں کے بایاں ہاتھ؟ آج لیفٹ ہینڈ سے کھانے والوں کو بھی رکنا چاہیے, برے بائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کی توفیق دے. یہ ایک اشتہارہ بھی ہوتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا مال میرے کام نہیں آیا, میری سلطنت چلی گئی, میری رسوائی ہو گئی, اور پھر گلے کے توق قرضی ہو پکار اور جہنم کی چیخیں. آج باندھ لیجئے خود کو, کل اللہ کھلا چھوڑ دے گا. آج حرام چھوڑ دیجئے, وہاں کی پیپ اور پس اور خون نہیں پینا پڑے گا. یہ سچ ہے, دنیا کی سب سے سچی اوتھینٹک کتاب میں سے میں اور آپ پڑھ رہے ہیں. ترجمے کے بغیر پڑھ لیجئے, جائیے کسی غیر مسلم سے ڈکشنری لے کر عرب کی عربی کی یا ایسے پڑھ لیجئے, یہی ترجمہ ہے اس کا. کہاں لے جائیں ان آیتوں کو؟ تو پھر کیسے جھوٹی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ لکھیے یہاں رجائے مذموم, تین رجائیں پڑھائی آپ کو آج, رجائے محبوب یا اچھی دو اور ایک بری. بری پہ نظر رکھ لیجئے, گناہ کر کے, غلط کام کر کے, شرک کر کے, بدعت کر کے, اللہ کے رسولوں کا مذاق کر کے, سو سو بچوں کو قتل کر کے, کوئی امیدیں لگائے کہ پھر جنت ہے, تو یہ مذموم رجا ہے. اللہ آپ کو مجھے اچھے کام کر کے اچھی امیدیں لگانے والا بنائے, نہ کہ برے کام کر کے اچھی امیدیں لگانے والوں میں اللہ میں شامل کرے. اور اب آگے آئے سورت کے اینڈ تک, آئے 38 سے 52. قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور آپ قرآن کی عظمتیں دیکھیں گے. فلا اقسم بما تبصرون, بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے, کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے, یہ کسی شاعر کا قول نہیں, افسوس تم بہت کم یقین کرتے ہو, نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے, افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو. یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے, اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتے یا ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے, پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے, پھر تم میں سے کوئی اس سے روکنے والا نہ ہوتا, پھر تم میں سے کوئی بھی اسے روکنے والا نہ ہوتا. یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے, ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں, بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے, اور بے شک کو شبہ یہ یقینی حق ہے. پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر. کیا پتہ چلا؟ سورت ملک میں توحید تھی, سورت قلم میں رسالہ تھی, اور سورت الحاقہ میں ایمان بالآخرہ تھا. ایسے آخرت کے عقیدے کو کھول کر بیان کر دیا, اور اللہ کے نبی کو بنیاد بنا کر بتا دیا کہ جو پیارا سا کلام وہ اللہ کی مرضی کا تمہیں دیتے ہیں, تم اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہو, تو مان لو کہ پھر اس قرآن کو تمہیں نصیحت کی کتاب بنانا پڑے گا. اور آخری آیتیں تو آپ کو چوتھے عقیدے پہ لے جا رہی ہیں, اور وہ ایمان بالقرآن. آج بھی یقین رکھیے اسی بات پہ کہ یہ قرآن ہی ہے اصل میں جو انسانوں کو گمراہیوں سے نکالے گا. اور یہ جو آخر میں کہہ دیا نا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, تو اس پہ کہہ لیجئے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ الْعَظِيمِ. بخاری کی روایت ہے کہ کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن, دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں, ترازو میں بھاری ہوں گے, رحمان کو بڑے پیارے ہیں, اور وہ آپ نے پڑھ لیے. اللہ آپ کو مجھے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے والا بنا دے. آگے دیکھیے گا تو سورت معارج ہے, معارج عروج سے ہے, عرج یا عروج, یہ جو واقع معراج بولتے ہیں ہم وہ بھی اسی سے ہے. اچھے اور برے کردار کی وضاحت ہے اس سورت میں. یہاں سے وہی ترتیب لے لیجئے, جب تین چیزیں واضح ہو جاتی ہیں, توحید, رسالہ, ایمان بالآخرہ, اور آخر میں جو قرآن کا بیان, تو اس کے بعد کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے دعوت اللہ کی میدان میں. تو سورت معارج آپ کے لیے اصل میں ایک ٹریننگ سیشن ہے, اور ایک ٹریننگ دا ٹرینر ہے کہ اگر تم واقعی دین کے کام کرنا چاہتے ہو, لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہتے ہو, تو ذرا اپنے کردار کو سورت معارج کی روشنی میں چھان پھٹک لو کہ کیا تم ایسے ہو جیسا اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے. دو کردار ساتھ ساتھ چلیں گے. سورت 70 نمبر کی ہے, 44 آیات ہیں اس میں بھی, اور آیات میں تجزیہ دیکھ لیجئے. 1 سے 18 برے لوگوں پر عذاب آخرت, 19 سے 35 اچھے لوگوں کے اوصاف اور حسن انجام, اور 36 سے 44 برے لوگوں کا کردار اور انجام. अल्लाह हमें बुरे लोगों से बचा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साला साइलुम बियज़ाबिन वाक़े लिल काफिरीन लैसा लहू दाफ़ मिन अल्लाह ज़िल मआरिज। आयत 1-7 कुफार के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ भी है और क़यामत का अज़ाब जल्द आने वाला है। साला साइलुम बियज़ाबिन वाक़े, एक सवाल करने वाले ने इस अज़ाब का सवाल किया जो वाज़े होने वाला है। काफिरों पर इसको हटाने वाला कोई नहीं इस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूह चढ़ते हैं, एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। बस तो अच्छी तरह सब्र कर, बेशक ये इस अजाब को दूर समझ रहे हैं और हम इसे करीब देखते हैं। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी के दुखे दिल से कुछ बातें निकलती थी उसका तस्करा कर दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया और इतने साल गुजर गए और आप अल्लाह का पैगाम देते रहे। यहाँ से आपको दाई अल्लाह का सब्र दिखेगा और खास तौर पे आगे सूरत नूह तक पहुंचते हुए तो आपका दिल जम जाएगा कि दावत अल्लाह का अगर काम करना है तो फिर आंसू तो पोंछने पड़ेंगे, हसासियत तो खत्म करनी पड़ेगी। आई एम सो सेंसिटिव। तो फिर घर बैठिए, हसास लोग दीन का काम नहीं कर सकते। जो अपनी जात को पूजते रहे वो अल्लाह को कहाँ पूजेंगे। आगे आए 8-18 में अब क्यामत का हौलनाक मंजर है। लिखिए एक जुमला इस आयत में आप पढ़ने वाले हैं, अपने हाथों से लिखिए, मेरे प्यारों को जहन्नुम में डाल दो और मुझे छोड़ दो। ये दुहाई पढ़ेंगे आप अभी एक आयत के तर्जुमे में, जरा सुनिएगा। यौम तकूनु समाउ कल मुहल, जिस दिन आसमान मिसल तेल की तिल छटके हो जाएगा और पहाड़ मिसल रंगीन ऊन के हो जाएंगे। वला युसलु हमीमन हमीमा, और कोई दिली दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा। अपनी बेस्ट फ्रेंड को याद करें इधर, जिसके बगैर रात दिन ना गुजरे। हालांकि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे, दूर खड़े देख रहे हैं लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। गुनाहगार इस दिन के अजाब के बदले फिदिये में अपने बेटों को, अपनी बीवी को और अपने भाई को और अपने कुंबे को जो इसे पनाह दिया करता था, और वे जमीन के सब लोगों को देना चाहेगा ताकि ये इसे निजात दिला दे, मगर ये हरगिज न होगा। कोई ऑफर कबूल नहीं की जा रही होगी। यकीनन वह शोले वाली आंख है जो मुंह और सर की खाल खींच लाने वाली है, जो हर उस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता और मुंह मोड़ता है और जमा करके संभाल रखता है। क़यामत का हौलनाक नक्शा। एक तरफ तो देखिए ना, फितरी तब्दीलियां आ रही है ना, यानी बेजान चीजें बदल रही हैं। आसमान तबाह होकर पिघले हुए तांबे की तरह होगा। ये मंजर भी अपनी जगह बड़ा दहशतनाक होगा। पहाड़ रुई के गालों की तरह होंगे। ये तो बेजान चीजें, लेकिन गहरे दोस्त एक दूसरे का हाल ना पूछें तो जज्बाती झटके। मेंटल टॉर्चर भी है, स्पिरिचुअल टॉर्चर भी है और इमोशनल टॉर्चर भी है क़यामत के दिन। और सबसे बड़ी बात के जुर्म करने वाला मुजरिम क्रिमिनल वो कौन जो सब कुछ सुनकर भी गलत काम करके अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखने वाला था, वो अपनी बीवी बेटे बीवी भाई खानदान बल्कि सारी इंसानियत को आग में देने की ऑफरें कर रहा है। कितना खुले दिल वाला हो गया, दुनिया में किसी एक रिश्ते को ना छोड़ सका अल्लाह के लिए। वहां के अल्लाह सबको आग में डाल दे, मुझे बचा ले। जाके तर्जमा दोबारा चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं। कोई नहीं कह सकता कि इसमें कोई तब्दीली हुई है। तो आज जिन प्यारों के लिए अपनी दुनिया बनाते बनाते आखिरत बिगाड़ लेते हैं, कल उनमें से एक एक को पकड़कर आग में डालेंगे। और लिखिए, जब हम अपने प्यारों को गलत चीजों पर नहीं रोकते तो कल हमें उनको और बुरी चीज यानी जहन्नुम में देखना पड़ेगा। अल्लाह मला तचलना मिनहुम। और मुजरिम जहन्नुम से नहीं बच सकेगा, वो अल्लाह की जेल और उसकी अदालत है, दुनिया की अदालतें नहीं। आगे 19-21 में अल्लाह की निगाह में एक नापसंदीदा किरदार है जिसमें इंसान को बुनियाद बनाकर बताया गया कि इंसान तू बड़ा ही कम हौसला है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया। हलू कहते हैं एंग्जाइटी को, अंक्स, थोड़ी सी बात पे घबरा जाता है। जब इसे मुसीबत पहुंचती है तो हड़बड़ाकर उठ बैठता है, और जब राहत मिलती है तो बुखल करने लग जाता है। सोचिए जरा, खुशियों में अकड़ी अकड़ और मुसीबतों में डिप्रेशन। बात सच है, बिल्कुल सच है। ये है वो शख्स जिसकी उम्मीदें झूठी हैं। तकलीफ आने पे सब्र नहीं और नेमत आने पे शुक्र नहीं। शुक्र में कपड़ों से बाहर उछलता कूदता اللہ کو ناراض کر. وہ کہتا ہے خوشی میں نہیں اللہ کو ناراض کرنا تو اور کب کروں گا. جی یہ ٹون ہے, سیدھی سی بات ہے. اے اللہ خوشیوں میں تجھے نہ ناراض کروں. اللہ دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے, ہلو تھوڑ دلا. اردو میں پنجابی میں بڑے برے برے لفظ آتے ہیں ایسے بندے کے لیے, تھوڑ بیتا, چھچورا, چھوٹا پانڈا. ذرا سی خوشی آتی ہے اکڑنا پڑتا ہے, پتہ نہیں ہے کیا. اندر 10 بیماریاں لگی ہوں, موت بالکل قریب ہو, نہیں پتا. اور گناہوں کی بیماریوں میں اللہ کی نظروں میں مجرم بنا, نہیں پتا, لیکن اکڑ اکڑ کے دکھاتا ہے. اور اس کے برعکس آپ یاد رکھیے کہ اور کردار, اللہ کی یہ سنت ہے. یہ ہے امید اور خوف کے بیچ کی بات, کہ جہاں ذرا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے نا, تو اللہ اگلی آیتوں میں آپ کو آیت 23 سے 35 میں جنت میں جانے والوں کی صفات بھی بتاتے ہیں, پسندیدہ کردار بھی ہے. اور مومن کا معاملہ اپنے لیے رکھ لیجئے کہ نعمتوں پہ شکر اور دکھوں پہ صبر. اگر اس کو اپوزٹ ہے نا, ہم غموں کا صبر کر لیتے ہیں, خوشیوں کا صبر نہیں ہوتا. اور یہ شکر کا صبر کا بہترین موقع ہوتا ہے, جب نعمت ملے تو آپے میں رہیے, اللہ کی رضا کے ساتھ اس نعمت کو منائے, اور اسی میں سچی خوشی ہے. اس کے برعکس تو میری کھپائی اور میرے مسئلے ہیں. آج ہم نے اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دی, آج سیلیبریشنز بن گئی ہیں. وہ ایک پلیئر, وہ خوشی, وہ دل کی خوشی. میرے گھر والے تو گھبراہٹوں سے گزر جاتے ہیں, اور جس کے لیے انتظار ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے, بعد میں روتے ہیں, وہ تو پہنا نہیں, وہ تو دیا نہیں. اور کسی ایک رشتے دار کی ناراضگی پہ ساری شادی میں رنگ میں بھنگ ڈل گیا, اور وہ بیٹا جس کو پال پوس کے خوش کیا تھا, پالا تھا, اس کی خوشی گزر گئی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, آپ تو روتے ہی رہ گئے. جتنی لڑائیاں ہمارے شادیوں کے موقع پہ ہوتی ہیں, اتنی شاید عام دنوں پہ نہیں ہوتی. اللہ آپ کو مجھے اس سے بچا دے, اور اپنا وہ کردار بنائے جو ہم آیت 22 سے 35 میں پڑھنے لگے ہیں. الا المصلین, مگر وہ نمازی. آپ دیکھیں کتنی چھوٹی آیت ہے, مگر وہ نمازی, ختم. جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں, اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے, مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی, اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ہر ایک پہ کہیے اللہ مجھے اس میں کر دے, بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز ہی نہیں. اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں, ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں, انہیں کوئی ملامت نہیں. اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے. اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و اقرار کا پاس رکھتے ہیں, اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں, اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جنت میں عزت والے ہوں گے. مکرمون کا لفظ ہے. تم کن چیزوں میں عزت ڈھونڈ رہے تھے؟ اللہ نے عزت ان چیزوں میں رکھی ہوئی تھی, یہ عزت پانے والے لوگ ہیں. آپ کو سورت مومنون کا پہلا رکوع یقیناً یاد آ گیا ہوگا. قرآن کی یہ سنت ہے, میں نے وہاں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہر کچھ پاروں کے بعد اللہ تعالیٰ کردار سازی کی باتیں کر دیتے ہیں. تو یہاں اللہ کے محبوب بندوں کی صفات آپ نے جو دیکھی ہیں, ایک ایک کر کے اس کو اپنے اندر بھی لانا ہے. اور نماز سے بات شروع ہوتی ہے اور نماز پہ بات ختم ہوتی ہے. تو نمازوں کو ٹھیک کر کے ہم نے اللہ سے اچھی امیدیں رکھنی ہے کہ نماز آ گئی تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ آئیں گی. اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت میں یہ عزت کا مقام عطا فرمانا. اس کے بعد اب آج سورت کی آخری آیتیں 36 سے 41, بلکہ چند آیتیں اور بھی اس سے آگے. کافروں کو نعمت کے باغ نہیں ملیں گے. سوال ہے کہ سورت میں آیت میں کیا نبی کے دشمن جنت میں جائیں گے؟ کیسی باتیں کرتے ہو, بات سجتی بھی کوئی نہیں. تو پھر جھوٹی امیدیں چھوڑ دو. کفر کے ساتھ جنت نہیں, کبیرہ گناہ کے ساتھ جنت نہیں, جبکہ توبہ نہ اور ڈھٹائی کے ساتھ جنت نہیں, سرکشی کے ساتھ جنت نہیں. یہ آیتیں بول بول کر آپ کو یہ بتائیں گی. آئیے سنتے ہیں. فمال الذین کفروا قبلک مخطئین, پس کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے, گروہ کے گروہ بن کر. کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں جائے گا؟ یا دیکھیں جھوٹی آرزو, یہ عمل ہے اصل میں. ایسا ہرگز نہ ہوگا, ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں, بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان کے عوض سے ان کے اچھے لوگ لے آئے, اور ہم عاجز نہیں ہیں. کیا پتہ چلا کیسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی حرم میں نماز پڑھتے تھے, دشمن چاروں طرف سے دوڑتے تھے آپ کو روکنے کے لیے, اور ایسی سختی کا وہ وقت تھا. اور اللہ اپنے نبی کو کیسی تسلیاں دے رہا ہے, تو لکھ لیجئے کہ اللہ کو غلطی نہیں لگتی. अल्लाह के नबी के दुश्मन कल भी जलील और रुस्वा हुए और क़यामत तक के दुश्मन ऐसे ही जलील और रुस्वा हो जाएंगे। और आयत 42 से 44 में नबी के दुश्मनों की रुस्वाई की चंद बातें और आपका उनसे अमल क्या हो। फ़ज़रहुम यहूदू व यलअबू हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी युअदून, बस इन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दे यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से जा मिलें जिसका इनसे वादा किया जाता है, जिसने ये कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे गोया के वो किसी जगह की तरफ तेज तेज जा रहे हैं, इनकी आंखें झुकी हुई होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी। और क्या कहा जाएगा, ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युवादून, ये है वो दिन जिसका इनसे वादा किया जाता था। क्या मिला बंदे ने आखिर में, आग ही कमाई तो क्या मिला। अल्लाह आपको मुझे बुरे अंजाम से बचा दे और गुनाहों की तरफ भाग दौड़ करने की बजाय हम नेकियों की तरफ भाग दौड़ करें। आगे है जी सूरत नूह, जिसका नाम भी नूह है, सूरत का नाम भी हजरत नूह पे है और कहानी भी नूह की है। इसका मेन टॉपिक क्या है, हजरत नूह की दावत और फरियाद, कैसे अल्लाह की इस बारगाह में फरियाद करते हैं और कौम का वो बुरा रद्द अमल के जो उन्होंने आपके साथ किया, और आपका अल्लाह को अपनी फरियादें सुनाना और अपना दुख सुख करना, यानी दुख सुख असल में हजरत नूह का। तो वही दावत इल्लाह के पारे के तहत अगर आप देख लें तो यहाँ पे एक अमली मिसाल दी गई है कि दाई इल्लाह बनना है तो हजरत नूह जितना सब्र और हौसला चाहिए होगा और पुरउम्मीद रहना है कि एक दिन तो ये लोग जरूर सुधर ही जाएंगे। और अल्लाह ताला आपको मुझे भी इसमें दावत देते हैं अपने अमल को देखने की। आयात को देखिए तो 1-4 में हजरत नूह की इजमाली दावत है, यानी एक जिसको आप कहते हैं बर्ड व्यू है। 5-7 में मुहालिफीन का रद्द अमल है। 8-20 में हजरत नूह की तफसीली दावत है और 21-28 में हजरत नूह की फरियाद और मुखालिफीन के खिलाफ बद्दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। और यहाँ नोट कीजिए कि अंबिया किराम के नामों पे आने वाली सूरतों में अब ये आखिरी सूरत है। पहली चार आयात हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत कौम के नाम, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो और खबरदार कर दो इससे पहले कि इनके पास दर्दनाक अज़ाब आ जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और इसी से डरो और मेरा कहना मानो तो वो खुद तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मुअख्खर नहीं होता, काश तुम्हें समझ होती। आयत 5-20 हजरत नूह की दावत और कौम की सरकशी। काला रब्बी नी दाऊ तो कौमी लैलम व नहारा, यहाँ जरा सा दर्द महसूस कीजिएगा और सब्र देखिए और फिर भी पुरउम्मीद रहना, आप भी कभी मायूस ना हो, कभी अपने से भी और अपने इर्द गिर्द वालों से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया मगर मेरे बुलाने से ये लोग और ज्यादा भागने लगे, और ज्यादा भागने लगे। रिएक्शन हो जाता है कुछ दवाइयों से, कुछ लोगों को नसीहत और हिदायत से रिएक्शन होता है, ये वही लोग थे, रद्द अमल है उनका। मैंने जब कभी इन्हें तेरी बख्शिश के लिए बुलाया उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया, यानी आपकी शक्ल ना देखना पसंद की, और अड़ गए और बहुत बड़ा तकब्बुर किया। फिर मैंने इन्हें बावाज़े बुलंद बुलाया और बेशक मैंने इनसे ऐलानिया भी कहा और चुपके चुपके भी, और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवा और माफी मांगो, वो यकीनन बख्शने वाला है। क्या दर्दमंदी है, क्या आप और मैं इसका तसव्वुर भी कर सकते हैं। ये कौन करेगा जो सिर्फ अल्लाह के लिए करेगा, उसको अपनी जाती बात नहीं चाहिए होगी। आगे इस्तग़फ़ार की कुछ बरकतें हैं, आयत 8-13 तक। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ेगा और तुम्हें खूब पैदर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की बर्तरी का अकीदा नहीं रखते। आपकी थीम आयत आ गई जिस पे हमने काफी लंबी बात की शुरू में। हालांकि इसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा कर दिए हैं और इनमें चांद को खूब जगमगाता बनाया और सूरज को रोशन चिराग बना दिया और तुमको जमीन में एक खास इख्तमाम से उगाया, फिर तुम्हें इसी में लौटा ले जाएगा और एक खास तरीके से निकाल लाएगा फिर से, اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو. کیا پتہ چلا استغفار کی برکتیں. چار بڑی چیزیں ہیں اگر آپ میں اس کو آج نوٹ کر گئے, گناہوں کا معاف فرمایا جانا, رحمتوں والی بارش کا برسنا, مالی خوشحالی کا عطا کیا جانا اور اولاد کی نعمتوں سے نوازے جانا, اور کھل کر دیکھ لیں تو باغات اور پھلوں کی فراوانی اور بہتی نہریں جاری ہونا. یہ ہیں جی نعمتیں وہ جو استغفار کرنے سے ملتی ہیں. اس کے برعکس اگر گناہوں پہ اڑے رہے تو آج نعمتیں جو موجود ہیں کل وہ جا سکتی ہیں. تو شعور سے ہم استغفار کہنا سیکھیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دکہ, کچھ نہیں تو بس جی کہا کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر آپ نے دیکھے کہ آیت 14 سے 20 میں اللہ کی آیات کے ذریعے تذکیر کی دعوت ہے, یعنی سب سے بہترین طریقہ لوگوں کو نصیحت کرنے کا قرآن ان کی زندگی میں کھول دیں. آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں, لوگ برا مناتے ہیں, مائنڈ کرتے ہیں, دیکھیں حضرت نو تو 950 سال کہتے رہے, میں تو 2 سال سے اپنے میاں کو کہہ رہی ہوں. نہیں, فذکر بالقرآن, قرآن سے جوڑیں. آپ کی بات نہیں مانیں گے, قرآن کی انشاءاللہ وہ مان لیں گے. جتنا قرآن آپ کوٹ کریں گے, جتنا اپنی بات کم کریں گے, اتنی بات کو اللہ تعالیٰ زیادہ اثر والی کر دے گا. اب آگے دیکھیے گا آیت 21 سے 24 تک تو حضرت نوح کی فریاد اور بد دعا ہے, اور آگے پھر آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنٹ بھی ہے. قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا, آیت 21 سے 27 پڑھیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھا دیا, اور ان لوگوں نے بڑا ہی سخت فریب کیا. کیا پتا چلا کہ لوگ ناصحین اور اصلاح والوں کی تو نہیں سنتے لیکن دوسروں کی باتوں پہ کان رکھتے ہیں. اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا, نہ ود کو, نہ سوا اور یغوث یعوق اور نصر کو چھوڑنا. یہ ان کے 5 بزرگ تھے جن کے بت بنائے ہوئے تھے, اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. الہی تو ان ظالموں کی گمراہی میں ان کو اور بڑھا. یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے, اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے پالنے والے تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ, اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. یعنی جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے کبھی کبھی پھر آگ بھی لگانی پڑتی ہے, اور یہ فاجروں اور سخت ڈھیٹ قسم کے کافروں ہی کو جنم دیں گے. کیا پتہ چلا کہ جب دنیا سے کسی برائی کا خاتمہ کرنا ہو تو جراثیم کو اور بیکٹیریا اور وائرسز کو پوری طرح ختم کیا جاتا ہے. آج ویکسینیشن اس کی مثال ہے کہ کسی طرح اس بیماری کے جراثیموں کو ہر انسان کے جسم کے اندر سے ختم کر دیا جائے. اسی طرح یاد رکھیں شرک اور گناہ کے جراثیموں کو بھی ختم کرنے کے لیے ایک مہم چلانی پڑے گی. اور قوم نوح کے اس تذکرے میں عذاب قبر کی طرف اشارہ بھی ہو گیا ہے 25 میں. آج بھی وہ قوم عذاب قبر سے گزر رہی ہے, اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 26 سے جو بات شروع ہوئی تھی اب 28 تک دکھی دل کی صدا ہے. ایک دعا آ رہی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا تھی. پہلے کفار کے لیے بد دعا تھی, اللہ نے اس کے نتیجے میں طوفان اور سیلاب پیدا کر دیا. اب ہے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا. بڑی پیاری دعا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم مانگا کریں گے. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل مومنا ولی من دخل بیتی مومنا ولی المومنین والمومنات. اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے, اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے, اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا. یہ ہے جی آپ کی دعا. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنم ولی المومنین والمومنات. اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بخش دے, اور ان کے سب کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے. جو ساتھی اس وقت بھی ہمارے ساتھ سن رہے ہیں, بعد میں بھی ساتھ ہوں گے, اللہ ان سب کو بھی ان دعاؤں میں حصے دار بنا دے. تو سورت نو بڑی ہی ایک سیٹ کرنے والی سورت تھی, جس سے پتہ چلا کہ دعوت اللہ کے لیے جب کوئی نکلتا ہے تو کبھی کبھی تو حضرت نوح والی کیفیت طاری ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ نا امیدی کا عنصر دکھا, اس لیے اب آگے سورت جن میں امید ہے. बहुत ही प्यारी सूरत है। सूरत का नाम भी जिन्न है, लेकिन माजरत के साथ, इसमें जिन्नों की स्टोरियां नहीं है कि जिन्न कैसे होते हैं और वो जो बच्चों को स्टोरीज आप सुनाते हैं, बल्कि जिन्नात की ईमान अफरोज दावत का तस्करा है, कैसे अपने ही जिन्नों के लिए हिदायत का जरिया बन गए। 72 नंबर की सूरत और 28 आयात है इसमें भी। आयात का तज्जिया, पहली 17 यानी 1-17 आयात जिन्नात की दावत और 18-28 में अल्लाह के नबी का मुश्रिकीन मक्का से खिताब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल उहिय इलैय अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्न फकालू इन्ना समीना कुरआनन अजबा। पहली 13 आयात 1-13 में कुरान की अजमत जिन्नात की जुबानी है और खास तौर पे शुरू की 3 आयात में। आप कह दें कि मुझे वही की गई कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा कि हमने अजब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, हम इस पर ईमान ला चुके, अब हम हरगिज किसी को भी अपने रब का शरीक ना बनाएंगे और बेशक हमारे रब की शान बड़ी बुलंद है, ना उसने किसी को बीवी बनाया और ना बेटा। यहदी इला रुश्द आय 2 में देखिए, कुरान की दावत रुश्द है, हिदायत की दावत है, दावत रुश्द है जिसको हर सलीम उल फितरत दिल कबूल करता है, जैसे कि माशाल्लाह आपके प्यारे प्यारे दिल। रुश्द में सबसे ऊंचा मुकाम तौहीद का है। कौन है रुश्द पे? जो तौहीद पे है। रुश्द का फितरी हक ईमान लाना और सिद्क दिल से कबूल करना, यानी वाकई रुश्द आ जाती है तो फिर ईमान भी सच्चा है और दिल की सच्चाई भी है। और रुश्द का सर चश्मा वलन नुश्रिक बि रब्बिना अहदा। जितना तौहीद आती जाएगी, शिर्क निकलता जाएगा, उतना रुश्द आपको मुझे मिलता ही जाएगा। जिन्नों का बयान है जो अपनी जमात को सुना रहे हैं, एक लेक्चर अल्लाह के नबी से लिया और जाकर पूरे का पूरा कुरान सुना दिया। पहले अजबा कहा, कुरान का सौती हुसन सबसे पहले लोगों को माइल करता है। बात करने वालों को बात ढंग से करनी चाहिए ताकि उनकी बात की टोन, बात का अंदाज और उनकी मोहब्बत से दूसरों के दिलों में थोड़ी सी जगह तो बने, और उसके बाद फिर कहीं जाकर बात की जाती है इस बात की कि इसका पैगाम क्या है। आज अगर इसी तरतीब को बाकी रखेंगे तो लोगों के दिलों में इंशाल्लाह कुरान जगह बनाएगा। सुनिए आयत नंबर 4 जिसमें वो क्या कहते हैं, वन्नहु काना यकूलु सफीहुना अलल्लाहि शतता। और ये कि हम में से एक बेवकूफ अल्लाह के बारे में खिलाफ हक बात कहा करता था, और हम तो यही समझते रहे कि नामुमकिन है कि इंसान और जिन्नात अल्लाह ताला पर झूठी बातें लगाएं। बात यह कि चंद इंसान बस जिन्नात से पनाह तलब किया करते थे, जिनसे जिन्नात अपनी सरकशी में और बढ़ गए, और इंसानों ने भी तुम जिन्नों की तरह गुमान कर लिया था कि अल्लाह किसी को ना भेजेगा या किसी को दोबारा जिंदा ना करेगा, और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो इसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पुर पाया। इससे पहले हम बातें सुनने के लिए इस आसमान में जगह जगह बैठ जाया करते थे, अब जो भी कान लगाता है वो एक शोले को अपनी ताक में पाता है। हम नहीं जानते कि जमीन वालों के साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या इनके रब ने इनके साथ भलाई का इरादा किया। इससे पता चलता है जिन्नात को भी गैब का इल्म नहीं है। और ये कि बेशक बाज तो हम में से नेक हैं और बाज इसके बरक्स भी हैं, हम मुख्तलिफ तरीकों में बटे हुए हैं या मुख्तलिफ तरीकों से बटे हुए थे, यानी फिरका वारियत जिन्नों में भी थी, और हमने समझ लिया कि हम अल्लाह ताला को जमीन में हरगिज आजिज नहीं कर सकते और ना भाग कर इसे हरा सकते हैं, हम तो हिदायत की बात सुनते हैं, इस पर ईमान ला चुके, और जो भी अपने रब पर ईमान लाएगा इसे न किसी नुकसान का अंदेशा है न जुल्मो सितम का। ये है आपके मेरे सुनने का हदब, हिदायत के लिए सुनिए। समय नल हुदा आमन्ना भी, ये आपके दिल की पुकार भी बन जाएगी। ईमान वाले कुरान की हिदायत को कबूल करते हैं, हिदायत याफ्ता लोगों के दिलों पर कुरान की हिदायत का गहरा असर होता है, और अल्लाह तआला इन्हें इनकी नेकियों का भरपूर सिला देगा। अल्लाह आपको मुझे हिदायत के लिए चुन ले। क्या पता चला कि गुमराही का सबब इनकार आखरत है? कैसे जिन्नात के जरिए अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस किताब की जरूरत अपनी जिंदगी में महसूस करा दी। और याद रखिए, दूर दराज जगह में रहते थे जिन्नात, और एक कुछ जिन्नों ने अल्लाह के नबी से जो फायदा उठाया, जाकर अपनी कौम की हिदायत का जरिया बन गए। दुआ कीजिए अल्लाह आपको मुझे ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو یہاں چونکہ قرآن کی بات آ رہی ہے ہدایت کے اس سفر اور اس دعوت اللہ کے بارے میں, ہدایت کا مین سورس قرآن ہے, تو یہاں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جوہر آباد کے اس سال کے سبیل الجنہ کا فلائر. حقیقت میں یہ بھی ایک اللہ کا فیصلہ تھا. آپ کہیں گے اتنے سارے سبیل الجنہ, ان میں فرق کیا ہے؟ بہت سارا فرق ہے, ٹائمنگ کا فرق ہے, ڈیوریشن کا فرق ہے, سلیبس ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہر علاقے میں اس کے حساب سے ٹیکل کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ سبیل جوہر آباد سے اب ہمارے لسنرز کافی حد تک آگاہ ہیں. صرف 3 سال پرانا یہ بچہ ہمارا اس وقت اللہ کی رحمت سے ایک تحریک میں بدل چکا ہے, اور اللہ کی رحمت ہے, کوئی بڑی بات نہیں, کام تو بھی بہت کرنا ہے, اچھا بھی کرنا ہے, لیکن کام شروع ہوا ہوا ہے. تو اس وقت ہمارا 3rd کورس ہے, 3 سالوں میں 3 کورس کسی ملک میں ابھی تک نہیں آفر کیے ہم نے. اللہ کی رحمت اور توفیق سے جوہر آباد کا جو کیا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو فاسٹ پیس پہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ٹائمنگ اور ڈیز دیکھ لیجئے, پیر سے ہفتہ, یعنی صرف سنڈے کی چھٹی دی جاتی ہے, ٹائمنگ بھی تھوڑے دوسرے کورسز سے زیادہ ہیں, اور اس ایک سال میں بچیاں اور عورتیں اپنے ایک سال کو فریز کروا کے سکولوں, یونیورسٹیز, کالجز اور پچھلے سالوں میں میڈیکل پروفیشن کی بہت ساری بچیاں ایک سال میں یہ کورس کر کے اس وقت ہیلپر بن کر ٹریننگ لے رہی ہیں, اور اگلے سالوں میں انشاءاللہ وہ ٹیچرز ہوں گی. تو یہ ایک تحدیث نعمت ہے جو پاکستان میں لوگ ہیں اسی کورس کو جوائن کرا کریں جو آپ کے ٹائم زون کے اندر ہو. اب اس وقت تو چونکہ حالات اس طرح کے, آن لائن آن سائٹ دونوں کو لینا پڑتا ہے, تو یہ جو ٹائمنگز ہیں یہ فی الحال صرف پاکستان کے اندر کے لوگوں کو آپ آفر دی جا سکتی ہے. باہر والے یہ فارم فل نہ کریں, وہ سبیل الجنہ 21 کو جوائن کریں. وہ آپ کی سہولت کے لیے ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دیا جاتا ہے. مختصر جو ہمارا آن لائن کورس ہوتا ہے نا, وہ بڑا لیبرل سا ہوتا ہے, فلیکسیبل, 3 دن سے زیادہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ مطلب بزی لوگ ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو ٹائم سوٹ نہ کرے, جیسے اس سال بہت سال کے بعد ہم امریکہ کے ٹائم زون کو چوز کر رہے ہیں, ابھی آگے آتا ہے تو پھر اس کی بات تھوڑی سی بتاتی ہوں, لیکن بہرحال اللہ پاکستان میں رہنے والوں کو قرآن کے نور سے روشن کر دے, اور ہمارے ان ساتھیوں کے سارے مسائل کو حل کر کے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ لائے, اور ہم آسن درجے پہ باعزت طریقے پہ اپنی جگہ پہ نئی چیزوں کو لیتے ہوئے اس کو آفر کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے نور کو پھیلاتے ہوئے ہمیں دنیا سے لے جائے. آگے ہے آیت نمبر 14 سے 18, قبولیت حق کا صلہ اور اس کا انجام کیا ہے. اب دیکھیں باتیں جنوں کی ہیں, فائدہ آپ کا میرا ہے. انسانوں کو اللہ جنوں سے سنوا رہا ہے, تو اگر انسان ہی انسانوں کی باتیں سن لیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے میں ہی خیر ہے, قرآن پڑھنے میں ہی خیر ہے. آج کوئی دے رہا ہے دعوت تو لے لیجئے, کل کوئی نہ دے گا, کل آپ میں اپنے اعمال کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اپنے اپنے پرچے اٹھا کر, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سے جوڑ دے. تو آیت نمبر 14 سے 18 کا ایک اور ٹاپک بھی لکھیے, اچھے اور برے کردار کا انجام. ون نہ من المسلم نہ ومن القاسطون, ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں, بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا, اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں, اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں, بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو, دعا کیجئے دنیا سے جاتے وہ بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہوں, اور اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بلا الہ الا اللہ نصیب فرمائے. زندگی میں جو کلمہ جو اس بات زبان پہ ہوگی نا, وہی دل میں ہوتی ہے, وہی مرتے وقت زبان پہ آئے گی. دعا کریں اللہ مرتے وقت بھی قرآن کی آیتیں ہماری زبان پہ ہو, اور اس وقت بھی ہم اللہ کی دعوت ہی لوگوں کو دے رہے ہوں کہ اللہ کے بندو قرآن سے جڑ جاؤ اور اس کتاب کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر کر لو. اب آگے کچھ مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنے کی بات بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عاجزی اور انکساری, آیت نمبر 19 سے 25 میں. وَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوهُ كَاتُو, اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آپ کہہ دیجئے مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں. कह दीजिए कि मुझे हरगिज़ कोई अल्लाह से बचा नहीं सकता और मैं हरगिज़ इसके सिवा कोई जाय पनाह नहीं पा सकता। अलबत्ता मेरा काम अल्लाह की बात और इसके पैगामात लोगों को पहुंचा देना है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा भी यही काम है, अल्लाह मुझे इसी पे मौत दे दे। अलबत्ता मेरा काम अल्लाह की बात और इसके पैगामात लोगों को पहुंचा देना है। अब जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ना मानेगा, इसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। इनकी आंख न खुलेगी यहाँ तक कि इसे देख लें जिसका इनको वादा दिया जाता है। पसंद करीब जान लेंगे कि किसका मददगार कमजोर और किसकी जमात कम है। कह दीजिए कि मुझे मालूम नहीं कि जिसका वादा तुमसे किया जाता है वो करीब है या मेरा रब इसके लिए दूर की मुद्दत मुकर्रर करेगा। वो गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता। गैब किसी को नहीं पता अल्लाह के सिवा, इसलिए कभी किसी जिन्नों बाबों के पास मत जाया करें कि किसने मुझ पे तावीज कर दिए, किसने मुझे क्या कर दिया। अकीदा दुरुस्त हो जाता है कुरान पढ़ने के बाद, अल्लाह ताला आपका मेरा भी दुरुस्त रखे। आगे आयत 26 से 28 आखिरी आयतें हैं। गैब का इल्म अल्लाह के पास है और रसूलों को गैब का वही इल्म पता चलता है जो कि अल्लाह ताला उनको देना चाहते हैं। आलिमुल गैबी फला युस्खिरु अला गैबिही अहदा, वो गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता सिवाय इस पैगम्बर के जिसे वो पसंद कर ले, लेकिन इसके आगे पीछे पहरेदार मुकर्रर कर देता है ताकि इनको अपने रब के पैगाम पहुंचा देने का इल्म हो जाए। अल्लाह ताला ने इनके आसपास की चीजों का इहाता कर रखा है और हर चीज की गिनती का शुमार कर रखा है। तो क्या पता चला कि सूरत जिन पूरी हुई इस उम्मीद के साथ कि जहां कोई ना सुने अल्लाह किसी एक को सुनवा देता है और वो ही उससे खैर ले जाता है। इसके बाद अगली दो सूरतें, एक सूरह मुज़म्मिल है जो इस वक्त आपके मेरे सामने है और अगली मुद्दसर सूरत है, ये दोनों इब्तदाई दौर की सूरतों में है। और सूरत मुज़म्मिल में तज़किया नफ्स के लिए कुरान पाक का लाहे अमल इसका बुनियादी मजमून है। तज़किया कल्ब और कल्ब के तस्फिये के लिए मुफीद है। और आप तो मैं इस साल करी दिल की बातें रहे हैं तो बड़े दिल से सुनिएगा। 73 नंबर की सूरत है, 20 आयतें हैं इसमें और आयतों का तज़किया पहली 1 से 11 तक की आयात तज़किया नफ्स के लिए हिदायत है। 12 से 19 में मुखालिफीने हक की के लिए वईद है और आयत 20 में क़ियामुल लैल के हुक्म में तख़फीफ की बात है, कमी की बात है। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इन्क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआना तर्तीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। खूबसूरत आगाज़ है। पहली 5 आयत क़ियामुल लैल का हुक्म और मुज़म्मिल चादर ओढ़ने वाले को कहते हैं, यही मानी है मुद्दसर का। जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी को क्या पैगाम दिया गया? ए कपड़े में लिपटने वाले, रात के वक्त नमाज में खड़े हो जाओ मगर कम, आधी रात चाहे इससे भी कुछ कम कर लीजिए या इससे भी बढ़ा लीजिए और कुरान ठहर ठहर कर साफ पढ़ा करो। यकीनन हम तुझ पर बहुत भारी बात अनकरीब नाजिल करेंगे। कुरान का मिजाज तो ठहर ठहर के पढ़ने का, ये अलग बात है कि जब वक्त कम हो जाए तो हम इसका तर्जमा जल्दी पढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी को क़ियामुल लैल का हुक्म है। इब्तदाए वही में रातों को अल्लाह के सामने खड़े होने का हुक्म दिया गया ताकि दिन में लोगों के सामने खड़ा होने का मौका मिल जाए और तरतील के साथ कुरान पढ़ो ताकि हिदायत मिले, दिल पर इसकी तासीर मालूम हो। तो जब तिलावत हो, खास तौर पे इसका ताल्लुक तिलावत से है, वो तरावी में हो या आम दिनों में, तो सिर्फ पारा पूरा नहीं करना चाहिए कि मैं जल्दी से 5 पारे पूरे करूं, ठहर ठहर के पढ़िए क्योंकि एक अराब भी गलत हो गया तो मानी बदल जाएगा। और रातों का क़याम दिन के क़याम के लिए काबिल करता है बंदे को। जब आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा तो दिन में बंदों से भी ताल्लुक मजबूत होगा। और यहाँ तबलीग की दावत दी जा रही है कि रात को अल्लाह से डायरेक्शंस लीजिए और दिन में फिर आपने अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना है। आयत 6 से 11 तज़किया नफ्स के लिए कुछ हिदायत। इन्ना नाशियतुल लैल हिया अशद्दु वतम वअक़वमु क़ीला, बेशक रात का उठना दिल जमाई के लिए नहायत मुनासिब है और बात को बिल्कुल दुरुस्त कर देने वाला है। यकीनन तुझे दिन में बहुत से काम है, यानी बड़े शुगल हैं, बस अपने रब का नाम बुलंद किया करें, बस अपने रब के नाम का जिक्र किया करें और तमाम मखलूकात से कट कर इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। इसको हाईलाइट कर लें, तबत्तल इलैहि तब्दीला, फोकस्ड। कुछ दिनों के लिए अपने आप को फोकस करें, जैसे एतकाफ में बैठते हैं ना, कुरान सीखने के लिए कुछ अरसा कुछ एक्टिविटीज कट डाउन कीजिए, पहले खुद सीखिए फिर सिखाइए, फिर देखिए अल्लाह आपको कितनी दुनिया की भी और आखिरत की भी बहारें दिखाता है। मशरिक और मगरिब का परवरदिगार, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तू इसी को अपना कारसाज बना ले और जो कुछ वो कहें तो सहता रहे, और वजादारी के साथ इनसे अलग थलग रह लो। क्या पता चला इस रास्ते में चलने वालों को लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे, आप अपना काम करते जाइए। और मुझे और इन झुठलाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दे और इन्हें जरा सी भी मोहलत ना दे और इन्हें जरा सी मोहलत दे। क्या पता चला नबी के रास्ते में अमूमन पैसे वाले, दौलत वाले और बड़े गलबे वाले लोग ही रुकावटें खड़ी करते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, आप मुझसे जुड़िए, मैं इन लोगों को खुद ब खुद निबट लूंगा। और ये खूबसूरत आयतें हैं जिनसे तरबिया और तज़किया होता जा रहा था और एक जमात तैयार होती गई कि अल्लाह के नबी के साथ हिजरत तक 100 कुछ लोग तैयार हो चुके थे। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी अपनी पर्सनल इबादत के जरिए भी और कुरान के साथ भी तज़किया करने वाला बना दे। और आगे फिर आयत नंबर 12 से 19, मुखालिफीने हक के लिए वईद है, इन लदीनान कालम वजहीमा, यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियां हैं और सुलगती भी जहन्नुम, और हलक में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है, जिस दिन जमीन और पहाड़ थरथराएंगे और पहाड़ मिसल भुरभुरी रेत के टीलों के हो जाएंगे। बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया, जैसे कि हमने फिरौन के पास रसूल भेजा, तो फिरौन ने इस रसूल की नाफरमानी की तो हमने इसे सख्त बबाल में पकड़ लिया। तुम अगर काफिर रहे तो इस दिन कैसे पना पाओगे। यौमय्यजलुल्विल्दानशीबा, वो कौन सा दिन जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, जिस दिन आसमान फट जाएगा, अल्लाह का ये वादा होकर रहेगा, बेशक ये नसीहत है, पस जो चाहे अपने रब की तरफ राय अख्तियार करे। तो क्या पता चला क़यामत का दिन इतना तवील भी होगा और इतना सख्त भी होगा कि बच्चे इंतजार कर करके बूढ़े हो जाएंगे और गम के मारे भी इंसान के बाल जैसे बूढ़ों बुढ़ापे में से पहले सफेद हो जाएं। कितना कुछ आप पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि आयत 12 से 19, कांटों वाले खाने, दहकती हुई आग, ऐसे ही गुजर जाए इन आयतों को पढ़े हुए बगैर सोचे समझे। नहीं, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें और किसी को भी इसका ईंधन न बनाना। आगे आयत 20 तवील आयत है, पूरे रुकू में एक ही आयत है जिसमें आप देखते हैं कि अहकामात हैं क़यामुल लैल में के हुक्म में तख़फीफ के, कमी की जा रही है। इन्न रब्बक यालमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैली व निसफ़हु, आपका रब खूबी जानता है कि आप और आपके साथ के लोगों की एक जमात करीब दो तिहाई रात के और आधी रात के और एक तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ती है, और रात दिन का पूरा अंदाजा अल्लाह ताला ही को है। वो खूब जानता है कि तुम औकात का ठीक शुमार नहीं कर सकोगे, बस इसने तुम पर मेहरबानी की, लिहाजा जितना कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो पढ़ो। वो जानता है कि तुम में बास बीमार भी होंगे, बस दूसरे जमीन में चल फिर कर अल्लाह ताला का फजल यानी रोजी भी तलाश करेंगे, और कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे, बस तुम बासानी जितना कुरान पढ़ सको और नमाज की पाबंदी किया करो और जकात देते रहा करो और अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दो, और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसे अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर से बेहतर और सवाब में बहुत ज्यादा पाओगे। अल्लाह ताला से माफी मांगते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। क्या खूबसूरत पैगाम पे ये सूरत पूरी हुई कि आप रातों को क़याम कीजिए और इसी के साथ साथ इस्तग़फार भी कीजिए, 5 वक्त की नमाज और कर्ज़े हसन अल्लाह को दे देंगे तो अल्लाह आपका तज़किया करता जाएगा। अगली सूरत भी इसी से मिलती हुई है, अल मुद्दस्सिर, ईमान बिल आखिरा की अहमियत का बयान है इसमें, और आखरत को एक बहुत बड़ी खबर बयान किया गया है इस सूरत में, और मुजरिमों के जुराइम के असबाब हैं कि लोग जहन्नुम में क्यों जाएंगे, जिसमें एक बड़ी वजह क्या थी कि आखरत का खौफ नहीं था। 74 نمبر کی سورت 56 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیات کو دیکھ لیتے ہیں. 1 سے 7 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مشن ہے اور اس کے لیے ہدایات ہیں. آیت 8 سے 26 میں دشمن حق ولید بن مغیرہ کی مذمت ہے نام لیے بغیر. آیت 27 سے 48 میں ذکر آخرت ہے, اور 49 سے 56 میں مشرکین مکہ کا حق سے اعراض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. پہلی تین آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور آپ کی دعوت حق اور اللہ کی بڑائی بیان کرو, اس حکم پہ تھیم ہے اس سورت کا. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورت آیتوں کے اندر حسن ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اے کپڑے اوڑھنے والے, کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر. جی, سونے کے دن گئے, آرام کے دن گئے, وہاں سوئیں گے, قبر میں سوئیں گے, جنت میں آرام کریں گے. بہت بھاری ذمہ داری کل نبی پہ اور آج امت پہ ڈال دی گئی. جو بات اللہ نے نبی کو عنایات میں کہی, وہی بات نبی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں امت کو کہہ گئے حجت الوداع کے موقع پہ. اللہ آپ کو مجھے بھی اسی کی توفیق دے کہ اللہ کا نام بڑا کرنا ہماری زندگی کا مشن بن جائے اور اللہ کے نام کی بڑائیاں ہوں, نہ کہ اپنے ناموں کو بڑا کرنے کی ہو. سورت مزمل میں اس کو قول ثقیل کہا گیا تھا, یہاں اس کو اللہ کا نام بڑا کرنے کی بات کی. بات تو کٹھن ہے لیکن کیے بغیر گزارا نہیں, اور ایک وقت آئے گا یہ آپ کی زندگی کا پیشن بن جائے گا اور اللہ آپ کو مجھے اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے چن لے. آیت 4 سے 10 غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے کچھ ہدایات ہیں. بس یا بک فتحر, اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر, ناپاکی کو چھوڑ دے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر, اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر. بس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا, اور جو کافروں پر آسان نہ ہوگا تو اس قیامت کے لیے آج ہی تیار ہو جاؤ. اپنے آپ کو اس مشن کے لیے رکھو. یہاں لباس اور جسم کی طہارت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پہ بھی دیندار کو صاف ستھرا, ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ ہونا چاہیے, اور اندر سے مانوی طور پہ دل کینوں سے, بغض سے, حسد اور رقابت سے دور ہو. دوسرے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے دل میں محبت بھی ہو اور ان کی عزت بھی ہو اور دکھ سکھ سب کا سانجھا ہو. اور آیت 8 سے 10 میں بتا دیا کہ ایک مشکل دن قیامت کی طرح کا آنے والا ہے, اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو بہتر کر لو. اب آگے آیت 11 سے 25 میں ولید بن مغیرہ کی مذمت بھی ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منکرین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا, مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے بہت سارا مال دے رکھا اور حاضر باش فرزند بھی, اور میں نے اسے بہت کشادگی دے رکھی, پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. نہیں نہیں, وہ میری آیتوں, وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے. ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے غور کر کے تجویز کی. اس کے باڈی لینگویج کو دیکھیے گا, اللہ نے کیسے پیش کیا. اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی, وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا. اس نے پھر دیکھا, پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا, پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا, یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے, سوائے انسانی کلام کے یہ کچھ بھی نہیں. یعنی اسلام کو, قرآن کو لٹ ڈاؤن کرنا چاہا. ولید بن مغیرہ ایک سردار تھا جو اصل میں دوسروں کو بھی نبی سے دور کرنا چاہتا تھا. بڑی اس کی عزت تھی, پیسے والا تھا, تو وہ آیا تھا ایک موقع پہ جس کی باتیں اللہ نے یہاں بیان کر کے اس کے مکر و فریب کو کھول دیا. قرآن کا اثر ہوا تھا اس کے دل پہ, لیکن دوستی اور ساتھیوں کے پریشر نے, جس کو آج کے دور میں پیئر پریشر کہہ لیجئے, اس نے اللہ کی بات نہ مانی اور پھر وہی کرتا رہا جو اکثر لوگ کرتے ہیں, کام غلط کرتے رہتے ہیں اور امیدیں اچھی رکھتے رہتے ہیں. اب آگے آئے 26 سے 39 میں دوزخ پر 19 داروغوں کی معموریت کی بھی بات ہے اور جہنم کی ہولناکیاں ہیں. سوس لی ہی سقر, میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا, اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے. لا تبقی ولا تذر, نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے, یعنی نہ بندہ زندوں میں رہتا ہے نہ مردوں میں. خال کو جھلسا دیتی ہے, اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں. ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں, اور ایماندار ایمان میں اور بڑھ جائیں, اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں, اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے. سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. کیا پتہ چلا ہے 31 میں, قلب مریض, جب دلوں میں بیماری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہی اور رسالت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ, اور ایسے لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں, آخرت کے متعلق شکوک و شبہات ہوتے ہیں, جنت اور دوزخ کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں اور فرشتوں کے وجود کی نفی کرنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ادھر کیا بتا دیا, دیکھیں جہنمیوں جہنم کے فرشتوں کا مذاق اڑایا تھا مکہ والوں نے, اسی پہ اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کی بات کی اور اس کے عذابوں کی بات کی, تو مکہ والوں نے مذاق اڑایا اور ابو جال تو کہنے لگا ان میں سے ایک ایک کو تو میں ہی تھام لوں گا, باقیوں سب کو میں لے لوں گا, بس ایک تم لے لینا, نعوذ باللہ, ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے. تو اللہ کہتے قیامت کا آنا واقعی سچ ہے, کیسے, کہ یقیناً وہ جہنم یعنی وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے, بنی آدم کو ڈرانے والی, یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے مگر دائیں ہاتھ والے, یہ ہے جی کمائیاں, اعمال کی کمائیاں. آئے 38 میں, کل نفس بما کسبت رہین, کل نفس بما کسبت رہینا, رہن کس کو کہتے ہیں, پلج رکھنا, گروی, تو عمل کرس ہے اور نفس گروی ہے, عمل کرتے جائیں نفس کو جہنم سے آزاد کراتے جائیں. عمل برا ہونے کی صورت میں نفس اپنے عمل کی گرفت میں ہوگا, اور عمل صحیح ہونے کی صورت میں قرض ادا کر دیا اور نیکیوں کی طرف اللہ رہنمائی کرے گا, جنت میں لے جائے گا. ایسے ہی جنتیوں کی بات ہے آگے 40 سے 53 میں, صورت کے اینڈ کی طرف ہم چلتے ہیں, انکار آخرت ٹاپک ہے. فی جنات یتساءلون, اہل جنت بالا خانوں میں بیٹھے وہ سوال کرتے ہوں گے جہنمیوں سے, تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا. آپ بھی ذرا ان سوالوں پہ تھوڑی سی توجہ دیجئے, اور ایک ایک عمل آپ کے میرے لیے ایک آئینہ ہے. تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا, وہ جواب دیں گے, لم نک من المصلین, ہم نمازی نہ تھے, نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے, اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ ان کا ساتھ دے کر بحث میں مشغول ہو جایا کرتے تھے, بحث اور مباحثوں میں, اور اسے جزا کو جھٹلاتے تھے, یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی, بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی, انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. اللہ نہ کرے یہ میرے آپ کے لیے ہو. گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں, بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں. ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں. کلا انہ تذکرہ, آیت 54 سے 56, قرآن ایک نصیحت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار قرآن کا تذکرہ اس بارے میں. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے, اب جو چاہے اسے نصیحت حاصل کرے, اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے. وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرے, اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے. آپ کے میرے لیے قرآن کو ایک آئینہ بنا کر پھر پیش کر دیا کہ اللہ نے قرآن ہی دل میں ہلچل لا رہا ہے, اسی سے انشاءاللہ دل کی مٹی نرم ہو رہی ہے, اور اسی سے پھر زرخیزی آئے گی. تو الحمدللہ تحدیث نعمت میں اس بارے میں قرآن سے متعلق اگلی آیت میں سبیل الجنہ 21 جو ہمارا آن لائن کورس ہے, ہمارے نئے لسنرز بھی آج ہمارے ساتھ ہیں, کل تو آپ اپنے بہت سارے ساتھیوں کو ویسے بھی دعوت دیں گے, آپ کو ایک میسج دے دیا جائے گا جو آپ اپنے گروپس میں شیئر کریں. تو سبیل الجنہ 21 تھوڑا سا سمجھ لیجیے, کافی کوئریز ہیں اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آلریڈی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور بہت سارے ہونا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیے ٹائمنگز کو بالکل ایشو نہ بنائیے, پاکستان انڈیا کی یہ شام ہے, رات بھی ہوگی, لیکن چونکہ یہ کورسز زوم کے کلوز روم میں ہوتے ہیں, رجسٹرڈ اسٹوڈینٹس کو پوری آڈیو کے ساتھ اور ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اس میں, کچھ ہمارے پاس ریکارڈنگ دی جاتی ہے, आप अपने हिसाब से उस क्लास को मेकअप करेंगे, यानी हमें भी पता है कि आज के दौर के क्या तकाजे हैं। तो जोश फिलुल जन्ना 21 को रजिस्टर्ड करेंगे आपके टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से, या आपकी जॉब, या रात दिन के फर्क, या किसी और वजह से जो हिस्सा छुटेगा आपका, वो आपको फुल फ्लैश हेल्प दी जाएगी कि आप उसको मेकअप करेंगे। महरूम ना रह जाएं, इसलिए इसको कीजिए। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 दिन का है और बहुत ही थोड़ा सा टाइम है, 9:30 ईस्टर्न टाइम, यानी कह लीजिए कि यूएसए का टाइम है ये। इस वक्त असल में हमारे यूएसए कनाडा वालों का स्पेशल है। बहुत सालों से, खासतौर पे माजरत के साथ, जब से मैं यूके में आ गई, तो बहुत सारी चीजें यूएसए की हमारी और टाइमिंग्स में चलेगी, जो इस वक्त भी हो रही हैं। लोग इफ्तार सहरियां पकाने के फौरन बाद बैठकर आधा पौना मतलब सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये एक किस्म के यूरोप को आबाद करने के लिए यूएसए कनाडा वालों की कुर्बानी थी। मुझे आज भी याद है कि जब शुरू में यूके स्पेशल पहला कोर्स हुआ था, और जब ओस्लो में आकर और उसके बाद मैनचेस्टर से दौरे कुरान हुआ, यूके के चंद लोग होते थे, यकीन कीजिए, पेलटॉक पे। यूएसए कनाडा मतलब बहुत फर्टाइल है अल्लाह की रहमत से, लेकिन यूएस यूके बहुत डल था। ये 10 सालों में मैंने इसको आबाद होता देखा है। अब हमारे ज्यादा लिसनर्स भी यूके और इसके अराउंड के होते हैं, और पाकिस्तान इंडिया के माशाल्लाह। तो यूएसए वालों को दावत दूंगी, आप सब इस फ्लायर को अपना समझकर, अपना हिस्सा बनाकर अपने टाइम जोन के लोगों को दावत दीजिए, क्योंकि ये आइडियल टाइम है, जिसको एक स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, कि बच्चों के स्कूल जाने से लेकर शुरू हो और उनके आने से पहले खत्म हो जाए। तो अल्लाह ताला आपसे मुझे, आपको मुझे इसमें ले जाए। सिर्फ 3 दिन भी इसलिए रखते हैं कि चले होले होले चलेगा, लेसन प्लान उतना ही होता है, लेकिन थोड़ा करने की वजह से 2 साल कुछ माह में ये पूरा होगा। अल्लाह ताला आपको मुझे इस पे राजी रखे और हम इससे मुतमईन हो। टाइम चेंज करना मुहाल होगा, इसलिए आप लोगों को इंशाल्लाह कॉम्पनसेट किया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां आप लिख सकते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह जब एडमिन आपसे कॉन्टेक्ट में होते हैं तो आप अपने मसाइल पेश करेंगे। डोंट वरी, हम सब खवातीन है, ये कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज नहीं है कि जिधर आपको फिर कॉम्पनसेट ना किया जाए। कुरान सीखना है हर हाल में, खाली नहीं रहना। तो आगे है जी सूरत क़यामत, 75 नंबर की सूरत है, 40 आयात हैं। क़यामत के नामों में से एक नाम क्या, खुद क़यामत है। आज हमने फिल्मों, ड्रामों और हीरोइनों के नाम क़यामत के नाम पे रख दिए। अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे और हम ऐसे मजाक उड़ाने से बच जाएं। हकीकत यह है कि जितना ज्यादा आप कुरान में क़यामत का मंजर पढ़ते जा रहे हैं, उतना आपका दिल खुलता जा रहा है, मुझे यकीन है इस बात का। और क़यामत के मनाज़िर ही इस सूरत का मेन थीम है। बस अब तो झलकियां ही हैं, अमल की बातें अब खत्म, अब सिर्फ दिल को यकीन दिलाइए कि इस दुनिया के बाद हमने एक नई दुनिया में पहुंचना है। आयात का तज़्किरा है, पहली 5 आयात इनकारे आखरत की जोरदार नफी, 5 से 6 में क़यामत की होलनाकियों के मंजर, 16 से 19 नबी सल्लम की कुरान पाक से मोहब्बत, 20 से 25 मैदान हशर का मंजर, 26 से 30 मौत का मंजर, 31 से 35 सरकशियों पर अल्लाह का गजब, और फिर 36 से 40 मौत के बाद हयात का सबब और उसकी दलील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला नसव्विया बनाना बल योरीदुल इंसानु लियफ्जुरा अमामा। पहली 9 आयात इनकार आखरत की नफी। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और कसम खाता हूँ इस नफ्स की जो मलामत करने वाला हो। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी हड्डियां जमा करेंगे ही नहीं? हाँ जरूर करेंगे, हम तो कादिर हैं कि इसकी पोर पोर तक दुरुस्त कर दें, बल्कि इंसान तो चाहता है कि आगे आगे नाफरमानियां करता जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा, बस जिस वक्त की निगाह पथरा जाएगी और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। जी, क़यामत से पहले अल्लाह ने बंदे मोमिन के दिल में एक अदालत रखी है, जिसको जमीर कहते हैं, और इन आयतों में नफ्से लवामा कहा गया। यही नफ्से लवामा है जिससे हमने इंशाल्लाह इसको स्ट्रांग करना है कुरान को पढ़ते बढ़ाते हुए। और मोमिन अपने अंदर की अदालत से इतना डरता है कि साथ ही साथ अपनी इसलाह करता रहता है कि क़यामत के दिन इंशाल्लाह उसको कोई धाक धब्बा अपने ऊपर नहीं दिखेगा। और इसी पे इंशाल्लाह हम आगे आपको बताएंगे कि आपके लिए खुशखबरी है जो आपको दारे कुरान के बाद मिलेगी, वो इन्हीं आयतों को सामने रखते हुए हम देखेंगे।
आगे चलते हैं आयत 10 से 15, मुनकरीन की गलत फहमी का इजाला। यकूल उल इंसान यौमैज़िन अइन अल मफर, उस दिन इंसान कहेगा कि आज भागने की जगह कहाँ है। नहीं नहीं, कोई पनागा नहीं, आज तेरे परवरदिगार की तरफ ही करारगाह है। आज इंसान को इसके आगे पीछे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए, इसके आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए से आगाह किया जाएगा, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर हुज्जत है अगरचे कितने ही बहाने पेश करे। सोचिएगा, आज जो मर्जी कर लीजिए, हम सबको अपने दिल की हालत पता है। यहाँ देख लीजिए कि आपकी उम्मीदें सच्ची हैं कि झूठी हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं कि आप अपने आप को बदलने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। आयत 16 से 19, नबी सल्लम की कुरान पाक से वालेहाना मोहब्बत। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजला बिह, ए नबी, आप कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान को हरकत ना दें। इसका जमा करना और इसकी और आपकी जुबान से पढ़ना हमारा जिम्मा है। हम जब इसे पढ़ा लेंगे तो आप इसके पढ़ने की पैरवी करें, फिर इसका वाज़ह कर देना हमारा जिम्मा है। यानी कुरान को पढ़ते वक्त अगर जुबान लुढ़क जाए तो गम ना कीजिए, हम आपको ठीक कराएंगे, फिर आपके सीने में डाल देंगे। वही को अख़्ज़ करना सिखाया जा रहा है शुरू के दिनों में। और आयत नंबर 20 से फिर 23, हुब दुनिया हर गुनाह की जड़ है, और रोजे क़यामत नतीजा चेहरों से जाहिर होगा, चेहरों पे लिखा होगा कि आप पास हुए कि फेल हो गए। कल्ला बल तुहिब्बून अलाजिला, नहीं नहीं, तुम जल्दी मिलने वाली दुनिया की मोहब्बत रखते हो और आखरत को छोड़ बैठते हो और आखरत को छोड़ बैठे हो। इस रोज बहुत से चेहरे तरोताजा और बारौनक होंगे, अपने रब की तरफ देखते होंगे। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में कर दे। इसके बरक्स जानकुनी की सख्तियां और बुझे हुए और मुरझाए हुए चेहरे। आयत 24 से 40 तक, जिसमें आप देखेंगे कि अब आपको जानकुनी की कुछ सख्तियां भी दिखेंगी। अगर वाकई किसी को दुनिया से जाता देखा हो तो मौत का मंजर आपकी आंखों में आ जाएगा। वजूह हुई यौम इसम बासीरा, और कितने चेहरे उस रोज बद रौनक और उदास होंगे, समझते होंगे कि इनके साथ कमर तोड़ मामला किया जाएगा। नहीं नहीं, जब रूह हंसली तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक करने वाला है और जान लिया इसने कि ये वक्त जुदाई का है, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी, आज तेरे परवरदिगार की तरफ जाना है, चल अल्लाह की तरफ। इसने ना तो तस्दीक की ना नमाज अदा की, बल्कि झुटलाया और रूगरदानी की, फिर अपने घर वालों के पास इतराता हुआ आ गया। अफसोस है तुझ पर, हैरत हसरत है तुझ पर। अगर आप आयतों के तर्जमे के साथ साथ अरबी पे गौर करें ना, तो ऐसे लगता है कि सीना फटता है इन आयतों को पढ़ के। औला लकफा औला सुम्मा औला लकफा औला, तुफ है तुझ पे, हाय खराबी है तेरे लिए। क्या इंसान ये समझता है कि इसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? क्या वो एक गाढ़े पानी का कतरा ना था जो टपकाया गया था, फिर लहू का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह ने इसे पैदा किया और दुरुस्त बना दिया, फिर इससे जोड़े यानी नर मादा बनाए? क्या अल्लाह इस अमर पर कादिर नहीं कि मुर्दे को जिंदा कर दे? बोलिए, बिल्कुल कादिर है, हमारा ईमान है। तो जब जान जाती है उस वक्त कोई झाड़ फूक अल्लाह पास नहीं होता। जरूरत है इस वक्त के आज जिंदगी में इसकी फिक्र कर ली जाए कि हमारे प्यारे हिदायत के बगैर दुनिया से न चला जाए। अल्लाह ताला ने बेमकसद नहीं भेजा। एक नुतफे को जब अल्लाह ने एक इंसान में डाल दिया तो मट्टी के बाद दोबारा अल्लाह इंसान को न पैदा कर दे। तो इस आयत सूरत में आपको मुझे क़यामत के मंजर दिए। आगे सूरत दाहर है, जिसका नाम सूरत अल इंसान भी है। 76 नंबर की सूरत है, 31 आयात है इसकी। इसका टॉपिक है इंसान का इख्तियार और इख्तियार के इस्तेमाल के नतायज। यानी जो इख्तियार दिया वह विल पावर दिया है, इसको इख्तियार करके क्या करोगे उसका अंजाम फिर भुगतो। पता चलता है इस सूरत को पढ़कर कि इंसान एक बाइख्तियार मखलूक है। सही इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीदें रखे, गलत इस्तेमाल करके अच्छी उम्मीदें रखने वालों को कल बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। आयात का तज़्किरा, पहली तीन आयात इंसान को बनाने और इख्तियार देने का बयान। आयत 4 इख्तियार के गलत इस्तेमाल का अंजाम। 5 से 22 में इख्तियार के अच्छे इस्तेमाल का इनाम। 23 से 26 नबी सल्लम को सबर और जिक्र की तलकीन, और 27 से 31 दुनियादारों को नेकी की राह इख्तियार करने की दावत। بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یاد ہے آپ کو اپنا وہ وقت کون سا جب ہم کچھ بھی نہ تھے. تو پہلی چار آیات خالق نے انسان کو ہدایت دی اور اختیار بھی دیا, اور بھی ساتھ ہی ساتھ نعمتوں کی ناشکری کا برا انجام کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا. ہم نے اسے راہ دکھائی, اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا. یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. انا ہدینا السبیل, اس کو ہائی لائٹ کریں, اما شاکرم و اما کپورا. تو یہ ہے ہدایت سے متعلق آیت. دنیا نہ دار الجزا ہے نہ دار العیش ہے بلکہ دار العمل ہے, اور عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اختیار کی نعمت عطا کر کے انسان کو نیکی اور بدی کی راہ سجا دی گئی. انسان کی ہدایت کا بڑا اہتمام, کتابیں اور انبیاء بھیج کر حجت تمام کر دی. اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے انسان شکر گزار بن جائے اس کی مرضی, یا پھر معصیت کا راستہ اختیار کر کے ناشکرا بن جائے اس کا نصیب. اللہ ہمیں اچھی چوائس چوز کرنے والا بنا دے. جب چوائس لی ہے تو پھر اس کو اس کے ساتھ ہی امتحان ہے. پھر آگے ناشکروں کا انجام بیان کرنے کے بعد آیت 5 سے 22 میں شکر گزاروں کا حسین انجام ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. یہ وہ آیتیں جن کے بارے میں آتے ہیں, ان کو سنتے سنتے ایک صحابی بے ہوش ہو گئے تھے, کیونکہ پیچھے جب بری باتیں پڑھتا ہے نا انسان تو دل ایک دم تھکتا ہے, اور ٹوک ہے نا زنجیری ہیں, اور جو لوگ مختلف زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں وہم اور بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں, پھر اللہ ان کو امیدیں دلاتا ہے. یہ ہیں سچی امیدیں, اس کی امید کر لیجئے. بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جن کی آمیزش کافور کی ہے, جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں, جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو. ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں, نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا, پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور ان کو تازگی اور خوشی پہنچائی. اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے, اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے. وہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی کی سختی. ان جنتوں کے سائن پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے. دل چاہ رہا ہے نا جانے کو وہاں. اور ان پر چاندی کے برتن اور ان کے جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے, شیشے بھی چاندی کے, جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا, کرسٹلائن قسم کا کوئی سلور ہوگا. اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی, جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسبیل ہے. جن کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں, جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا. ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے, اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا, اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا. کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی. اللہ کوششوں کو تیز کروا دے. اور آج 23 سے 26 میں صبر اور نماز کی تلقین. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے, بس آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیے, اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانیے, اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کریں, اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کیجئے, اور بہت رات گئے تک اس کی تسبیح کیا کریں. آیت 27 سے 31 سورت کا آخر. نیک راہ پر اللہ ہی چلاتا ہے. ان نہ बेशक ये लोग जल्दी मिलने वाली दुनिया को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़े भारी दिन को छोड़ देते हैं। हमने इन्हें पैदा किया और हमने ही इनके जोड़ और बंधन मजबूत किए, और हम जब चाहें इनके इवज इन जैसे औरों को बदल लाएं, और हमने ही इनके जोड़ और बंधन मजबूत किए और जब हम चाहें इनके इवज इन जैसे औरों को बदल लाएं। यकीनन ये तो एक नसीहत है। अब देखिए, बिल्कुल नसीहत का लफ्ज बार बार आ रहा है, रिमाइंडर था कुरान जो पूरा हो रहा है, और अल्लाह ताला आपको मुझे इसी की दावत देते हैं कि इस रिमाइंडर को पढ़ते सुनते वक्त अच्छी अच्छी नीयतें कर लो, अच्छे अच्छे इरादे कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बचा लेगा, वरना कल झूठी उम्मीदें होंगी तो तुम्हें कल वहां जाकर अपने आप को कोसना है, कोई दूसरा तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। और जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला की इन बातों को अपने दिल पर लेते रहते हैं, उतना ही ज्यादा आपका दिल खुलता जाता है। इसलिए फरमाया कि तुम क्या करो इसको, यकीन है ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की राह ले ले, और तुम ना चाहोगे मगर ये कि अल्लाह ही चाहे, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला बाहिकमत है, जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले, और जालिमों के लिए इसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह बुरे अंजाम से सबको बचाए और अच्छा अंजाम सबका कर दे। शुक्रगुजारी करके इस दुनिया में विल पावर का सही इस्तेमाल करने वाला बनाए, और जितनी भी नेमतें भी जन्नत की पड़ी अल्लाह आपको और आपकी नस्लों और आपके माँ बाप को भी अता फरमाए, और जितने जहन्नम के तस्करे हैं अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज रखे, और जो कमजोरी बता दी इंसान की अल्लाह ताला मुझे आपको उस कमजोरी से पाक करे। इसमें जन्नत का रंग गालिब था, आखिरी सूरत है पारे की सूरत मुरसलात जिसमें जहन्नुम का रंग गालिब है। अल्लाह का दीन बड़ा ही इंसाफ वाला, तो जिक्र आखरत के लिए जलाली असलूब वाली सूरत सूरत मुरसलात है। आखरत और मुनकरीन के लिए अजाब की धमकी है इसमें, और वैलुई यौमैज़िल मुकज़्ज़िबीन की आयत बार बार आएगी। 77 नंबर की सूरत है, 50 आयात है। आयात में देख लें तो 1 से 28 क्यामत के वाक़े होने का बयान है, 29 से 40 मुनकरीने क्यामत के लिए वईद है, 41 से 44 मुत्तकीन का हसीन इंजाम, और 44 से 50 मुजरिमीन का बुरा इंजाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुरसलाती उर्फा फल आसिफाती असफा वन्ना शिरौती नश्रा। पहली 7 आयात क्यामत वाक़े होकर रहेगी। दिल खुशकुन चलती हुई हवाओं की कसम, फिर जोर से झोंका देने वालियों की कसम, फिर अबर को उभार कर परागंदा करने वालियों की कसम, फिर हक और बातिल को जुदा जुदा कर देने वाले और वही लाने वाले फरिश्तों की कसम, जब वही इल्जाम उतारने या आगाह करने कर देने वाली होती हैं, जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो यकीनन होने वाली है, जब होगी तो क्या होगा। आयत 8 से 15। क़यामत को झुटलाने वालों की खराबी। फ़ैज़न नजूम तुमी सद, बस जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, और जब आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा, और जब पहाड़ टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे, और जब रसूलों को वक्त मुकर्रर पर ला दिया जाएगा यानी लाया जाएगा। किस दिन के लिए इन सब को मौखर किया गया? फैसले के दिन के लिए, और तुझे क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है। इस दिन छुटलाने वालों की खराबी है, क्या होगा उनका इंजाम। आयत 16 से 19। मुजरिम कौमों का इंजाम। अलम नुहलिकिल अव्वलीन, क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया, फिर हम इनके बाद पिछलों को लाए, हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह किया करते हैं। इस दिन छुटलाने वालों के लिए वैल यानी अफसोस है, कितना दर्द है इन आयतों में। और आयत 20 से 28, इंसान का दोबारा जी उठना। अलम नखलुक्कुम मिम्मा महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी यानी मनी से पैदा न किया, फिर हमने इसे मजबूत और महफूज जगह में रखा एक वक्त मुकर्रर तक, फिर हमने अंदाजा किया और हम क्या खूब अंदाजा करने वाले हैं। इस दिन छुटलाने वालों के लिए खराबी है, क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, जिंदों को भी और मुर्दों को भी, और हमने इसमें बुलंद और भारी पहाड़ बना दिया, और तुम्हें सिराफ करने वाला मीठा पानी पिलाया। इस दिन झूठ जानने वालों के लिए वाय और अफसोस है, क्या बेबसी होगी उनकी। आयत 29 से 40। इन तले कुलामा कुन तुम भी तो कसीबोन, इस दोजख की तरफ जाओ जिसे तुम छुटलाते रहे थे, चलो 3 शाखों वाले साये की तरफ, जो दरअसल न साया देने वाला न शोले से बचा सकता है, यकीनन दोजख चिंगारियां फेंकती है, जो मिसल महल के हैं, यानी जो फ्लेम्स और छोटी छोटी चिंगारियां होंगी ना, वो बड़े बड़े महल्लात जितनी होंगी, तो सोचिए उसके शोले कितने बड़े होंगे। गोया के वो जर्द ऊंट हैं, आज इन जुटलाने वालों की दुर्गत है। आज का दिन वो दिन है कि ये बोल भी न सकेंगे, न इन्हें मासरत की इजाजत दे दी जाएगी। इस दिन जुटलाने वालों की खराबी है, ये है फैसले का दिन। हमने तुम्हें और अगलों सबको जमा कर लिया, बस अगर तुम मुझसे कुछ चाल चल सकते हो तो चल लो। वाय है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। और इसके बरक्स मुत्तकीन का हसीन इंजाम, आयत 41-44, इन्नल मुत्तकीन फी जिलालिम व उयून, बेशक परहेजगार लोग सायों में हैं और बहते चश्मों में और इन मेवों में जिनकी वो ख्वाहिश करें। ऐ जन्नतियो, खाओ पियो मजे से अपने किए हुए आमाल के बदले, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। अल्लाह में नेकियों की तौफीक दे। और आखिरी आयतें पारे की भी और सूरत की भी, 45-50, वैलु यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन, मुनकरीन का बुरा अंजाम, इस दिन सच्चा न जानने वालों के लिए वैल है। एफ जुटलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा सा खा लो और फायदा उठा लो, बेशक तुम गुनाहगार हो। इस दिन जहन्नुम, इस दिन जुटलाने वालों के लिए सख्त सजा है, इनसे जब कहा जाता है कि रुकू कर लो तो नहीं करते। इस दिन जुटलाने वालों की तबाही है, अब इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे। आखिरी आयत हाईलाइट कीजिएगा, फबी हदीसिम बादहु युमिनून, इस कुरान को पढ़कर हिदायत ना पाए तो फिर कोई किताब इससे ऊपर नहीं। जैसे कि पीएचडी और रेंगलर करके कोई ना अगर इल्म ले पाया तो और क्या इल्म लेगा। तो गोया कि आपको मुझे अल्लाह ताला इस पारे के एंड तक यहाँ लाकर यहाँ ये सबक दे रहे हैं कि सबक ले लो। इस किताब से बड़ी कोई किताब नहीं जो तुम्हारी जिंदगी में खुलेगी। कुरान से ऊपर दुनिया की कोई छोटी बड़ी किताब नहीं आ सकती, यही पैगाम है। तो उम्मीद वाले रहिए, अल्लाह ने आपको इतना प्यारा कुरान दे दिया। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। तो अपने और अपने प्यारों के लिए पुरउम्मीद रहिए, अल्लाह ने इंशाल्लाह कुरान सुनवाया तो जरूर हिदायत आएगी, अपने प्यारों को हिदायत की दावत देंगे। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कल खास तौर पे आपको पता है कि तीसरा पारा है, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है दुआ की भी, तो यहाँ भी आप में से जो लोकल्स हैं, आपको ग्रुप्स में जो मैसेज भेजे जाएंगे वो आप फॉलो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए सहूलत मौजूद है, और बाहर वाले भी आप कोशिश कीजिए, कल आप बहने अपने घरों में अकेले सुनने की बजाय अपनी दोस्तों को बुलाइए, ताकि हम सब इस कुरान की बरकत को महसूस करें। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته